धन्यवाद भाई, उसे गाने दें। आइए अब हम अपने सिर को झुकाएं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आज सुबह आपकी भलाई और दया के लिए धन्यवाद देते हैं, हमें एक साथ फिर से यहाँ इकट्ठा होने का सौभाग्य देने के लिए। इस तरफ का एक दिन जो उस महान अनंत काल का है, उस एक प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वह धरती पर आया हमें एक पाप के जीवन से छुड़ाने के लिए और हमें इस बड़ी विरासत को देने के लिए जो हमारे पास उसकी धार्मिकता के जरिए से होती है। और जब हम आज सुबह उसके राजदूतों के रूप में यहाँ पर हैं, ताकि इस प्रतीक्षा करती हुई सभा के लिए जीवन की इस रोटी को तोड़ें, होने पाए पवित्र आत्मा हर एक वचन को प्रेरित करे और उसे लोगों के हृदय में रखे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें आवश्यकता है। हम इसे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। बैठ जाएं। मैं निश्चय ही इसे मानता हूं और आज सुबह फिर से एक बड़ा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ यहां पर खड़ा हुआ हूं। क्षमा करें कि हमारे पास और ज्यादा स्थान नहीं है लोगों को संभालने के लिए। हम क्या करें, हमारा भवन इतना बड़ा नहीं है। और हम इस छुट्टियों में वहां हमारे घर टूसॉन से यहां आने के लिए बहुत आभारी हैं। और मौसम एक तरह से रूखा था, लेकिन हम यहाँ होने के लिए खुश थे और सभा को करने के लिए। अब मैं आज रात के लिए यह घोषणा करना चाहता हूँ कि आज रात एक चंगाई की सभा होगी या बीमारों के लिए प्रार्थना होगी। और मैंने बिल्ली को अभी बताया, उसने कहा तो ठीक है, आप क्या करेंगे? मैंने कहा ठीक है, यह अच्छा होगा, तुम आज रात लगभग 6:30 बजे कुछ कार्ड को बांट दो, ताकि जहां लोग, और देखो ये यहां बहुत ही भीड़ हो जाती है, हम समझ सकते हैं कि उन्हें एक एक करके कैसे लाया जाए, तो आपको अपने कार्ड की संख्या से बुलाया जा सकता है और इसलिए इससे कोई भीड़ नहीं होगी। हम बस उन्हें एक एक करके बुला सकते हैं, उन्हें पंक्ति में से होकर जाने दें जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए यदि आप बीमार हैं या आपके प्रियजन बीमार हैं और उन्हें लाना चाहते हैं, तो 6:30 बजे के आसपास आ जाएं, ऐसा ही कुछ 7 बजे, और एक प्रार्थना कार्ड को ले लें। वो दरवाजे पर होगा या जैसे भी हो, वह उन्हें बाहर कार्ड को दे देगा जब आप अंदर आते हैं। और फिर यह शायद आखिरी बार होगा, मुझे कुछ समय के लिए वापस जाना होगा क्योंकि मेरे पास अब बहुत लंबी कार्यक्रम की सूची है, और वहाँ अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका में आने वाले इस वसंत ऋतु तक, इसलिए हम शायद इस गर्मी में कुछ समय के बाद फिर से वापस आएंगे। यदि प्रभु की इच्छा रही तो मैं चाहूँगा, यदि हमें यहाँ पर स्थान मिलता है, यदि यह वातानुकूलित है, मैं इसे बिल्ली से पूछने वाला था। मैं उन 7 तुरहियों पर बोलना चाहता हूँ, 7 तुरहियों पर यहाँ एक सभा को करना है यदि प्रभु की इच्छा हुई तो। इसके लिए 7 कलीसिया काल और 7 मोहरें और अब 7 तुरहियां, और ऐसा ही कुछ समय मिल सकता है जैसे कि जून, जहां लोगों की छुट्टियां होती है, जिससे उन्हें समय मिल सकता है कि वे आ सके। और मैं आज सुबह भाई शेपर्ड को अस्पताल से यहां पर देखकर खुश हूं। मैं एक दिन उन्हें देखने के लिए निकला था, और बहन शेपर्ड, मुझे कल आपको फोन करने का मौका नहीं मिला। वह सपना जो आपने मुझे भेजा था, वो बहुत ही अच्छा सपना था। आपने देखा था जो इस तरह से था, मसीह आकाश में इस सफेद घोड़े पर था, लेकिन वो अभी तक बंधा हुआ है, आप देखें। लेकिन फिर भी इससे पहले कि वह धुंधला होता जाए, आपके सारे परिवार को इसे देखना ही था। वो सपने का अनुवाद ऐसा है कि आपके परिवार ने अंतिम दिनों में उसकी गतिविधि को देख लिया है, इससे पहले कि वो पूरा हो। यह क्या था? इसलिए यह बहुत ही आत्मिक था, आपके लिए बहुत ही अच्छी आशीष है, आपके परिवार के लिए। वो परिवार उस बड़े महासंकट से बाहर आ गया है, उस स्थान पर जहाँ पर वे आज हैं। और अब हमारे पास आज की सुबह कुछ तो है जो कुछ बहुत दुख की बात है, क्योंकि मैं आज यहाँ पर आया, हमारे एक बहुमूल्य मित्रों में से और इस भवन में आने वाले कोट्स परिवार में से, जिसे हम सभी उन्हें प्रेम करते हैं, वे बहुत दूर पूर्व की ओर से आते हैं और या शिकागो के आसपास से आते हैं। और बहन बिली हबीब और उसकी बहन आर्मस्ट्रांग और सभी लड़कियां, वे मुझे लगता है कि वे पहले नाजरीन थे और प्रभु के पास आए हैं, और वे हमारे बहुत ही बहुमूल्य मित्र हैं। और भाई और बहन कोट्स, उनके पिता और माता एक दिन घर जाने के मार्ग पर थे पश्चिम पर से, और कोई तो कार सड़क पर फिसल गई और तुरंत ही बहन कोट्स को मार डाला। और जब उन्होंने मुझे टूसॉन में फोन किया और मैंने इसके बारे में सुना, मैं ठीक तब उस मिठाई के एक बॉक्स को लेकर वहीं बैठा हुआ था जो उसने मेरे लिए बनाई थी, टेबल पर बैठा हुआ था, और आपको नहीं पता होगा कि इससे मैंने कैसा महसूस किया होगा। लेकिन मैं सोचता हूँ कि आज सुबह प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, उसे भुगतना नहीं पड़ा। वह वृद्ध हो रही थी और उसे तकलीफ नहीं उठानी पड़ी और वह परमेश्वर के साथ होने के लिए घर चली गई। मैं भी सोच रहा था और मैं उनकी दो लड़कियों से वहाँ कमरे में अभी अभी बात कर रहा था। भाई कोर्स आज सुबह यहाँ पर हैं, उनकी कुछ फसलियाँ टूट गई थी और मैं उसे अस्पताल में ले गया और जहाँ वो भर्ती था वहाँ मिसौरी में, और उसकी फसलियाँ और इत्यादि टूट गई थी। लेकिन उसके पास निश्चित रूप से एक सच्चा साहस था, एक सच्चा मसीही। यह जानते हुए कि उसकी छोटी रानी मरी नहीं है, वह हमेशा के लिए मसीह के साथ जीवित है और एक मिलाप का समय होगा। अय्यूब ने एक बार कहा, ओह कि तू मुझे कब्र में छिपा लेगा और मुझे गुप्त स्थान में रखेगा जब तक तेरा क्रोध खत्म नहीं हो जाए। क्या आपने कभी परमेश्वर की प्रकृति में ध्यान दिया है? वो उसी काम को करता है, जैसा कि यहाँ पेड़ों पर जीवन का सार होता है जो पत्तों को पकड़े हुए होता है, और फिर आगे सर्दियों का मौसम आता है धरती पर जो प्रकोप उंडेला जाता है। देखिए, एक समय धरती पर सर्दियां नहीं होती थी और सहशताब्दी में कभी भी और सर्दियां नहीं होंगी, आप देखना। तो यह धरती पर प्रकोप है। फिर जब ऐसा हुआ, देखो क्रोध के आने से पहले परमेश्वर उसकी दया में उस पेड़ के नीचे, जमीन के नीचे जीवन के सार को उस पेड़ की जड़ों में नीचे भेज देता है और इसे बनाए रखता है जब तक सर्दियां का प्रकोप निकल नहीं जाता, उसे फिर से ऊपर उठाता है। देखो वसंत ऋतु में, ओह कि तू मुझे कब्र में छिपा लेगा और मुझे गुप्त स्थान में रखेगा जब तक तेरा क्रोध खत्म नहीं हो जाए। यही है जो उसने हमारी बहन के लिए किया है, यही है जिसे वे सारे मसीहों के लिए करता है। भाई कोर्ट्स, परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं ये जानकर बहुत ही खुश हूँ कि परमेश्वर की मोहर मुसीबत की घड़ी में थामे हुए रहती है। मैं जानता हूँ कि वह किस बात से होकर गुजर रहा है, क्योंकि मैं कुछ वर्ष पहले लगभग इसी तरह की बातों से होकर गुजरा था। लेकिन मैं हमें एक एक करके इस बड़ी नदी को पार करना है, और मुझे और इन दिनों में से एक यह मेरा समय होगा और इन दिनों में से एक आपका समय होना है। लेकिन जैसा कि दाऊद ने कहा, मैं किसी बुराई से नहीं डरूंगा, तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। अब बहन कोर्ट्स की याद स्मृति में, हमारी बहुमूल्य बहन जो परमेश्वर के पास चली गई है, मैं आज सुबह उसके लिए थोड़ी सी याद स्मृति के रूप में मैं चाहता हूँ कि सभा के लोग बस कुछ क्षण के लिए खड़े हो जाएं। आइए हम अपना सिर झुकाएं और उस एक को सोचें जो कुछ दिन पहले इस भवन में चला करती थी और हमारे बीच में रही, हमसे हाथों को मिलाया, एक प्रिय मसीही। अब उस स्थान पर जिसे प्रभु मुझे देखने दिया, ज्यादा समय नहीं हुआ, एक नौजवान महिला फिर से जो अपने आने वाले परिवार की प्रतीक्षा कर रही है। हमारे स्वर्गीय पिता, हम बहन कोर्ट्स की यादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। क्या ही बहुमूल्य वो प्रिय बहन। और अब समय आ गया है कि जब हम अपने जीवन की अवधि को जी लेते हैं जो हमें दिया गया है, हमें इस नदी को पार करना ही है। हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि उसे कष्ट को नहीं सहना पड़ा। यहाँ अवश्य ही बहन के खिलाफ कुछ भी नहीं है जिसके लिए उसे भुगतना पड़ा हो। वो बस एक क्षण में सीधे परमेश्वर की बाहों में चली गई। उनके पति, उनके बच्चे आज सुबह यहाँ पर हैं प्रभु, ठीक अपने कर्तव्य के पद पर वापस आए हैं। हम उस साहसी विश्वास के लिए कैसे धन्यवाद दें? काल कोठरी, आग और तलवार के बजाय हमारे पिताओं का विश्वास जीवित है। हम आपका सारी चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं। उनके बहुमूल्य प्राण को विश्राम देना प्रभु, वो हमारी बहन थी। उसकी अनुपस्थिति के लिए शोकित आंसू की बूंदें हमारे हृदय में उतर रही हैं, लेकिन गिरते आंसू से आनंद उमड़ पड़ता है। आओ हम उस वचन के आश्वासन के साथ जान ले कि वो एक अमर हार जीवन में रहती है जो कभी मर नहीं सकता, और वहाँ कभी भी कोई दुर्घटना नहीं होगी जहाँ वो अभी है। केवल उन लोगों की प्रतीक्षा कर रही है जो उसके साथ बाद में जुड़ने के लिए आते हैं। भाई कोर्ट्स को आशीष दे और उन लड़कियों को और उसके परिवार को प्रभु, और उन प्रियजनों को और वे सभी जो उससे प्रेम करते हैं। और किसी दिन पिता, हम भरोसा करते हैं कि उससे वहाँ बहुत दूर उस ओर मिलेंगे जहाँ कोई बीमारी नहीं है, दुख या मृत्यु नहीं है। उस समय तक हम सभी को स्वस्थ और चंगा रखना, आपकी सेवा करते रहें, और हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। हम इसे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। होने पाए वो महान पवित्र आत्मा जो हमारे साथ यहाँ भवन में व्यवहार करता है, उसके वचन को प्रकट करने में होने पाए वो उसके साहसी प्राण को शांति में विश्राम दे जब तक हम उससे नहीं मिलते हैं। अब आज सुबह यहाँ पर गर्म है क्योंकि ये शरीर है, आप जानते हैं ये इतनी मनुष्य के शरीर की गर्मी होती है। अब हम अब घोषणा करना चाहते हैं, कभी कभी हमारी यहाँ पर सुबह को सभाएं बहुत लंबी होती हैं। इसका कारण ये है, ये वास्तव में सही नहीं लंबे समय तक रोके रखना, क्योंकि एक घंटा, डेढ़ घंटा या कभी कभी दो घंटे। लेकिन मैं जो कर रहा हूँ, मैं यहाँ पीछे टेप कर रहा हूँ, देखिए ये टेप सारे संसार में जाते हैं, और यही जो मैं हम सुबह को इतने लंबे समय के लिए इकट्ठा होते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इन टेपों को बनाने के लिए यहाँ पर आता हूँ। यही है वे, देखो आप वहाँ के कमरे में देख सकते हैं, उन टेपों को बनाया जा रहा है अब, और वे संसार भर में हर कहीं बाहर जाते हैं। अब जल्द ही प्रभु ने चाहा तो इस आने वाले समय में, जैसे ही मैं यहाँ से चला जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, प्रभु ने चाहा तो कल सुबह किसी समय वापस एरिजोना की ओर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी एक सभा होने जा रही है, और फिर यह बस वहाँ पूरी तरह से यहाँ वहाँ दक्षिण की ओर होना है। और आप जो लोग जॉर्जिया और मिसिसिपी और टेक्सास और एलाबामा में वहाँ दक्षिण से हैं, हम ठीक वहाँ फ्लोरिडा वहाँ दूर नीचे की ओर आ रहे हैं, यहाँ से फिनिक्स जा रहे हैं, उसके बाद कैलिफोर्निया और ठीक वापस डलास के लिए, और शायद सैन एंटोनियो में वहाँ रुक जाएंगे। मैं सोचता हूँ कि ऐसा ही है, और वहाँ से होते हुए वापस अलबामा और फ्लोरिडा में। सो हम आप लोगों को वहाँ ठीक बहुत दूर मिलेंगे प्रभु की इच्छा हुई तो, और फिर आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहें और हम आपको बताएंगे कि कब। यदि हम अब प्रभु हमारे हृदय में आने वाले इस गर्मी में कुछ दिन यहाँ रुकने के लिए डालता है, मेरे पास कुछ निर्धारित की हुई सभाओं का झुंड है, और न्यूयॉर्क में आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि जब दर्शन आया तो जिसने कहा कि स्कैंडिनेवियन देश में की वे सभाएं, आपको वहां वे निर्धारित सभाएं याद है? और फिर जब मैं न्यूयॉर्क में था तब दर्शन आया कि उनमें से हर एक सभा किसी कारण से रद्द हो जाएगी, और मुझे याद है कि मैंने आप में से कुछ लोगों को यहाँ बताया था जब हम न्यूयॉर्क में थे। यह बिल्कुल ठीक वैसा ही हुआ, क्योंकि वे सभी एक ही दिन सभागृह को चाहते थे और उन्हें वो इमारत नहीं मिल सकी, इसलिए फिर जून में यह वहाँ थोड़ी जगह को छोड़ सकता है, यह प्रभु की इच्छा हो सकती है। मैं सोच रहा था हो सकता है इससे पहले कि बहुत देर हो जाए ठीक यहाँ तुरहियों के लिए वापस आऊँ, समझे? इसलिए हम जानते हैं कि सब कुछ सही काम करता है। सो यह मेरे हृदय में था, इसलिए ये हो सकता है जो वह हमसे चाहता है कि इसे करें। अब मैं आपको एक दूसरे के साथ बैठने के स्थान को बदलते हुए देख रहा हूँ, और हॉल के बाहर और इत्यादि, काश हमारे पास बैठने के लिए स्थान होता था। और अब जब हमारे पास वे तुरहियां हैं, तो हम उच्च विद्यालय के व्यायामशाला को लेना चाहते हैं। मुझे लगता है कि उसमें 5500 सीटें हैं, और फिर हमारे पास एक मौका भी है, हर किसी के पास एक बैठने का स्थान होगा, और बैठकर और शांति से सुनेंगे जब हम प्रचार कर रहे हैं। या ये तुरहियां वे बहुत ही अच्छी हैं। मैं इसे दूसरे किसी दिन लेने के लिए देख रहा हूँ। देखो छठी मोहर पर सभी सात तुरहियां ठीक उस छठी मोहर पर आवाज को देती हैं। देखिए बिल्कुल ठीक पहले सातवीं मोहर यीशु मसीह के आगमन को खोलती है। और आज रात मेरे पास एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है जिसे मैं उस चंगाई की सभा से पहले बोलना चाहता हूँ। और यदि आप यहाँ पर हैं और वहाँ पर रुके रहते हैं तो ठीक है, हम कोशिश करेंगे यदि संभव हो सके तो बस थोड़ा सा जल्दी आरंभ करेंगे, क्योंकि वहाँ एक प्रार्थना की पंक्ति होगी। मैं ज्यादा लंबा प्रचार नहीं करूँगा, लेकिन कुछ ऐसा है जो मैं कलीसिया के लिए कहना चाहता था कुछ समय के लिए, और एक प्रकार से आप तक बात को पहुँचाने के लिए वो इस समय किस तरह की बातें हो रही हैं, और अभी हम कहाँ पर खड़े हैं, और वचन में से होते हुए बताऊँगा जितनी मेरी उत्तम समझ है। अब मैं चाहता हूँ कि आप आज सुबह मेरे साथ बढ़ें, यदि आप चिन्हित करना चाहते हैं, उसको लिख कर रखना चाहते हैं, यशाया की पुस्तक जहाँ से हम पढ़ रहे हैं, और मैं यशाया के 42वें अध्याय से पढ़ना चाहता हूँ। आज सुबह हम भी बहुत खुश हैं, हमारे साथ यहाँ भाई डॉज बैठे हुए हैं। जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप जानते हैं एक दिन यहाँ शिवरीपोर्ट में उन्होंने सोचा कि वे जीने वाले नहीं थे और निश्चित रूप से उनके पास विश्वास था। हाँ श्रीमान, वो इससे ठीक ऊपर चढ़ते गए और प्रभु उन्हें आशीष देता गया। जी हाँ, देखिए भाई डोज 91 वर्ष के हैं और उनका पूरी तरह से हृदय विफल हो गया था और उन्हें हृदय का दौरा पड़ा था और जिस डॉक्टर ने कहा कि वे उनके जीने का कोई जरिया नहीं दिखाई देता है, भाई डोज तो जी रहे हैं और डॉक्टर मर चुका है। देखा कारण वो, देखिए भाई डोज यहाँ बैठे हुए हैं। और तब एक 91 वर्ष का व्यक्ति हृदय की विफलता और हृदय के दौरे के साथ था और वहाँ जब मैं वहाँ जा रहा था मैंने देखा कि वो एक रास्ते से आ रहे थे। मैंने उसे कलीसिया में देखा और मैंने जाकर उन्हें ऑक्सीजन के टेंट के नीचे बताया था, प्रभु के नाम में मैं तुम्हारे हाथ को मिलाऊंगा, मैं तुम्हें फिर से कलीसिया में देखूंगा और रास्ते में आपसे अपने हाथ को मिलाऊंगा। बिल्कुल अगली ही सभा में यहाँ वे ठीक यहाँ कलीसिया में यहीं पीछे बैठे हुए थे और मैं लुइसविले चला गया जहाँ हम ब्लू ओवर में वहाँ पर खाना खाते थे, खाना खाने के लिए गए और जैसे ही मैं अपनी कार से बाहर निकला रास्ते पर चलने लगा और भाई डोज रास्ते पर चलते हुए आ रहे थे। ये वहाँ पर थे बस सही रूप से और किसी तरह से प्रभु ने उन्हें आशीष दी है। अब हम आज रात चंगाई के लिए बात करेंगे और उन चीजों पर और हमारे पास आज रात के लिए आपको बताने के लिए कुछ वास्तविक शानदार ये हटकर बातें हैं। लेकिन अब सो मैं अब टेप कर सकता हूँ, तब उन्हें चालू करने के लिए तैयार हो जाएं। मैं यशाया 42वें अध्याय से पढ़ना आरंभ करना चाहता हूँ और पहले से लेकर 7वें पद तक और मत्ती के 4थे अध्याय से आरंभ करेंगे। मैं सोचता हूँ 15 और 16 पद। अब यशाया के 42वें अध्याय में हम पढ़ने जा रहे हैं। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह अन्य जातियों के लिए न्याय प्रकट करेगा। न वह चिल्लाएगा और न ऊंचे शब्द से बोलेगा, न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा, वह न थकेगा और न हियाव छोड़ेगा जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे और दीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। यहोवा यो कहता है, ईश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला है। मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर और तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा कि तू अंधों की आंखें खोले, बंधुओं को बंदी गृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। अब मत्ती सुसमाचार के 4थे अध्याय में मैं यशाया के द्वारा दी गई उस भविष्यवाणी की पूर्ति को पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती के 4थे अध्याय में मैं पढ़ना आरंभ करूंगा। यदि संभव हो तो आइए 15वें पद के बजाय 12वें पद पर आरंभ करें। जब उसने यह सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया तो वह गलील को चला गया, नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबुलून और नप्ताली के देश में है जाकर रहने लगा, ताकि जो यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। देखो कि जबुलून और नप्ताली के देश झील के मार्ग से यर्दन के पार अन्य जातियों का गलील। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। होने पाए प्रभु उसके पढ़े गए वचन पर अपने आशीष को जोड़े। और अब अलग ही विषय जिसे मैंने किसी को तो बोलते सुना इसे कहा, लेकिन मैं इसे एक पाठ के लिए लेना चाहता हूँ। यहाँ एक मनुष्य है जो उजियाले को चमका सकता है और अब हम उजियाले के विषय पर बोलने जा रहे हैं। यह उन तीन विषयों के पीछे आता है जिन पर हम अभी बोल रहे हैं। उसमें से एक टूसॉन पर या फिनिक्स में यीशु बैतलहम के रास्ते से क्यों आया था, उस पर जो उसे होना ही है क्योंकि वो बैतलहम है। बैतलहम BETH मतलब घर होता है, EL परमेश्वर, EHEM रोटी, रोटी होता है, परमेश्वर की रोटी का घर। और हर एक मसीह जो मसीह में जन्मा है वो बैतलहम में जन्मा है, परमेश्वर की रोटी का घर। फिर वहाँ दाऊद का एक नमूना जो उस समय अपने लोगों से बहिष्कार किया हुआ था, एक निकला हुआ था, वह बाहर हो चुका था और बैतलहम को घेर लिया गया और फिलिस्तीनियों ने बैतलहम को चारों ओर से घेर लिया था। और दाऊद एक निकला हुआ जो आज के कलीसिया का एक नमूना है, मसीह का। देखें, मसीह आज अपने स्वयं के कलीसिया के लिए एक निकला हुआ है। उनके पास एक निकला हुआ कुछ ऐसा जिसे अस्वीकार कर दिया गया है, और दाऊद को अस्वीकार कर दिया गया था, फिर भी वह राजा होने के लिए अभिषिक्त था, लेकिन नबी ने उसका अभिषेक किया था। और इस समय के दौरान अपने लोगों से एक निकला हुआ होने की वजह से उसने कई बहादुर अन्य जातियों को उठाया। उनमें से एक ने तो एक दिन 800 पुरुषों को भाले और तलवार से मार डाला, और दूसरा एक गड्ढे में कूद पड़ा और एक बर्फीले दिन पर एक शेर को मार डाला। और वे मसूर, वो सेम या मटर या कुछ तो इकट्ठा कर रहे थे, और उनमें से सभी भागने लगे, और वह खड़ा हो गया और तब तक पुरुषों को मारता रहा जब तक उसकी भुजाएं थक नहीं गई। उन्होंने गोलियात के उन विशाल भाइयों को भी मार डाला। वो हिम्मतवान पुरुष दाऊद को पकड़े हुए थे क्योंकि वे जानते थे कि वह सामर्थ में आ रहा है। उन्हें पता था कोई फर्क नहीं पड़ता किसी ने क्या कहा, परमेश्वर ने दाऊद पर अभिषेक किया था और वे इसे जानते थे। वे अन्य जाति थे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनों ने उससे मुंह मोड़ लिया, वे फिर भी जानते थे कि वह सामर्थ में आ रहा था। और एक दिन वहाँ, क्या ही ये आज के मसीह का नमूना है, एक निकला हुआ। आप कहते हैं मसीह एक निकला हुआ, बाइबल के अनुसार कि हम परमेश्वर ने हमें उन सात कलीसिया युगों में से होते हुए शानदार तरीके से ले लिया है। इस लौतिया कलीसिया में मसीह उसके कलीसिया के बाहर एक निकला हुआ था, अस्वीकार किया गया, फिर से वापस अंदर आने की कोशिश कर रहा था। देखा, वह एक अपनी खुद की कलीसिया से निकला हुआ है, और उसके एक निकला हुआ होने का कारण यह है क्योंकि वह वचन है, और वे वचन को अंदर नहीं आने देना चाहते हैं। उन्होंने इसके बजाय संप्रदाय को स्वीकार किया। और तब हम देखते हैं कि इस बड़े संघर्ष में वे वीर पुरुष जो दाऊद के इर्द गिर्द थे, वे अन्य जाति थे। यदि आप ध्यान दें कि बैतलहम का गठन कैसे हुआ, मैं उस विषय पर नहीं आना चाहता, लेकिन कैसे बैतलहम, वास्तव में राहाब वो वैश्य, उसका पुत्र जो था, उसने बैतलहम की स्थापना की थी। यह एक गेहूं का भंडार केंद्र था और वहाँ बहुत सारा अच्छा जल था, और उसने छोटे से नगर की स्थापना की, और यह सभी नगरों में सबसे छोटा नगर था, क्योंकि भविष्यवक्ता ने कहा बाहर, यहूदिया का बैतलहम क्या तू नगरों के सभी यरूशलेम के राजकुमारों के बीच कम सा नहीं है या यहूदिया के? लेकिन तुझ में से शासन करने वाला बाहर आएगा जो मेरे लोगों पर राज्य करेगा, उन छोटों में से एक। दाऊद जब वो वहाँ पर चुना गया था, वहाँ वो बड़े भले भाई थे। जब नबी शमूएल अभिषेक करने के लिए वहाँ पर गया था, वहाँ वे सभी लोग खड़े हुए थे, महान वीर पुरुष, वे वैसे ही दिखते होंगे, देखो भले दिखने वाले राजा थे, लेकिन ये वही एक अस्वीकार किया गया वो दाऊद था, उस पर तेल उंडेला गया था। वो एक अस्वीकार किया गया नगर था जो मसीह, ये अस्वीकार किया हुआ होता है जिसे मसीह उठाता है। देखें उस एक को जिसे अस्वीकार किया गया है। तब हम पाते हैं वो ओबेद के आने के बाद, और वो बोआज के आने के बाद, और वहाँ एक और अन्य जाति अंदर आता है जो वह रूत के द्वारा अंदर आता है, और वहाँ से जेसी बाहर आता है, और जेसी से बाहर दाऊद आता है, और वहाँ एक छोटी सी पहाड़ी के किनारे अस्पताल पर राजाओं के राजा यीशु मसीह, दाऊद के पुत्र, उसके आत्मिक पुत्र को आगे लाया। अब फिर उस दाऊद का खुद का जन्म इस शहर में हुआ था, उसे इस छोटे से स्थान पर आना था, और इसे बैतलहम कहा गया था, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर की रोटी का घर, और वह परमेश्वर की रोटी का घर है। दाऊद उस दिन वहाँ पहाड़ी पर लेटा था, और उसने नीचे देखा, और फिलिस्तीनियों ने इसे चारों ओर से घेर लिया था, और अवश्य ये गर्म था और वो प्यासा था। उसने कहा, ओह यदि मैं बस एक बार और उस कुएं का पानी पी सकता, क्योंकि उसके छोटे से छोटे विचार उनके लिए एक आदेश थे, उनके लिए जो उससे प्रेम करते थे। वैसे ही ये आज है, यीशु के छोटे से छोटे विचार या जिस तरह से उसका वचन है, हम अन्य जातियों के लिए एक आदेश होना चाहिए जो उससे प्रेम करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वह सामर्थ में आ रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता उसे कितना भी अस्वीकार किया गया हो, आकाश और धरती टल जाएंगे, लेकिन यह तब भी बिल्कुल वैसे ही राज्य करेगा जब सारे आकाश और धरती टल गए हों। और हम जानते हैं कि वह सामर्थ्य में आ रहा है, क्योंकि इसे होने से कोई भी नहीं रोकेगा। यह मसीह है जो उसका प्रकाशन है, और यह होने जा रहा है उसी तरह से जिस तरह वचन इसे होने के लिए बताता है, क्योंकि वह वचन है। और वहाँ उसकी छोटी से छोटी आज्ञाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता वह कितनी छोटी क्यों न हो, यदि वह कहती हैं फिर से बपतिस्मा लेना है या जो कुछ भी ये है, हम इसे किसी भी तरह से करेंगे, ये उसकी आज्ञा है। और दाऊद के छोटे से छोटे विचार उन अन्य जातियों के लिए एक आदेश थे, क्योंकि वे आज अन्य जातियों की कलीसिया का एक नमूना है। वीर पुरुष, देखिए, वे पुरुष जो दाऊद के साथ खड़े थे वे अन्य जाति थे, लेकिन वे वीर पुरुष थे, वे निडर थे। उन्हें यह भी नहीं पता था कि डर क्या होता है। एक पुरुष ने एक तलवार को लिया और 800 लोगों को मार डाला, और उन सभी को जो उसके आसपास थे, क्या ही वो पुरुष था। उसमें से एक 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 और पुरुष एक मिस्र का योद्धा था, जो एक लंबे भाले को लेकर दौड़ता था। उसके हाथ में केवल एक छड़ी थी, वो छड़ी को लेकर और उसके हाथ से भाले को गिरा देता और भाले को लेकर उसी को मार डालता। देखा, उन विशाल कायों में से एक पुरुष की इस तरह 14 इंच की उंगलियां थी। अब 14 इंच आपकी उंगली उतनी ही लंबी है जितने आपके हाथ हैं। वो बंद है, उसे खोल दो, वह 28 इंच का हाथ होगा। और वो भाले के साथ था और वहीं पर कूदकर और उसे मार डाला। देखा, क्यों? वो एक वीर पुरुष था। कुछ अन्य जाति वे उस एक अभिषिक्त व्यक्ति की ओर देखते जिन्हें पता था कि वह सामर्थ्य में आ रहा है। क्या आपने ध्यान दिया, वे दाऊद के लिए बहुत वीर थे। अतः जब दाऊद सामर्थ्य में आ गया, उसने उन्हें नगरों का अधिकारी बना दिया। क्या यीशु ने ऐसी प्रतिज्ञा नहीं की? वही चीज उन्हें अधिकारी बनाती है। फिर जब दाऊद की इच्छा एक ताजा जल पीने की थी, हो सकता है उसके पास कुछ पहले का गर्म ठहरा हुआ जल था जिसे वह पी रहा था, लेकिन वह उस बैतलम के ताजे जल के बारे में सोचने लगा जो परमेश्वर की रोटी का घर है, और उसने कहा, क्या मुझे बस उस कुएं से कुछ जल मिल सकेगा? और उन लोगों ने अपनी तलवार को खींच लिया और फलिस्तियों से 15 मील तक लड़े, इसलिए नहीं कि दाऊद ने उनसे पूछा, बल्कि इसलिए कि वे जानते थे कि वह ऐसा चाहता है। और उन्होंने फलिस्तीनियों को वहां दूर कुएं तक काटते गए, जबकि उनमें से दो लड़ते गए, दूसरे ने जल के लिए एक बाल्टी को लिया और अपने वापसी के रास्ते में लड़ते गए और वापस सारे रास्ते भर और उस जल को दाऊद को सौंप दिया। वीरता की बात करें, दाऊद उस धर्मी व्यक्ति ने कहा, परमेश्वर ने मना किया कि मैं इसे उन मित्रों से जल को पीऊं जिन्होंने अपना जीवन खतरे में डाला है, और उसने जल के भेंट को चढ़ाया, इसे जमीन पर प्रभु के सामने उढ़ेल दिया, इसे प्रभु को दे दो, वही एक है जो उस योग्य है, न कि मैं, उन्होंने डाल दिया। वही स्वयं मसीह का नमूना, खुद के अनंत जीवन के साथ जो उसमें था, वो मार खाई हुई चट्टान, खुद के जीवन को जमीन पर उढ़ेल दिया हमारे पाप के नाई, जिससे यह वचन जी सके। ओह अन्य जातियों, जैसे कि मैंने कहा है, मेरे साथ उस तलवार को कौन निकालेगा? वो आज सुबह एक ताजा जल को चाहता है, न कि इस पुरानी ठहरी हुई कलीसिया संप्रदाय को और ऐसी चीजें जिसके साथ हम मूर्ख बन रहे हैं। वह अपने वचन में सच्चा विश्वास चाहता है, जो उसके हर एक वचन पर विश्वास करेगा। आओ कुएं पर जाकर और कुछ पीने के लिए कुछ जल को लेकर आएं, एक ताजगी, एक आराधना, और जो संप्रदाय और संस्था पर आधारित नहीं है, लेकिन एक सच्ची आत्मा की आराधना हमारे बीच मसीह के साथ उसके जीवन को जीते हुए जिस तरह से वह हमारे बीच में चाहता है। जो संप्रदायों और विभिन्न चीजों के साथ नहीं है, आओ बस हम उसे उसी तरह से करने दें। अब अगली बात, यूसुफ के दिनों में कैसे परमेश्वर एक सपने के जरिए से लोगों के साथ व्यवहार करता था। क्या आपने ध्यान दिया, दूसरा जरिया एक सपना होता है, यह परमेश्वर के काम करने का दूसरा जरिया है। कुछ लोगों के पास सपने हो सकते हैं, इससे कुछ मतलब नहीं, आप बहुत अधिक खा सकते हैं और बुरे सपने आ सकते हैं, और सपना एक दूसरा तरीका है, समझे? लेकिन परमेश्वर अपने पुत्र की रक्षा दूसरे जरिए से होते हुए क्यों करेगा? वो यूसुफ को दिखाई दिया उसके खुद के पुत्र की कुशलता के लिए उसने दूसरे तरीके को भेजा। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा? क्योंकि धरती पर कोई भविष्यवक्ता नहीं था, उसे सपनों के जरिए से काम करना था और यह एक ऐसा सपना नहीं था जिसका अनुवाद किया जाना था। प्रभु के दूत ने कहा, यूसुफ मरियम को अपनी पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा से है। ऐसा घटित होना उसके लिए एक असाधारण बात थी। यूसुफ एक धर्मी मनुष्य था, यह असाधारण था। परमेश्वर असाधारण है और असाधारण को समझना कठिन है, इसीलिए आज सत्य को समझना बहुत ही कठिन है। यह बहुत ही असाधारण था, एक स्त्री या पुरुष को जाने बिना एक बालक का होना, जो बहुत ही असाधारण बात थी। लेकिन यदि आप ईमानदार और सच्चे हैं, तो अब भी परमेश्वर आपके लिए सपने में उपस्थित हो सकता है, ये दिखाने के लिए कि आपके पास जो कुछ भी है, चाहे वो आपका मन हो, चाहे आप सीटी बजा सकते हैं, गा सकते हैं, गवाही दे सकते हैं, या जो कुछ भी आप कर सकते हैं, यदि आपका पूरा अस्तित्व परमेश्वर के लिए समर्पित है, तो परमेश्वर इसे इस्तेमाल कर सकता है, यदि आप बस उसे इसे करने देते हैं। तब यहाँ इसी रात को भाई नेविल ने बच निकलना के विषय पर प्रचार किया कि कैसे मनुष्य बच निकला, और मैंने सोचा कि यह ध्यान में रखने वाली बात है। और आज सुबह पवित्र आत्मा ऐसा दिखाई दिया कि ठीक उसके बाद वो मुझसे उस उजियाले के विषय पर व्यवहार कर रहा है। ठीक आरंभ में जाकर कैसे मसीह का जीवन जर्नी पर आरंभ हुआ, हम ठीक उसी के पीछे चल रहे हैं, वापस इसी में से होते हुए हमारे विषय में, और वह यह नहीं जानता था, मुझे ये पता नहीं था, और ठीक यहाँ पर उसी बात पर है। देखें ठीक आगे जो अगली बात है, जहाँ वो उसकी सेवकाई में प्रवेश करता है। और आज रात हमारे पास कुछ तो है जो ठीक इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक आगे आज की रात प्रभु की इच्छा हुई तो। अब वो महान उजियाला, अन्य जाति जो मृत्यु की छाया के क्षेत्रों में बैठे थे, महान उजियाला उनके बीच फैल गया। जाबुलोन और नेप्तलीम में अन्य जातियों के गलील के रास्ते में महान उजियाला, उन्होंने एक महान उजियाला देखा। अब वो उजियाला, पहली बार उजियाला हम इसे बाइबल में पाते हैं, जो उत्पत्ति 1:3 में पाया जाता है। यह परमेश्वर का कहा हुआ वचन उजियाला बना था। परमेश्वर ने कहा वहाँ उजियाला होने दो, उत्पत्ति 1:3, और वहाँ उजियाला था। अब याद रखें, तब उजियाला परमेश्वर के कहे गए वचन से आता है, और उजियाला प्रमाणित होना है, या जिस विषय पर उसने बात की थी वह उजियाला है। जब उजियाला आने लगता है, यह प्रकट होता है। परमेश्वर ने कहा वहाँ उजियाला होने दो, वहाँ कोई उजियाला नहीं था, और उसने कहा वहाँ उजियाला होने दो, और वहाँ उजियाला था। यह एक प्रमाण है, उजियाला उसके कहे गए वचन का एक प्रमाणित होना है। आज भी वही बात है, उसके कहे गए वचन का एक प्रमाणित होना। अब जब आप उसके वचन को प्रमाणित होते हुए देखते हैं, या दूसरे शब्दों में ज्ञात हुए हैं, सिद्ध हुए हैं, जो उसके कहे गए वचन का उजियाला है, और बिना उजियाले के कोई भी उजियाले के बिना नहीं रह सकता है। आज धरती पर ऐसा कोई जीवन नहीं है कि, लेकिन जिसे आना है उसे सूरज के उजाले से आना है, एक वनस्पति जीवन और इत्यादि। और परमेश्वर के पुत्र के अलावा कोई अनंत जीवन नहीं है, समझे, वो उजियाला है। अब हम देखते हैं, मुझे विश्वास है, जैसा कि हम अब अध्ययन करते हैं, और यह उजियाला पृथ्वी बिना आकार के थी। अब कुछ लोग हमारे स्कूलों और इत्यादि में इसके बारे में बहस करते हैं, संसार कई वर्ष पुराना है, लाखों करोड़ों वर्ष या जो कुछ भी है, और बाइबल की निंदा करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं ये गलत है। वे बाइबल को कभी नहीं पढ़ते हैं, ऐसा ही है, क्योंकि बाइबल हमें यह नहीं बताती है कि संसार कितना पुराना है। बाइबल में कहा गया है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और धरती को बनाया, समय अवधि कब कैसे यही है, हम इसे नहीं जानते हैं। अब यह पहला है और यही समय अवधि है, यही वाक्य का अंत है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और धरती को बनाया, यह 10 करोड़ या अरब या जो कुछ भी हो सकता था, और कैसे उसने ऐसा किया, इसे जानना उसके ऊपर है, देखो ना कि मेरे लिए। लेकिन संसार पूरी तरह से पृथ्वी बिना रूप और आकार के थी, और पृथ्वी पर जल था, और परमेश्वर ने कहा, जल पर मंडराया और कहा वहाँ उजियाला होने दो। अब मैं विश्वास करता हूँ कि सूरज और इत्यादि पहले से ही अस्तित्व में थे, मैं विश्वास करता हूं कि चंद्रमा जैसे कि यह आगे आगे जाता है उत्पत्ति तीन इसे समझाने के लिए, लेकिन मुझे विश्वास है यहां क्या था कि संसार हम इसका उपयोग करने जा रहे थे और इसलिए उसमें मंडराया, सारी पृथ्वी पर धुंध और कोहरा था, इसे अंधेरा कर रहा था और परमेश्वर ने कहा उजाला होने दो और अंधकार दूर हो गया और वहाँ एक बिना बादल के आकाश था। और मैं विश्वास करता हूँ कि इन चीजों को करने का परमेश्वर का यही तरीका है। वो बाइबल में अगला वचन कहता है, चौथा वचन कहता है, और उसने उजियाले को अंधकार से अलग कर दिया और उस उजियाले को उसने दिन कहा और अंधकार को उसने रात कहा। और परमेश्वर का वचन हमेशा उजियाले को अंधकार से अलग करता है, समझे? ये तो वो वचन है जो अलग करता है, देखो, अंधकार से उजियाले को। परमेश्वर हमेशा ही उसी चीज को करता है। जब वो कुछ भी इस्तेमाल करने को तैयार करता है, जैसे उसने उस पुराने तारे का उपयोग करने के लिए तैयार किया या जो कुछ भी था, यह संसार, उसे उजियाले को अंधकार से अलग करना पड़ा था। जब वह छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है ताकि लोगों के एक झुंड का उपयोग करे, उसे अंधेरे से उजियाले को अलग करना पड़ता है। जब वह एक व्यक्तिगत का उपयोग करने के लिए तैयार होता है तो वह उजियाले को अंधेरे से अलग करता है। देखा, उजियाला परमेश्वर के द्वारा आता है और याद रखें, उजियाला उसके कहे गए वचन के द्वारा आता है। परमेश्वर के वचन ने कहा उजियाला होने दो जब कोई उजियाला नहीं था, और उसने अंधेरे को अलग करने के लिए उजियाले को भेजा। इस आदेश के वचन ने आकाश को साफ कर दिया ताकि इसमें सूरज चमक सके, और आज उसका वचन जो सारे अविश्वास के वातावरण को वापस साफ करता है। मैं बात कर रहा था, मेरे पास, मैं सोचता हूँ बस पुलपिट में आने से पहले, यहाँ 11 बजे इंटरव्यू, निजी भेंट थी, बहुत बुरा। एक दिन मेरा एक छोटा मित्र जिम पॉल, उसका छोटा लड़का, उन्होंने सोचा कि उसे हृदय का दौरा पड़ा था, उसे जल्दी से अस्पताल ले जाया गया। यह एक दमे की स्थिति थी जो छोटे लड़के को लग गई थी, वो नहीं, उसका छोटा हृदय उछल रहा था और सांस लेने में दम लग रहा था और वह चिल्ला रहा था और वह सांस नहीं ले पा रहा था और छोटा सा लड़का ऐसा लग रहा था कि वह मर रहा है। और वे उसे यहाँ पर लाए थे और मैं अस्पताल जाने पर था, वे उसे यहाँ लेकर आए और मैंने उसके छोटे से हाथ को पकड़ लिया। मैंने कहा ये क्या हुआ, खसरे ने बच्चे को प्रहार किया है और खसरे बुखार ने छोटे बच्चे पर प्रहार किया है, आप उसे देखे। मैंने कहा था कुछ ही दिनों में उसे फिर से मैं देखना चाहता हूँ, वह खसरे से भरा हुआ होगा और यहाँ वह खसरे से भरा हुआ था, आप देख सकते हैं, समझे? अब क्या परमेश्वर अंधकार से उजियाले को अलग करता है या उजियाले से अंधकार को अलग करता है और वह मृत्यु को जीवन से अलग करता है, और वह इसे अपने वचन के द्वारा करता है। उसका वचन ही है जो हमेशा इसे आगे लेकर आता है। अब उजियाला, तो अब बीज धरती पर पहले से ही था। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने उस बीज को बोया था, और जब तक सूरज उस बीज पर पहुँचता रहता है ये बढ़ता रहता है, और यही कारण है कि यह केवल इन चीजों को आगे लाने के लिए कुछ दिनों को लेता है, क्योंकि बीज पहले से ही धरती में था, बस इसके लिए उजियाले की आवश्यकता थी। और इसी तरीके से आज परमेश्वर करता है, उसका बीज पहले से ही यहाँ पर है जो उसका वचन है, केवल एक चीज की आवश्यकता है, वो है इस पर उजियाले का होना, और वही वो उजियाला है क्योंकि वह वचन है। वचन और उजियाला एक ही बात है, वहाँ उसमें जो जीवन होता है वो वचन का उजियाला है। देखो वो जीवन है, वो जीवन का जीवाणु उस दाने में होता है, और वो दाना, वो जीवन वही है जो टूटकर आगे आने लगता है और उस दाने से जीवन को आगे लाता है। इसी तरह से वो मसीह वचन में उस वचन को वो करने को लगाता है जो उसे करना चाहिए, बिल्कुल जैसे गेहूं के दाने में जीवन है या जो कुछ भी है, या गेहूं को करने को लगाता है जो उसे करना चाहिए, क्योंकि यह तो वो जीवन है जो इसमें होता है। संपूर्ण जीवन, इसलिए जीवन केवल परमेश्वर के वचन से प्रकट बनता है। जीवन केवल परमेश्वर के वचन से आता है जो प्रकट बनता है। जब तक यह ऐसे ही इस तरह से किताब में होता है, इसके लिए अब भी सवाल किया जा सकता है, लेकिन जब यह प्रकट बनता है तब आप इसके उस उत्पादन को देखते हैं जिसके लिए बोला गया है, जो प्रकट हुआ है, तब यह वचन पर उजियाला होता है। देखा, यही है जो वो लाता है, वचन ऐसा करता है, और फिर जब यह पूरा होता है तो यह उजाले में जीवन होता है, उजाला जीवन को ला रहा है। उज्याला जीवन को लाता है। यहाँ पर आप गेहूँ को बो दो ये और इसे गोदाम में रखें, इसे पूरी तरह से ढाक दें और यह कुछ भी लेकर नहीं आएगा क्योंकि यह नहीं ला सकता, वहाँ कोई उज्याला नहीं होता है। लेकिन जैसे ही उज्याला इस पर पड़ने लगता है तो यह जीवन को लेकर आएगा, यदि यह एक अंकुरित बीज है तो। यह वही बात है जो वचन में है। देखो वचन परमेश्वर है और जब जीवन इस पर आता है तो ये इसे लाता है, उज्याला इस पर पड़ने लगता है तो यह फिर से वचन को जीवन में लाता है। हर युग में हमेशा ऐसा ही रहा है। ओह हम इन महान चीजों की कितनी सराहना करें कि कैसे वो वचन प्रमाणित हुआ है जो कि कहे हुए वचन का उज्याला है। समझे, परमेश्वर ने कहा उज्याला होने दो। अब क्या होगा यदि वह बस इसे कहता है और कोई उज्याला न हो? फिर हमें यह पता नहीं होता है कि यह सही है या नहीं है। हम नहीं जानते कि क्या वो सही है, हम नहीं जानते कि वो परमेश्वर है या नहीं, क्योंकि उसने सिर्फ इतना कहा होने दो और वहाँ नहीं था। समझे, इसलिए फिर जब परमेश्वर बोलता है और हम देखते हैं ये वहाँ पर होता है, तब वही वो उज्याला है जो चमकने लगता है, जो वचन की सच्चाई है। देखा, वहाँ उज्याला और जीवन है। सारा प्राकृतिक जीवन उसके कहे हुए वचन के द्वारा आता है और सूरज उसका कहा हुआ वचन है। उसने कहा कि उसने आकाश में दिन को लाने के लिए एक बड़े उज्याले की सृष्टि की है और रात के लिए कुछ कम उज्याला। और सारा प्राकृतिक जीवन उसके कहे हुए वचन से आना था। एक फूल परमेश्वर के कहे हुए वचन के उज्याले के बिना नहीं बढ़ सकता जो उस पर चमकता है, क्योंकि ये सूर्य SUN है, ये परमेश्वर का कहा हुआ वचन है जब उसने कहा उज्याला होने दो। देखा, यह परमेश्वर का कहा हुआ जीवन है और कोई फर्क नहीं पड़ता लोग चाहे कितना भी ऐसा या वैसा या इत्यादि कहने की कोशिश करे, यह फिर भी वहीं पर बना रहता है। आपके पास ये होने के लिए सूरज होना चाहिए। सो प्राकृतिक जीवन केवल परमेश्वर के कहे हुए वचन के द्वारा ही आ सकता है और आत्मिक जीवन अनंत जीवन केवल परमेश्वर के जीवन के कहे हुए वचन के द्वारा ही आ सकता है। जीवन इस समय SON पुत्र था, उसमें उज्याला है और उसमें अंधकार नहीं है और वो परमेश्वर का कहा हुआ उज्याला है। क्या यह सही है, परमेश्वर का कहा हुआ वचन? क्योंकि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वह हमेशा ही परमेश्वर है। देखा, और यह वचन पर गिरने के लिए परमेश्वर के उज्याले को लेता है जिससे वह जीवित हो सके। यहाँ है जो उसने बोला है, अब उज्याले को चमकने दो। आमीन, उज्याले को चमकने दें और उज्याला हर वचन को उसके ऋतु में सही स्थिति में लेकर आएगा। आमीन। ओह तुम देखना, जब ये समय आता है कभी कभी ये दाना पूरे सर्दियों में से होते हुए धरती में ऐसे ही पड़ा रहता है, बीज की तरह सर्दियों में गेहूँ जमीन में बोया जाता है, लेकिन जब वो सूरज उसके बाद ठीक ऊपर आ जाता है, ओह इसे जीना ही है। देखा, और यह सूरज के बिना नहीं जी सकता। ओह परमेश्वर ने हर युग में हर दिन के लिए प्रतिज्ञाएं की है और जब उज्याला सही तरह से आने लगता है और उस पर चमकता है तो बस ये बिल्कुल वही उत्पन्न करेगा जो वचन ने कहा था, क्योंकि वो उज्याला और जीवन है। परमेश्वर का वचन बाइबल के द्वारा ही आता है। परमेश्वर की बाइबल परमेश्वर के पुत्र का छपा हुआ रूप है, क्योंकि बाइबल ने कहा कि यह यीशु मसीह का प्रकाशन है। ये परमेश्वर है जो मसीह के जरिए से खुद को प्रकट कर रहा है और मसीह वचन है, और यह उस वचन पर चमकने के लिए परमेश्वर के उज्याले को लेता है, इसे प्रमाणित करने के लिए, यह साबित करने के लिए कि परमेश्वर अब भी जीवन अनंत जीवन को बोलता है, वह प्राकृतिक उज्याले को बोलता है जो जीवन लाता है। जीवन केवल उज्याले के द्वारा आता है, वचन प्रकट बनता है या वचन देदारी होता है। जब बाइबल में की सारी प्रतिज्ञाएं प्रकट बन गई, जब यीशु मसीह वो वचन हमारे बीच देहधारी हुआ था। परमेश्वर हमेशा ही मनुष्य के जरिए से काम करता है, मनुष्य परमेश्वर के अधीन होता है। अब यदि ये आपके लिए यहाँ थोड़ा गर्म हो रहा है तो आप खिड़कियों को नीचे खींचकर खोल सकते हैं या जैसा भी आप करना चाहते हैं भट्टी को नीचे कर दें। हो सकता है द्वारपाल ने भट्टी को थोड़ा नीचे कर दिया होगा। मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोगों को गर्म हो रहा है और यहाँ भी जो खड़े हुए हैं ये बहुत गर्म हो रहा है, इसलिए इतना याद रखें, मुझे खुशी है कि ये ठंड की बजाय गर्म है, क्योंकि मुझे गर्म पसंद है। गर्म हमेशा उजाला लाता है, जीवन आग को लेता है। ध्यान दें, अब देहदारी हुआ, जब वचन देहदारी बन जाता है ये प्रकट बन जाता है। जैसे वचन को लें और इसे सही स्थिति और सही प्रकार के जमीन में रखें, यह आगे बढ़ने लगेगा। यह बीज अपनी जाति के अनुसार लेकर आएगा। और वचन एक सही प्रकार के हृदय में लाया जाता है तो यह खुद को प्रकट करेगा, यह उजाले को लेकर आएगा, यह उस पर चमकेगा। तो ठीक है, ऐसा कुछ भी प्राकृतिक नहीं या कुछ भी प्राकृतिक या आत्मिक नहीं जो बिना परमेश्वर के उजाले के जी सकता है। तब जीवन केवल उजाले के द्वारा ही आ सकता है। ऐसा कुछ भी प्राकृतिक नहीं या कुछ भी आत्मिक नहीं जो परमेश्वर के उजाले के बिना जी सकता है। उसके बारे में सोचे, ठीक है। लेकिन जब वह हमारे लिए उजाले को भेजता है तो देखें, और इन सभी चीजों को करता है और फिर हम इसे अस्वीकार करते हैं, तो अब यही दयनीय भाग है जब उजाले को अस्वीकार कर दिया जाता है जबकि इसे हमारे लिए भेजा जाता है। अब क्या आप किसी मनुष्य को ये कहते हुए कल्पना कर सकते हैं कि मैं बस यह कहने से इनकार करता हूँ कि सूरज जैसी कोई चीज भी है, मैं विश्वास नहीं करता हूँ कि सूरज है, और वह नीचे तहखाने में चला जाता है और सभी दरवाजों को बंद कर देता है और पीछे अंधकार में बैठ जाता है और कहता है सूरज जैसी कोई चीज नहीं है, उजाले जैसी कोई चीज नहीं है। आप ठीक तभी जान जाएंगे उस व्यक्ति के साथ मानसिक रूप से कुछ तो गलत था। देखा, वहाँ कुछ तो गलत है जब वह एक घोर अंधकार तहखाने में नीचे चला जाता है और परमेश्वर के दिए गए उजाले के लाभ को स्वीकार करने से इनकार करता है। उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। वो इसकी गर्म किरणों को नहीं चाहता है, वह इसकी स्वास्थ्य देने वाली वस्तु को नहीं चाहता है, वह उसके उजाले को नहीं चाहता है कि इसमें चले, वह बजाय इसके अंधेरे में बैठेगा। यह मानसिक रूप से दिखाता है उस मनुष्य के साथ स्वाभाविक रूप से कुछ तो गलत है। और मैं इसे पूरे प्रेम और आदर के साथ कहता हूँ, सो क्या उस मनुष्य के साथ आत्मिक रूप से कुछ तो गलत है जो उसके सिद्धांतों के संप्रदायों में वापस चला जाए और बाइबल के उजाले को देखने से इनकार कर दे, जबकि ये ठीक इसके सामने चमक रहा हो। उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। देखो, वापस उसके सिद्धांतों और संगठन में चला जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है और कहता है ऐसी कोई चीज नहीं है, अद्भुत कार्य के दिन बीत गए हैं, दैविक चंगाई जैसी कोई चीज नहीं है, इनमें से कोई भी चीज नहीं है, यह तो प्रेरितों के लिए था। मनुष्य आत्मिक रूप से पागल है। देखा, उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। वो उसने पर्दे को नीचे खींच लिया है और पवित्र आत्मा को अस्वीकार कर दिया है जो उस पर आ सकता है। यदि वो कर सकता, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब वो उजाला इस वचन पर चमकने लगता है, जो चाहो मांग लो। समझे? देखा, वहाँ कुछ तो गलत है जो उस परमेश्वर के दिए गए साधन को अस्वीकार करता है जो परमेश्वर ने हमें जीने के लिए दिया है, उसका वचन। धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा और मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन हर एक वचन से जीवित रहेगा, न ही वचन का भाग, हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। और जब कोई मनुष्य बस उसे इनकार कर दे तो उस मनुष्य के साथ कुछ तो गलत है, उसके अनुभव के साथ कुछ तो गड़बड़ है जो वह परमेश्वर से प्रेम करने का दावा करता है और फिर परमेश्वर को इनकार कर देता है, उस मनुष्य के साथ कुछ तो गलत हुआ है। हम इस बात को संदेह की छाया के बिना जानते हैं। वह इसे अस्वीकार करता है, वह इस स्थान पर चला जाता है और कहता है अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानना चाहता, मुझे इन चीजों के बारे में कुछ नहीं बताना, मैं इसके बारे में कुछ विश्वास नहीं करता, आप जो भी आप कहते हैं कोई महत्व नहीं रखता है। ज्यादा समय नहीं हुआ, एक व्यक्ति ने कहा, मैं आपको बता रहा था, उसने कहा मुझे परवाह नहीं है कि आप 50 कैंसर के मामलों को लेकर आएं या उनमें से 50 डॉक्टरों को गवाही देने के लिए लेकर आएं, मुझे विश्वास नहीं है, मैं परवाह नहीं करता, यदि आप ठीक मेरे सामने मुर्दों को जिलाएं मैं ये विश्वास नहीं करूंगा। देखिए, उस व्यक्ति के साथ कुछ तो गलत है, वहाँ गलत है। और अब भी वो मनुष्य सेवक था, देखना उसे एक सेवक होना चाहिए था, लेकिन बस इसलिए कि संगठन परमेश्वर की सामर्थ्य में विश्वास नहीं करता है, वो वचन को नहीं विश्वास करता, इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो उसने कहा है, वो मनुष्य इस तहखाने में चला जाता है, वो सड़ा हुआ गंदा भ्रष्ट एक संगठन का तहखाना और पवित्र आत्मा के जीवन देने वाली किरणों और गर्मी को इनकार कर देता है जो यीशु मसीह है, और वो कल आज और युगानुयुग एक सा है। तब उस व्यक्ति के साथ कुछ तो गड़बड़ है। देखा, वो अवश्य ही बल्कि उस अंधकार और इत्यादि में रहेगा बजाय परमेश्वर के और बाइबल के उजाले में रहने के जो कहता है कि यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। जो काम मैं करता हूँ वो तुम भी करोगे, वरन इससे भी बढ़कर तुम करोगे, क्योंकि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ। उस मनुष्य के साथ कुछ तो गड़बड़ है, पूरी तरह बिना सवाल के कुछ तो गड़बड़ है। और आपके लिए जो आप इसे सुन रहे हैं, संसार भर में आप जहाँ कहीं भी हो सकते हैं, आपके अनुभव में कुछ तो गड़बड़ है जब आप कहते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसके वचन का इनकार करते हैं। वहाँ कुछ तो है, आप उसी बात को इनकार करते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वे इन चीजों को नहीं कर सकते हैं। कलीसिया जो उसकी ऐसी स्थिति में है और उन चीजों को परमेश्वर के प्रतिज्ञा के रूप में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपने वचन को ग्रहण नहीं किया है या उज्याले में नहीं चलते हैं। बाइबल ने कहा, आओ हम उज्याले में चलें जैसे वो उज्याले में है। उसके बाद यीशु मसीह का लहू जो परमेश्वर का पुत्र है हमें सारे पापों से साफ करता है। पाप अविश्वास है। तब यदि हम परमेश्वर के दिए हुए उस घड़ी के उजाले में चल रहे हैं, तब परमेश्वर उस वचन को लेता है जो उस घड़ी के लिए दिया गया है और यह इसे प्रमाणित करता है, ठीक उसी तरह जैसे उसने उत्पत्ति 1:3 में कहा था, वहाँ उजाला होने दो, और उजाला आ गया। उसका वचन आगे गया और उजाला उसके पीछे पीछे गया और धुंध को दूर कर दिया, और अंधकार एक कोने में चला गया और उजाला दूसरी तरफ चमकने लगा। इसी तरह से परमेश्वर आज करता है, वो इस घड़ी के लिए अपने वचन को भेजता है और पवित्र आत्मा आकर और उस वचन को जीवित करता है, और अंधकार उनके संस्था और संप्रदाय पर चला जाता है, लेकिन उजाला चमकने लगता है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है जो प्रमाणित हुआ है और उसका वचन सत्य है। अब इसके बारे में कुछ भी काल्पनिक बात नहीं है, यह बिल्कुल वचन के अनुसार है, तो ठीक है। अब हम देखते हैं वे ज्ञानी पुरुष, पहले के ज्ञानी पुरुष परमेश्वर की दी गई वस्तु के पीछे पीछे चले। उन्होंने परमेश्वर के वचन का अनुसरण किया उजाले की ओर, क्योंकि यह जीवन को लाने वाला वचन था। अब आप कहते हैं उन्होंने कैसे अनुसरण किया, तो वे एक प्रकार से ज्योतिषी थे, हम समझते हैं। और फिर हम देखते हैं कि बालाम पहले 24:17 की गिनती में बालाम खुद एक प्रकार का ज्योतिष था। वह वास्तव में एक भविष्यवक्ता था और उसने यह भविष्यवाणी की और कहा कि एक तारा याकूब से बाहर निकलेगा। और जब इन ज्ञानियों ने देखा कि परमेश्वर के वचन ने कहा कि एक तारा याकूब से ऊपर आएगा, उन्होंने उस अनंत उजाले के स्तोत्र के लिए परमेश्वर के उस छोटे से चिन्ह का अनुकरण किया। वैसे ही आज के ज्ञानी लोग जो संस्थाओं के द्वारा अंधे नहीं है, वे परमेश्वर के दिए गए कहे गए वचन का अनुकरण करेंगे जब तक कि वे इस घड़ी में परमेश्वर की सामर्थ्य की संपूर्णता को खिलते हुए न देख लें। वे इसे देखते हैं और वे जानते हैं कि यह यहाँ वचन में है। परमेश्वर ने इस दिन के लिए इसकी प्रतिज्ञा की थी, और कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी भी वैधशालाएं हो, कितनी ही और चीजें क्यों न हो जो ज्ञानी पुरुषों से कहे, क्योंकि तुम अपने आपे से बाहर हो। 2 वर्ष वे यात्रा में थे, वे बहुत से देशों से होकर गुजरे, और वे पूछते तुम कहाँ जा रहे हो, ओ हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और हम उसकी आराधना करने आए हैं। और जब वे यरूशलेम से गुजर रहे थे, वो संस्थागत मुख्यालय था, उनके पास उत्तर नहीं था। वे सड़कों पर ऊपर और नीचे चिल्लाते हुए जा रहे थे, कहाँ है वो जो यहूदियों का राजा जन्मा है, वे इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। इसलिए उन्होंने इसका पता लगाने के लिए वचन पर देखा, उन्होंने पीछा किया, वे जान गए कि तारा उन्हें अनंत उजाले में ले जा रहा था। हमें तेरे सिद्ध उजाले की ओर मार्गदर्शन कर, और वचन ही है जो आपको उजाले के लिए मार्गदर्शन करता है, और उजाला ही है जो वचन को प्रमाणित करता है। ध्यान दे, वे ज्ञानी पुरुष थे, और आज के ज्ञानी पुरुष ना, इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के लिए मूर्खता है। आपके सारे वैज्ञानिक और वे लोग जो कुछ बड़े छात्रवृत्ति या कुछ और उनके ऊपर निर्भर रहते हैं, आपको बताते हैं आप एक परमाणु को कैसे विभाजित करते हैं, यह आपको जीवन नहीं दे सकता। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको जीवन दे सकता है सिवाय परमेश्वर के कहे गए वचन के। यही एकमात्र ऐसी बात है जहाँ से वो जीवन आ सकता है, वो उसके द्वारा कहे गए वचन के जरिए से है। और यह सब ठीक बात है, यह जानना कि परमाणु को कैसे विभाजित किया जाए, काश वे इसे कभी नहीं ढूंढते। लेकिन यदि वे उन्हें ये करना है, क्योंकि यह संसार आज लटका हुआ है, ऐसा होना ही था, इन धरती के बड़े बड़े छेदों को उड़ाने के लिए, ताकि उस लावा को ऊपर लेकर आए और इस संसार को फिर से नया कर दे, ताकि इस पृथ्वी को नया कर दे, जहां धर्मी जन दुष्टों की राख पर चलेगा, जहां पाप भुला दिया जाएगा। हर एक चीज के लिए अपने आप को नए सिरे से बनने का एक जरिया होता है, और मनुष्य जिसे इस धरती पर रहने के लिए जीवन को दिया गया था, उसके खुद की बुद्धि के द्वारा वो जीवन के पेड़ को लेने की बजाय ज्ञान के पेड़ को लेता है, वह उस धरती को नष्ट करेगा जिसे परमेश्वर ने उसे रहने के लिए दिया है। लेकिन जो अभी भी जीवन के पेड़ पर है, वे एक नए आकाश और नई पृथ्वी पर आएंगे, जहां कोई बीमारी या मृत्यु नहीं है। उज्याला उज्याला प्रभु, हमारे लिए उज्याला भेजें। यह परमेश्वर के दूत थे कि पहाड़ी पर उज्याले को दिखाया, ताकि अनंत जीवन के लिए चरवाहों का मार्गदर्शन करें। देखो, यह केवल उज्याले के द्वारा आता है। जीवन केवल उज्याले के द्वारा आ सकता है। वे चरवाहे जानने के लिए रुके हुए हैं। आप जानते हैं, जब एक राजा का जन्म होता है तो वे गीतों को गाते हैं, विशेष बातें होती हैं जब राजा का जन्म होता है। अब वह बहुत गुप्त रूप से जन्मा था और एक घास में पैदा हुआ था, एक चरनी जहां मवेशी और घोड़े खा रहे थे, लेकिन फिर भी वो एक राजा था। और वे दूतों ने चरवाहों के लिए नीचे आकर स्तुति के गीत गाए उजियाले में। वे दूत स्वयं में उजियाला थे, जो परमेश्वर के वचन के साथ दिखाए गए थे। उनके पास परमेश्वर का वचन था और उन्हें बताया, आज दाऊद के नगर में बैतलहम में उद्धारकर्ता जन्मा है। दूतों के पास वचन था और वचन उजियाले के द्वारा आया मार्गदर्शन के लिए, और उन्होंने अनंत उजियाले की ओर दूतों के वचन का अनुकरण किया। उन्होंने वहां बालक को पाया जो कपड़ों के टुकड़ों में लपेटा हुआ था, जैसा कि उन्होंने कहा था, क्योंकि आप देखते हैं, जीवन केवल उजियाले के द्वारा आता है। ध्यान दें, वह वचन था जो उजियाला हुआ या उजियाला बन गया। उस पीढ़ी का वचन, वह उस पीढ़ी के लिए वचन उजियाला था, क्योंकि पुराने समय के भविष्यवक्ताओं ने उसके बारे में बोला था, और यहाँ वो आया और वो प्रमाणित हुआ कि वह परमेश्वर के कहे हुए वचन का उजाला था। देखा, वो सब भविष्यवक्ताओं ने जो कहा था वो उसमें पूरा हुआ था। देखो, वे भविष्यवक्ता यहाँ फिर से वचन के साथ हैं, जैसे परमेश्वर आरंभ में था जब उसने कहा उजाला होने दो, और उजाला आ गया। अब भविष्यवक्ता ने कहा, एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को लाएगी, वे उसका नाम इमैनुएल बुलाएंगे, क्योंकि यह परमेश्वर हमारे साथ होगा। अब उन्होंने इसे बोला था, वचन निकल गया था, लेकिन वो उजाला था। वो क्या था? पूरा होना। हालेलुया। वह उस वचन का पूरा होना था, वह उस वचन का प्रकटीकरण था। सो वैसे ही आज है, परमेश्वर का वचन इस घड़ी पर पूरा हो रहा है। यही वो उजाला है, यह परमेश्वर स्वयं में प्रकट हो रहा है। वह संसार का उजाला था। और जब भविष्यवक्ताओं ने पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर कहा, हमारे लिए एक बालक जन्मा है, हमारे लिए एक पुत्र दिया गया है या एक बालक दिया गया है, और उसका नाम परामर्शदाता, शांति का राजकुमार, सामर्थ्य परमेश्वर, अनंत काल का पिता बुलाया जाएगा, वहाँ वो था। वो क्या था? वो उजियाला जिसने उस वचन को पूरा किया। आमीन। वो उजियाला जिसने उस वचन को पूरा किया। मती में, संत मती के 28वें अध्याय में हम देखते हैं, और यीशु जब मरे हुए में से जी उठा, वह भी दाऊद के कहे हुए वचन का उजियाला था, जब उसने कहा, मैं उसके प्राण को अधोलोक में नहीं छोड़ूंगा, न ही मैं अपने पवित्र जन को सड़ते हुए देखूंगा। मृत्यु अंधकार में थी, लेकिन उसने मृत्यु की मोहर को तोड़कर खोल दिया और उसमें चला गया और फिर से बाहर आ गया। वो उजियाला था, प्रमाणित वचन जो मरने के बाद जीवित रह सकता है, वो था। पेंटिकॉस्ट के दिन पर वह उजाला था जिसने दिखाया कि पवित्र आत्मा कब आया था। यशाया ने कहा, यशाया के 28वें अध्याय में यशाया ने साथ ही कहा कि नियम पर नियम होना ही है, पंक्ति पर पंक्ति होना ही है, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, जो अच्छा है उसे तेजी से पकड़ लो, क्योंकि हकलाते होठ और अन्य जबान के साथ बोलने के द्वारा मैं इन लोगों से बातें करूंगा। ये वो विश्राम है, ये वो सबत है जो मैं दूंगा, और इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो, परंतु उन्होंने सुनना न चाहा, उनके सिरों को हिलाते हैं। और जब पेंटिकॉस्ट के दिन पर जब पवित्र आत्मा उन लोगों पर उतरा और वे नशे में धुत पुरुषों और महिलाओं ने इस तरह से व्यवहार किया पवित्र आत्मा के प्रभाव के नीचे लड़खड़ाते हुए और वे वहां से चले गए और अपने सिर को हिलाते हुए और कहा ये लोग नशे में है नई दाखरस से भरे हुए हैं और इत्यादि। यह निश्चित रूप से उजाला था जिस वचन की भविष्यवाणी की गई थी वह प्रकट में आया था। ऐसे ही यह हर युग में है वचन प्रकट में आया जीवन के लिए आया उस युग का उजाला है। वहाँ वचन प्रकट हुआ ठीक वैसे ही जैसे उत्पत्ति एक में था जब परमेश्वर ने कहा उजाला होने दो और वहाँ उजाला था। जब परमेश्वर ने कहा कि एक पुत्र होगा और एक पुत्र था। जब परमेश्वर ने योएल 2:28 में कहा यह अंतिम के दिनों में पूरा होगा मैं सभी देह पर अपनी आत्मा को ढेलूंगा तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे मेरे दास और दासियां पर मैं अपनी आत्मा को ढेलूंगा तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे तुम्हारे बूढ़े सपना देखेंगे और ये सारी चीजें जिसकी उसने प्रतिज्ञा की थी जब ये पवित्र आत्मा उतरा उस वचन पर उजाला था। जब वचन को प्रकटीकरण में लाया गया था तब ये उजाला हो गया। वो उजाला है जिसका हमें अनुकरण करना चाहिए वही एकमात्र उजाला है। उन दूतों ने उजाला पाया और ये उसकी ओर लेकर गया। अब सारे युगों में परमेश्वर ने प्रत्येक युग के लिए अपने वचन को और अधिक स्थापित किया है। परमेश्वर हमेशा ही किसी को तो भेजता है जो कि वचन के अंदर जा सकता है और इसके उजाले को दिखा सकता है कि हर युग में यह उसी काम को करता है जो हमेशा करता आया है। उसे पूरा होना था जैसे कि मैंने कहा उस सारी दैविकता का भविष्यता की पवित्र सामर्थ वे छोटे परमेश्वर थे। जब प्रभु का वचन एक मनुष्य के पास आता था तो यीशु ने कहा कि वो एक परमेश्वर था आप ये जानते हैं। उसने कहा यदि आपके नियम ने कहा और आपके पिता जो वहाँ पहले आए थे तो उन्हें कहकर बुलाया जिसके पास परमेश्वर का वचन आता था उन्हें परमेश्वर कहा तुम मुझ पर कैसे दोष लगा सकते हो जब मैंने कहा मैं उस परमेश्वर का पुत्र हूँ समझे। जब वही परमेश्वर खुद जिसने भविष्यवक्ताओं के जरिए से वचन को बोला वह उस कहे गए वचन का प्रकटीकरण था। और यदि भविष्यवक्ता को एक परमेश्वर कहा जाता था क्योंकि वो किसी भविष्यवक्ता के वचन का प्रकटीकरण था तो आप उसको कैसे दोष लगा सकते हैं जब वो वही बात थी वह परमेश्वर का पुत्र था क्योंकि उसे परमेश्वर का पुत्र कहा जाएगा। वह लंबे समय की प्रतिज्ञा किया गया मसीहा था जिसका संसार इंतजार करता आ रहा था। वह प्रतिज्ञा किया गया मसीहा था जो प्रकट हुआ था। उसे देखो जब वो वहाँ खड़ा था उसने कहा यदि मैं अपने पिता के काम को नहीं करता हूँ तो मुझे दोषी ठहराओ देखो लेकिन यदि तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते हो तो इन कार्यों पर विश्वास करो जिसे मैं करता हूँ वे गवाही देते हैं कि मैं कौन हूँ वे आपको बताते हैं कि मैं कौन हूँ। आप देखें कि वो अंधकार में काली घड़ी जिसमें वे रहते थे वे इसे नहीं देख सके वे बस नहीं देख पाए भला वो कैसे हो सकता है भला वो कोई परमेश्वर का पुत्र कैसे हो सकता है जबकि वो ठीक यहाँ बैतलहम में जन्मा था। यदि वो केवल ये जानते कि वचन ने कहा यह उसी तरह से आएगा क्योंकि उसका पिता यूसुफ तो एक बड़ा ही है उसकी माँ क्योंकि ये असल में उसके भाइयों के बीच विश्वास करते थे कि वह नाजायज तरीके से जन्मा हुआ था देखा लेकिन फिर भी परमेश्वर के वचन ने ऐसा कहा था। उसने कहा वचन में ढूंढो क्योंकि उनमें तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास अनंत जीवन है और वे ही वो वचन है जो गवाही देते हैं कि मैं कौन हूँ वे ही वो है जो मेरी गवाही देते हैं वे पवित्र वचन। फिर वो क्या था परमेश्वर का उजियाला कोई आश्चर्य नहीं कि उसने कहा मैं जगत का उजियाला हूँ। न केवल उसने कहा कि मैं जगत का उजियाला हूँ लेकिन उसने कहा तुम उजियाला हो यदि उसका वचन आप में है तो वो अपने आप में गवाही देते हैं तब तुम जगत का उजियाला हो। ध्यान दें हम देखते हैं प्रत्येक युग का उजियाला उसी तरह से प्रकट हुआ। फिर मैं सवाल पूछना चाहता हूँ जैसे हमारा समय निकलता जाता है क्यों? फिर वे क्यों क्यों उन्होंने इसे ठुकरा दिया वे ऐसा कैसे कर सकते हैं जब उनकी वही बाइबल जिसे वे पढ़ रहे थे जो उनके सामने प्रकट हुआ था। अब वास्तव में इसका गहराई से अध्ययन करें। अब याद रखें मैं इस समय बहुत लोगों से बात कर रहा हूं। आप देखें यहां केवल 400 या 500 से नहीं बल्कि मैं कई हजार लोगों से बात कर रहा हूं। बस एक मिनट रुकें अपने टेप रिकॉर्डर को बंद करें और सवाल पूछें धार्मिक मनुष्य भला मनुष्य क्यों करेगा यूसुफ सवाल क्यों करेगा देखा क्यों होगा क्योंकि उसने कभी भी वचन में खोज नहीं की। याजकों ने क्यों सवाल किया एक कारण वे नहीं वे इसे जानते थे निकोदेमस ने इसे अच्छी तरह से व्यक्त किया। उसने कहा, रब्बी, हम जानते हैं तू परमेश्वर से गुरु होकर आया है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता है जब तक परमेश्वर उसके साथ न हो। हम इससे अवगत हैं। लेकिन ये क्या था? उनके रीति रिवाजों ने उन्हें ऐसा करने से बनाए रखा। फिर वे क्यों उन्होंने मसीहा का अस्वीकार कर दिया था? क्योंकि क्यों उन्होंने उस उजियाले को अस्वीकार कर दिया? यहाँ पर वो वचन है, वे जानते थे कि वो पूरा होने जा रहा था, लेकिन जब वो वचन प्रकट बना था यह दिखाने के लिए कि परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा था, आज के साथ तुलना करें, देखा, जब वहाँ वचन में लिखा है कि ये बातें जगह लेंगी, फिर उन मनुष्यों ने क्यों इसे अस्वीकार कर दिया? उन शिक्षकों ने, क्योंकि वे दूसरे उजियाले की चमक में रह रहे थे। ऐसा ही है, वे एक चमक में जी रहे थे। उसी चीज को वे आज कर रहे हैं, वे जी रहे हैं। इसका कारण उन्होंने इसे ठुकरा दिया, क्योंकि दूसरे उजियाले की चमक में रह रहे हैं। देखा, अब वे मूसा के द्वारा कही गई बातों की चमक में रह रहे थे। उन्होंने दावा किया था, वे उस चमक में जी रहे थे जो दूसरा युग जो गुजर चुका था। और यही आज का कारण है कि यह संदेश कि यीशु मसीह आज भी एक सा है, उसको ठुकरा दिया जाता है, क्योंकि लोग किसी और युगों की चमक में रह रहे हैं। वही कारण वे इसे ठुकरा देंगे। अब हम देखते हैं, और वेबस्टर का कहना है कि एक चमक एक प्रकार का झूठा उजियाला है। एक चमक एक झूठा उजियाला होता है, कुछ भी जो चमकता है, जैसे सड़क पर एक मृत तृष्णा की तरह। आप वहाँ सड़क पर जाते हैं, आप में से बहुत से लोग कार चलाते हैं और आप आगे की ओर देखते हैं। जब आप वो सूरज आगे जमीन पर देखते हैं, तो यह एक उजाले को प्रतिबिंब करता है और एक मृत तृष्णा की तरह पूरे रास्ते के ऊपर पानी की तरह दिखाई देता है। लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हैं, तो वहाँ कुछ भी नहीं होता है। यह केवल एक झूठ है। मृत तृष्णा एक सच्चे उजाले की चमक है। यही है जो आज शैतान कर रहा है। वह लोगों को एक मृत तृष्णा दिखा रहा है। कलीसियाओं की एक परिषद संप्रदाय का एक झुंड को दिखा रहा है, जो गलत निकलेगा, क्योंकि यह इसलिए है, वहाँ एक वास्तविक उजाला चमक रहा है। वह सच्चा उजाला नहीं चमक रहा था तो एक मृत तृष्णा वहाँ नहीं हो सकती। सच्चा उजाला चमकता है, और यह वे दूसरे युग की चमक में रह रहे हैं, किसी और चीज की, क्योंकि यह आकर और चली गई है। अब एक चमक यह मृग तृष्णा जो झूठ है, यह सूर्य की एक चमक है। और इसी तरह से उन्होंने उसी चीज को किया, एक सच्चे उजाले की झूठी चमक। अब यह साबित हुआ कि वो सच्चा उजाला था, वो उजाला था। उन्होंने क्यों जाना कि वो उजाला था? आप कैसे जान सकते हैं कि वो उजाला था? क्योंकि वो वचन जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसे उसी के जरिए से प्रकट किया गया था, इसलिए वो उस कहे गए वचन का उजाला था। आमीन। ओह, यह लगभग मुझे पेंटिकॉस्टल बैप्टिस्ट बनाता है, चिल्लाऊं। ध्यान दीजिए, इसे सोचिए, एक चमक, देखो, एक चमक में रहना। लेकिन जब सच्चा वचन रहता है, यही उजाला है जो परमेश्वर ने कहा। अब क्या हो, आदि में यदि परमेश्वर ने कहा वहाँ उजाला होने दो, ठीक है, और वहाँ कुछ और ही दिखाई दिया। देखो, केवल एक मृत तृष्णा। देखिए, ऐसा नहीं हुआ होगा यदि जो परमेश्वर ने कहा है, नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा। क्या हो यदि परमेश्वर ने कहा वहाँ उजाला होने दो और अधिक कोहरा आ जाए? देखो, ये उजाला नहीं होता था, लेकिन उजाले का कारण यह उसका वचन प्रकट हुआ था। और आज जब परमेश्वर कह चुका है कि इस समय ऐसी चीजें जगह लेंगी, और आप इसे करते हुए देखते हैं, ये क्या है? यह परमेश्वर के वचन पर उजाला है। ये वचन उजाला हुआ है अपने आप को प्रकट करते हुए। अब उन्होंने कहा, तुम क्या कहते हो, हम कौन हैं? क्योंकि उसने कहा, आप कोशिश करें, हम जानते हैं कि आप पागल हैं, क्योंकि तुम एक सामरी हो, तुम्हारे पास तुम्हारा सही मन नहीं है। ठीक है, आप कोशिश करें, कौन बता सकता है? हम जानते हैं आप पाप में जन्मे हुए थे। हम नहीं जानते कि आप कहाँ से आए हैं। हमारे झुंडों में हमारे पास आपकी पहचान का कोई लेखा जोखा नहीं है, क्योंकि तुम पागल हो, तुम्हारे पास एक शैतान है। देखा, कहा, क्योंकि तुम अपने आपे से बाहर हो। लेकिन असल में वह सच्चा परमेश्वर का वास्तविक उजाला चमक रहा था, और चमक को बाहर रखा गया था, उनकी आंखों को बाहर रखा गया था। हमारे पास हमारे मार्गदर्शक के रूप में मूसा है। उसने कहा, यदि तुम मूसा पर विश्वास करते तो तुम मुझे जान जाते। और यदि तुम यीशु और बाइबल पर विश्वास करते तो तुम इस घड़ी को जान जाते कि तुम जिसमें रह रहे हो। वे कहते हैं तो ठीक है, हम मसीही हैं। हम यदि आप होते तो आप इस दिन के लिए मसीह के कामों को जानते। देखो आप इसे जान जाते। यीशु ने कहा उन सारे भविष्यवक्ताओं ने मेरे बारे में बोला और यदि तुम उन भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करते तो क्यों तो तुम मुझे जान जाते, मेरे काम पहचान देते हैं। इसलिए उन्होंने जो कहा कि मैं करता हूँ मैं इसे करता हूँ। और अब कौन मुझ पर अविश्वास का दोष लगा सकता है? और अब भी उन्होंने इसे नहीं देखा, क्यों? उन्होंने उनकी आंखों को बाहर लगाए रखा था एक चमक के साथ, देखो किसी और चीज की चमक, जिसे उन्होंने ले लिया था जो सच्चा वचन बोला गया था। अब इस पर सोचिए, इसे सोचें, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने वचन का विश्वास किया है, लेकिन उनके रीति रिवाजों ने उनके चेहरे को सच्चे वचन से घुमा दिया था उस चमक की ओर, इसलिए वे वास्तविक चीज को नहीं देख सके। वैसे ही यह आज है, वैसे ही यह हर युग में रहा है। देखो वो सच्चा वचन चमकता है, लेकिन वे इतने रीति रिवाज से बन गए हैं कि वे इस वचन को नहीं देख सकते हैं। वे उस चमक की ओर देख रहे हैं, वे अंधे हैं। एक चमक आपको अंधा कर देगी, वहाँ एक बुझी हुई चिंगारी है, यह आपको अंधा कर देगी। और यह जब यीशु ने कहा तुम अंधे हो, अंधों की अगुवाई करते हो, उन्हें इसे देखने में सक्षम होना चाहिए था, इसे देखना कि वह कौन था, लेकिन उन्होंने नहीं देखा क्योंकि वे उस चमक में रह रहे थे। अब एक चमक, जैसा कि मैंने कहा, एक झूठा उजियाला, एक मृग तृष्णा, एक सच्चे उजियाले की एक झूठी अवधारणा है। झूठी अवधारणा, यह ऐसा कुछ तो है जो इसके जैसा दिखता है, लेकिन यह ऐसा नहीं है। अब वे एकमात्र जरिए से फर्क को बता सकते थे, क्योंकि उन्हीं चीजों ने यीशु को साबित किया कि ये वही था, कि वह उजियाला था। उन्होंने सोचा कि वे उजियाले में हैं, लेकिन अब यदि आप बस एक मिनट रुकें और विचार करें कि तब उजियाले में कौन है। अब आज यदि सेवक जन के द्वारा उस दिन पर ऐसी जल्दबाजी की गलती की गई थी, इस तरह की जल्दबाजी चीज की गई थी, भाइयों आप ऐसा नहीं सोचते कि यह वो समय है कि हमने रुककर और विचार किया हो कि उजाला क्या है? आइए हम ऐसी जल्दबाजी की गलती न करें, लेकिन आप इसे कर रहे हैं, आपने पहले ही ऐसा कर लिया है। देखो इसे नहीं जानते, बिल्कुल वैसे ही जैसे वे तब थे। अब बस एक मिनट रुकें और पता लगाएं कि वचन आज के लिए क्या कहता है। यदि वे रुककर और सोचते, यहाँ वो पूरा कर रहा है शब्द दर शब्द, ठीक बिल्कुल जैसा कि वचन ने कहा था कि वो क्या करेगा, और उसने उन्हें चुनौती दी जैसा कि मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ। समझे? देखा, मैं आपको वचन में देखने के लिए चुनौती दे रहा हूँ। वचनों में ढूंढें, देखें कि क्या यह घड़ी नहीं है। समझे? वचन में ढूंढें, क्योंकि उनमें आपको लगता है कि आपके पास अनंत जीवन है, और वे मेरे बारे में गवाही देते हैं। वे आज इस काम की गवाही देते हैं। वे कार्य अपने आप में ही गवाही देते हैं कि इसे किया गया है। वे आज इस काम की गवाही देते हैं। वे कार्य अपने आप में ही गवाही देते हैं कि इसे किया गया है। और वचन कहता है कि इसे किया जाएगा, इसलिए यह घड़ी का उजियाला है। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। आपके रीति रिवाज और इत्यादि ठीक वैसे ही हैं जैसे बाइबल ने कहा था, जो वे अपने सिर को हिलाकर और चले गए। बाइबल कहती है सारी मेजे उल्टी से भरी हुई हैं, और यही है वे जहाँ थे, वे इस पर विश्वास नहीं करेंगे। उन्होंने अपना सिर हिलाया। और सज्जन पुरुषों, क्या आपको एहसास है? और भाइयों, क्या आपको इस बात का एहसास है कि जब आप उसी चीज को इनकार कर रहे हैं जो परमेश्वर आपके सामने अपनी बात को प्रमाणित कर रहा है, तो आप उसी काम को कर रहे हैं जो उन्होंने किया, वापस अपने रीति रिवाज की उल्टी में जा रहे हैं। जैसा कि एक कुत्ता अपनी उल्टी को चाटता है, यदि उसने उसे पहली बार बीमार किया तो वह उसे दूसरी बार भी बीमार कर देगा। यदि कैथोलिक कलीसिया संगठित होकर उसने पहला संगठन बनाया तो कलीसिया में बीमारी को लेकर आया, वैसे ही लूथरन, मेथोडिस्ट और बाकी के सभी बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन और पेंटिकॉस्टल करेंगे। एक कुत्ता अपनी उल्टी के लिए वापस चला जाता है और एक सुअरी अपने कीचड़ में वापस लौटती है। समझे? हम कुछ ही मिनट में इस बात पर आ रहे हैं, प्रभु ने चाहा तो। चमक, चमक में चलना, देखो मृग तृष्णा, सच्चे उजियाले की झूठी धारणा। उसने साबित किया कि वो उजाला था, क्योंकि उसके लोगों की संख्या कम होती गई थी। ओह प्रभु, लाखों लोग उसके विरोध में थे, वहाँ धरती पर लोगों का एक छठा हिस्सा, एक नवा हिस्सा नहीं था। उन्होंने कभी नहीं जाना कि वो यहाँ पर था। नहीं, मेरा अनुमान है यहूदियों में से एक सवा हिस्सा या उनमें से शायद एक पचासवा हिस्सा या उनमें का चालीसवा हिस्सा, मैं कहूँगा हो सकता है उससे भी कम, उसी के देश का उन्होंने कभी नहीं जाना कि वो वहाँ पर था। और वे जो जानते थे कि वो वहाँ पर था, उसे कुछ तो झूठा समझा था, क्योंकि संप्रदाय ने उन्हें बताया था कि वो क्या था, समझे। लेकिन फिर भी वह सच्चा उजाला था जिसे उत्पत्ति से लेकर आदि में बोला गया था। और उन्हें वचन में ढूंढने और पता लगाने के लिए कहा, क्या वो तब उस समय में नहीं रह रहा था? यदि वो जो काम उसने किए, क्या बिल्कुल उस समय के लिए की गई प्रतिज्ञा को पूरा नहीं किया? आमीन। ओह, ये कितनी गंभीर बात है भाइयों, हम एक जबरदस्त समय में रह रहे हैं। वह सही साबित हुआ था, वो वही उजाला था जिसका उन्होंने दावा किया था जो वे आराधना कर रहे थे। उन्होंने उस उजाले की आराधना करने का दावा किया और आज भी ऐसा ही है। वे दावा करते हैं कि वे उसे आराधना कर रहे हैं। पेंटिकॉस्टल इसका दावा करते हैं, वे दावा करते हैं कि वे आराधना करते हैं, और वे इतने अंधे हैं इसे नहीं देख सकते हैं। क्यों? वे संगठित हैं और लेकिन उनके चेहरे पर एक चमक है। देखा, एक रीति रिवाज है जो कुछ लोग एक साथ बैठते हैं और कहते हैं, हम जाएंगे और इसे और इसे और इसे और इसे बनाएंगे। अब हम उस बात पर आने वाले हैं कि ऐसी बातें क्यों होनी है। प्रभु की इच्छा हुई तो ध्यान दें, उसके काम अपने आप में जीवित वचन थे। उसने जो किया अपने आप में जीवित वचन थे, दिखा रहे थे कि वो वह उजाला था जिसे संसार के आदि से लेकर प्रतिज्ञा की गई थी। वह वो उजाला था, उसका उजाला उस युग का प्रतिज्ञा किया गया वचन, यह ठीक उसी तरह से जीने को लगाया जैसे कि प्रतिज्ञा ने कहा था कि वो करेगा। लेकिन वे इससे इतना बदल गए थे, इतना तक कि वे से नहीं देख सके, समझे। लेकिन वह उस युग का उजाला था, वह वो उजाला था जिसकी उन्होंने आराधना करने का दावा किया था। उन्होंने सोचा कि वे उसी सृष्टि के परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, वे उसमें रह रहे थे और चमक की आराधना कर रहे थे। और यीशु ने कहा, तुम व्यर्थ में मेरी आराधना करते हो, मनुष्य के रीति रिवाजों के बारे में सिद्धांत सिखाते हो, वचन को नहीं सिखाते। वह वचन था और वह प्रकट हुआ वचन था, उन्हें इसका पता होना चाहिए था। मुझे आशा है कि ये इसमें से होते हुए खुल सकता है जहाँ कहीं भी इसे सुना जाएगा कि ये वचन प्रकट हुआ है। ओह, कहते हैं, ओह हमारे पास वचन है, क्योंकि वो वचन, हर कोई बाइबल को बंद करता है जो चाहता है, लेकिन जब प्रमाणित हुआ वचन बना। क्योंकि कहते हैं तो हम विश्वास करते हैं, हाँ श्रीमान, उन्होंने विश्वास किया, पूरी तरह से करते आ रहे हैं, वैसे ही शैतान विश्वास करता है। वे फरीसी कौन उनको दोष लगा सकते थे कि विश्वास नहीं करते हैं? लेकिन उन्होंने उस घड़ी के वचन पर विश्वास नहीं किया, वे किसी और चीज की चमक की आराधना कर रहे थे। इसी बात को वे आज कर रहे हैं। देखा, वे लूथर की रीति रिवाजों को आगे बढ़ा रहे हैं या वेस्ली के रीति रिवाज और उनमें के बाकी पेंटिकॉस्टल के रीति रिवाज, लेकिन उस घड़ी का क्या? फरीसी उनके रीति रिवाजों को निभा रहे थे, लेकिन उनके रीति रिवाजों के पीछे परमेश्वर का सच्चा वचन था जो चमकने जा रहा था। और जब ये चमका तो इसने उसकी आंखों को अंधा कर दिया। वे इसे देख नहीं सकते थे क्योंकि वे कुछ और देख रहे थे, वैसा ही आज है। होने पाए परमेश्वर इसे आपके अंदर डाल दे, जब तक ये सच में लोगों के हृदय में नहीं चला जाता जिसे विश्वास करना चाहिए। ये आपके सोचने से भी अधिक नजदीक है। मेरा पुत्र बिली पॉल, वह अपनी नींद में बात करता है, लेकिन उसे अक्सर सपने नहीं आते हैं। उसके पास एक रात को एक सपना आया था जिसने उसे हिला दिया था। कहा कि उसने सपना देखा कि वो एक कलीसिया में था और वे, मैं अभी तक कलीसिया में नहीं आया था। कहा, जब मैं अंदर आया तो आंखों से आग बाहर निकलकर उड़ रही थी और मैंने कहा, समय यहाँ पर है, यह खत्म हो गया है। और हर कोई चीखने लगा, मैं नहीं कर सकता था, मेरे बच्चे, और यहाँ तक कि मेरी पत्नी ने भी कहा, मैं उस मेज पर आशीष को मांगने के लिए सारा तक नहीं पहुँच सकती हूँ और इत्यादि। और मैंने कहा, और उसने कहा, मुझे जाकर लॉयस और बच्ची को लाना होगा। मैंने कहा, लॉयस वो अभी नहीं आ सकती, वो बच्ची इसे समझने के लिए बहुत ही छोटी है। बिल्ली, वो घड़ी यहाँ पर है, हमें जाना चाहिए। मैंने कहा, अभी मध्य रात है, दिन के उजाले से पहले यीशु यहाँ पर होगा। यदि ऐसा नहीं है तो मैं मसीह का झूठा गवाह हूँ। और किसी ने तो बोला, कहा, कोई भी मनुष्य उस मिनट या घड़ी को नहीं जानता है। मैंने कभी भी मिनट या घड़ी नहीं कहा, मैंने कहा किसी भी समय, अभी और दिन के उजाले के बीच। और मैंने कहा, आओ आओ चलें। मैंने कहा, लेकिन हम उस समय पर हैं, आओ चलें। और हम कार में चढ़े और निकल पड़े और हमने ऊपर पहाड़ की ओर निकलना आरंभ किया। और जब हमने ऐसा किया तो ऐसा दिख रहा था कि उजाला आसमान में आ रहा है लेकिन धरती पर अंधेरा है। उसने कहा कि मैं सड़क पर आ गया और अपने हाथों को इस तरह से पकड़ लिया, आंखों से आग अभी भी उड़ रही है। और उसने कहा, मैंने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा पर मैंने ऐसा किया है। मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि आपने मुझे इस तरह से करने के लिए कहा था। आपने जो मुझे बताया है उसके अनुसार मैंने इन चीजों को किया है। और मैं एक बड़े ग्रेनाइट पहाड़ पर पहुंचा और एक उजाला बिना हाथ एक पत्थर को पहाड़ से काटता है जो सैकड़ों टन का वजन का है और यहाँ ये आता है। मैंने कहा, अपने सर को घुमा लो, देखना मत, ये सब बस कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएगा। कहा, फिर एक बड़ा पवित्र सन्नाटा हर जगह छा जाता है जैसे ये पत्थर उस स्थान की ओर आता है। ये हमारे सोचने से भी देर हो जाएगी। वहाँ देखें, ये बिल्कुल ठीक वचन के अनुसार है। आप देखते हैं पत्थर बिना हाथों के पार से काट दिया गया है। और इसलिए इन दिनों में से एक दिन यह उस तरह से होने जा रहा है जब आप किसी चीज के लिए चिल्लाएंगे। मैंने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहले से ही वह समय था। परमेश्वर ने निरंतर समय समय पर आपको चेतावनी दी है। जी हाँ, मैंने कहा, यहाँ तक ये मेरे अपने बच्चे हो या चाहे कोई भी हो, वो घड़ी यहाँ पर है। मैं केवल वही कह सकता हूँ जो उसने मुझे कहने के लिए कहा था और ये यहाँ पर होगा और यह था। और फिर अचानक ही यहाँ वो आता है, पत्थर बिना हाथ के पार से काट दिया गया है। दानियल ने इसे देखा। आप जानते हैं, बहुत वर्ष पहले बिली को इस बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन यह एक सपना था जो उसे प्रभु से भेजा गया था। अब देखिए, वे उसी परमेश्वर की आराधना करने का दावा कर रहे हैं जिसका वे मजाक उड़ा रहे हैं। अब वही बात आज दोबारा घूम कर आई है। उसी कारण से उजाले की बजाय एक चमक में रहना, महान उजालों की एक चमक है तो ठीक है। देखो आज हम किस अंधेरे में हैं, देखो आज क्या चल रहा है, हत्याएं, बलात्कार, विवाद की ओर देखें, क्योंकि इसे पूरा होना है। मैं सोचता हूं कि बिली ग्राम ने अपनी आखिरी सभा में कहा था, अब से 10 साल में कैलिफोर्निया के हर एक नागरिक को खुद के बचाव के लिए अपने पास बंदूक रखनी होगी। आप कानून पर और दबाव को नहीं डाल सकते हैं। लोग बस पागल हो गए हैं, बंदूक चला रहे हैं, हत्या और बलात्कार हर एक चीज कर रहे हैं। देखें, वह बस जंगली हो गए हैं। देखो उन सड़कों पर, देखो यही वो दिन है जिस दिन में हम रह रहे हैं, एक सदोम का दिन। देखा, लेकिन एक उजाला चमक रहा है। यदि वे केवल ध्यान देते, यदि वे केवल देखते, वचन में देखते और देखते कि इस घड़ी में क्या होना चाहिए, वे जान जाएंगे कि क्या करने की कोशिश की जा रही है। अब वे दावा करते थे कि वे उस उजाले की आराधना कर रहे थे, वैसे ही आज वे दावा करते हैं कि वे उस उजाले की आराधना कर रहे हैं, लेकिन वे वास्तविक उजाले की बजाय किसी और उजाले की चमक में आराधना कर रहे थे। देखा, वो उजाला था। संप्रदाय और रीति रिवाज उनके अंधेपन की स्थिति में उन्हें प्रतिज्ञा किए गए वचन के सच्चे उजाले से मोड़ दिया था। वो वचन जिसे परमेश्वर ने यीशु के द्वारा प्रमाणित किया था जो संसार का उजाला है, आकर उस वचन को बिल्कुल ठीक उसके समय में से होते हुए जीवंत बनाया, बिल्कुल उन दिनों के लिए। वह 70 सप्ताह के बीच में काट दिया जाएगा। यह सही है जो उसकी भविष्यवाणी के 3.5 वर्ष है। वो मसीहा आएगा, वो राजकुमार और भविष्यवाणी करेगा और इसके 3.5 दिन होंगे। उसके बाद जीवित रहने से वो काट दिया जाएगा और प्रायश्चित बनेगा। और यह बिल्कुल सही है, उसने 3.5 वर्ष प्रचार किया और उनका, और उसी भजन संहिता में दाऊद ने कहा, मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। भजन संहिता 22 में, मेरी सारी हड्डियाँ वे मेरी ओर घूरते हैं, वे अपना सिर हिलाते हैं, वे मेरा ठड्डा करते हैं। 850 वर्ष ये होने से पहले जब दाऊद ने आत्मा में उस गीत को गाया था और इसे भविष्यवाणी माना गया था और दिया गया था, वे मंदिर में उन गीतों को गाया करते थे जब वही बलिदान क्रूस पर लटका हुआ था, उसके हाथों को छेदा गया था और उन्होंने मेरे हाथों को और मेरे पैरों को छेदा। देखा, वहाँ देखा, फिर क्यों? वे एक चमक में रह रहे थे, उन्होंने उजाले को नहीं देखा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि समझदार व्यक्ति इसे कर रहा है? इससे और ज्यादा कुछ नहीं, मैं एक समझदार व्यक्ति की कल्पना कर सकता हूँ जो उस तहखाने में भागकर जा रहा है और उसमें घुसकर और साथ ही उस दरवाजे को खींच रहा है और कहता है, मैं यह देखने से इंकार करता हूँ कि वहाँ उजाला है, यह पागलपन है। और उसकी आत्मिकता कहीं तो निकल चुकी है जब एक मनुष्य देखता है कि बाइबल ने प्रतिज्ञा की है और उसे ठीक उसके सामने होते हुए देखता है और प्रकट होते हुए देखता है और फिर भी निरंतर उन संस्था और इत्यादि में रहता है जो इसे अस्वीकार करते हैं। यह एक आत्मिक अपराध है, यह बिल्कुल सही बात है। वह अब यहाँ है, वो संसार का उजाला था और संसार जानता था, वह अपनों के लिए आया था, उसके अपनों ने उसे नहीं जाना। वो संसार में आया और संसार उसके द्वारा बनाया गया था और संसार ने उसे नहीं जाना, देखा, लेकिन जितनों ने भी उसे जाना उसने उन्हें परमेश्वर के पुत्र होने की सामर्थ्य दी, उनको जो उस पर विश्वास करते थे। याद रखें, हम बीते कल के उजाले में नहीं जी सकते। कल का उजाला जा चुका है, यह अब नहीं रहा। यह बीते कल का उजाला है, यह केवल एक यादगार है। कल के सूर्य का उजाला केवल एक यादगार है या यह इतिहास है। हम बीते कल के उजाले में नहीं जी सकते और नहीं, और वही भले ही यह वही सूरज है, लेकिन हर दिन यह अपनी शक्ति को थोड़ा और तेज लेकर आता है ताकि कटनी के लिए दाने को पकाए। देखा, आज सूरज आता है, थोड़ा और तेज होते जाता है हर एक दिन। अब ये थोड़ा और तेज होगा, और जब तक अंत में वो गेहूं जो कि वहाँ पर पड़ा हुआ है, जो आके जाकर जीवन को ले लेगा, थोड़े समय के बाद ये जीवन ऊपर आ जाएगा। फिर थोड़ा और तेज, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, वह तब कटने में होता है। आप देखें, आज भी वही सूरज चमक रहा है। जनवरी या दिसंबर में वह वहाँ पर उस बर्फ को पिघलाता है और इसे उस दाने के ऊपर पिघलाता है, उसमें पानी को लाता है। यह वही सूरज है, लेकिन यह गेहूँ जून में उसी सूरज के प्रकाश में नहीं रह सकता है। देखो, यह नहीं कर सकता। देखें, वो सूरज हर एक दिन थोड़ा और तेज होता जाता है, और सूरज के प्रकाश को लेने के लिए उस दाने को थोड़ा अधिक परिपक्व होना चाहिए। यही तो आज का तथ्य है। वो दाना जो आरंभ के पिताओं में बोया गया था, वहाँ पहले लूथर और वेस्ली और वे, यह छोटा सा था, यह पुत्र को नहीं ले सकता। पुत्र उसे मार डालता है, इसने बढ़ने से इंकार कर दिया। देखा, इसने इसे काट दिया, इसने खुद को ढंठल से लिया जैसे, और यहाँ पर आया और खुद को एक छोटी सी चीज बना लिया। यह तब एक भूसी बन जाता है और इसमें कोई जीवन नहीं होता है। उस दाने को परिपक्व और कड़ा होना चाहिए, जैसे जैसे प्रत्येक दिन सूरज तेज होता जाता है। अब आओ एक मिनट के लिए ध्यान दें, हम कलीसिया के युगों को देखेंगे। वहाँ सात कलीसिया के युग हैं, और जैसे उन कलीसियाओं युगों में हर एक देखना कि उसने उनसे कैसे बात की कि क्या करना है, कैसे वो दाना परिपक्व होना है और इस अंतिम घड़ी में यहाँ आना है। यह अंतिम घड़ी है जिसमें हम रह रहे हैं, इसलिए कलीसियाओं को ऐसा करना अवश्य है। देखो कलीसियाएं, अब देखो, लूथर ने एक दाने को बोया। अब लूथर एक दाना था और उसने इसे बोया, तो ठीक है। वैसे ही वेस्ली था, और पेंटिकॉस्टल भी वैसे ही था, वैसे ही बैप्टिस्ट थे, नाजरीन थे। लेकिन आप देखते हैं, अब लूथर वापस जाकर उस पहले संप्रदाय कैथोलिक के उजाले में नहीं जिएगा। नहीं श्रीमान, वो एक दूसरा ही उजाला था, यह परमेश्वर था जो कुछ तो पक्वता में ला रहा था। अब उसमें से थोड़ी संख्या में लोग बाहर निकले जो लूथरन की बेदारी थी, फिर साथ ही वेस्ली की बेदारी आती है, और फिर उसमें क्योंकि वे वेस्ली वापस नहीं जा सकते हैं और जो लूथरन कर रहे थे, देखा, और फिर साथ ही पेंटिकॉस्टल आते हैं, और फिर पेंटिकॉस्टल संगठित होकर और उसी काम को किया, भूसी को ले लिया। ध्यान दें, लेकिन दाना ठीक आगे बढ़ता जाता है। अब हम दूसरे युग में हैं। क्यों वे इसे ग्रहण नहीं करते, वे क्यों नहीं देखते कि दाना परिपक्व हुआ है, यहाँ इस दिन के लिए प्रतिज्ञा किया हुआ वचन है। वे इसे क्यों नहीं देखते, क्योंकि वे लूथरन की चमक में रहते हैं, वेस्ली की चमक में, बैप्टिस्ट की चमक में, पेंटिकॉस्टल की चमक में, वे किसी और उजाले की चमक में रह रहे हैं। यही कारण है कि वे संपूर्ण वचन के उजाले को नहीं ले सकते हैं जो प्रमाणित हुआ है, जैसे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, उन्हें सात मोहरे जहां वो सारा रहस्य प्रकट हुआ था, जो वापस आकर और ये बताएगा कि ये रहस्य इस तरह क्यों किए गए थे। और अब भी जब वो आता है, वे पहले से भी कहीं अधिक दूर चले गए हैं, उनके पास कोई बहाने नहीं है। परमेश्वर ने इसे आत्मा के जरिए से, प्रकाशन के जरिए से किया है, उसने इसे सिद्ध रूप से वैज्ञानिक और बाकी इत्यादि चीजों से साबित किया है कि यही सत्य है, और अभी भी वे एक पेंटिकॉस्टल की चमक में रहना चाहते हैं। मैं असेंबली हूँ, मैं वंडेस हूँ, मैं चर्च ऑफ गॉड हूँ, मैं ये हूँ। देखो, 40 वर्ष, 50 वर्ष पहले के युग के चमक में रह रहे हैं, लूथरन की चमक में, वेस्ली की चमक में रहते हैं, एक बैप्टिस्ट, एक प्रेस्बिटेरियन या कुछ नाजरीन चमक, किसी एक और कलीसिया के युग की चमक में जो निकल चुकी है और संगठित हो गई है और उसी काम को किया और उजाले को अस्वीकार किया जब वो वास्तव में चमक रहा है, और आप मृत तृष्णा में जी रहे हैं। मैं ये आदर पूर्वक कहता हूँ, देखो, लेकिन आप न ही आपको चोट पहुँचाने के लिए बल्कि आपको जगाने के लिए आप मृत तृष्णा में रह रहे हैं। क्या यदि यीशु ने कहा, क्योंकि तुम अंधे हो और तुम अंधे की अगुवाई कर रहे हो, वे नहीं कर सकते। उसने बताने की कोशिश की और इसे नहीं किया, कहा उन्हें ऐसे ही रहने दो। यदि अंधा अंधे की अगुवाई करता है तो वे सभी खड्डे में गिर जाएंगे। यही वो घड़ी है जिसके लिए मैं आया हूँ। यदि वे डगमगाते हैं तो मैं इसकी मदद नहीं कर सकता। मैंने वो सब किया है जो मैं कर सकता हूँ। मैंने बिल्कुल वैसे ही किया है। मैंने ये आपके आदेश पर किया है प्रभु, आप गवाह हैं। 1933 से लेकर वहाँ नदी पर, जब आप वहाँ पर उस उजाले को देखते हैं जो वहाँ चमका था, तो यह ठीक इसी भवन में रहा है और आपको इन सभी वर्षों में गवाही दी है। और हर एक चीज जो उसने कहा वह पूरा हुआ है और वे निरंतर होते जा रहे हैं। अंधा अंधे की अगुवाई करने दो। मैं बस उस घड़ी के लिए रुका रहूंगा। वह इन दिनों में से किसी एक दिन आ जाएगा। ध्यान दें, लूथर की एक चमक में रहना, वेस्ली की एक चमक में रहना, वहाँ पीछे उनके चमक में रहना, यही कारण है कि वे सच्चे उजाले को नहीं देख सकते हैं। यदि वे कुछ मिनट के लिए रुक जाते और बस बाइबल को उठाकर और इसे पढ़ते, वे देखेंगे कि ये उजाला इस घड़ी की प्रतिज्ञा है। अब हम इनमें से कुछ चीजों को एक मिनट में लेने जा रहे हैं। उसने मलाकी 4 के अनुसार प्रतिज्ञा की ये चीजें होंगी। उसने सारे वचनों में से होते हुए प्रतिज्ञा की ये चीजें होंगी। समझे? ध्यान दें, इसराइल भी यात्रा में हमारा नमूना है। देखो, मन्ना को खाना जो कि उनका उजाला था, जीवन था जो उन्हें शक्ति देता था, जीवन। क्या यह सही है? इसराइल बीते हुए कल के मन्ना को नहीं खा सकता था जो उनके लिए गिरा था। यह दूषित हुआ था, सड़ा हुआ था, यह उनके लिए अच्छा नहीं था। वे इसे खाने पर मर जाते थे। जो मन्ना कल उन्हें जिंदा रखता था, आज उन्हें मार देगा। बाइबल ने कहा कि इसमें कीड़े लग गए थे, दूषित हो गया था। ये दूषित है। और मन्ना, उन्हें हर दिन नया मन्ना लेना था। आमीन। और ये क्या है? वे लोग जो लूथर, वेस्ली और वे जो वहाँ पहले थे, उनके मन्ना पर जीते हैं। तुम दूषित चीजें खा रहे हो जो आत्मिक रूप से तुम्हें खत्म कर रही है। यह आपको खत्म कर रहा है। वे अपने रीति रिवाजों में मरे हुए हैं। कल का लूथर का मन्ना मेथोडिस्ट के लिए काम नहीं करेगा। मेथोडिस्ट का मन्ना पेंटिकॉस्ट के लिए काम नहीं करेगा। पेंटिकॉस्टल का मन्ना आज के लिए काम नहीं करेगा। समझे मेरा क्या मतलब है? हर दिन यह आता है, दिन प्रतिदिन ताजा। और इसी तरह से ये कलीसिया के युगों के जरिए से आता है। लूथर का मन्ना धर्मीकरण का संदेश था। वेस्ली का संदेश पवित्रीकरण का प्रकटीकरण था। पेंटिकॉस्टल दानों का लौटाया जाना था। लेकिन यह सिरे के पत्थर का परिचय कराना है। इस अंतिम दिन में दुल्हन वृक्ष, जो इस सभी के विपरीत है, और अभी भी यह परिपक्व के लिए वही उजाला है, जबकि वही सूरज आज चमक रहा है जो जुलाई की कटनी के लिए दाने को पक्वता में लाएगा। देखो मेरा क्या मतलब है? लेकिन वो आज का उजाला वहाँ पीछे जुलाई में कोई लाभ का नहीं होगा। यह तेज होता है, वो गेहूं और अधिक विकसित है। यह इसे लेने के लिए तैयार है। आमीन। निश्चय ही वो है। वे इसे अब नहीं ले सकते थे, यह तब हो सकता था। वो ऋतु उस समय सही नहीं थी, यह अभी सही है। आप परमेश्वर के स्वभाव के विरोध में नहीं जा सकते हैं। उसके पास एक नियम है और उस नियम के विपरीत होना आपके पौधे को मार देता है। आपको परमेश्वर के कहे गए नियमों के अनुसार जाना होगा और उसके नियम उसका वचन है। कोई भी नियम कहा हुआ वचन है और एक वचन एक विचार का प्रकटीकरण है। समझे? अब हम जानते हैं कि यह सच है। एक दर्शन क्या है? परमेश्वर का वचन या कुछ और, या एक पूर्व सूचक, एक घटना का पूर्व अनुमान। और एक दर्शन जो नबियों के पास था और यीशु के पास था, पौलुस के पास था और उन सभी लोगों के पास था, और इस दिन के बारे में बताया एक पूर्व अनुमान था कि क्या होगा। और यहाँ हम पूर्व अनुमान को प्रकटीकरण हुआ देखते हैं और यहाँ तक लोग इसे पहचान भी नहीं पाते हैं। समझे मेरा क्या मतलब है? अब बीते कल का मन्ना, यहाँ देखो, क्या आपने कभी ध्यान दिया? सूर्य SUN पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा कर चुका है, जैसा कि यह हर बार करता है। क्या आपने ध्यान दिया? और ध्यान दें, कलीसिया के युगों ने भी यही किया। क्या वो सूरज SUN पूर्व से निकल चुका है और रोजाना के जीवन सूर्य के साथ निकल चुका है? परमेश्वर का कहा हुआ उजाला उनके जीने के लिए है। वे सूर्य के पीछे पीछे चलते हुए आगे आए हैं। देखो ये कहाँ जा रहा था? जीवन जो अपने आप में होता है जब आप जन्म लेते हैं, एक सूर्य की तरह होते हैं। आप आगे बढ़ने लगते हैं सूर्य के ढलने की ओर, आपके जन्म से लेकर सूर्य के ढलने तक। मनुष्य ने हमेशा ही पश्चिम दिशा की ओर यात्रा की है। पूर्वी देशों में हमारे पास सबसे पुरानी जीवन संस्कृति चीन है, यरूशलम। और ध्यान दें, वह पश्चिम की ओर यात्रा करते जा रहा है जैसे यह जाता है, और यह पश्चिम की ओर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उसी प्रकार कलीसिया के युग ने परमेश्वर के SON पुत्र के द्वारा यात्रा की थी। देखो, पौलुस आरंभ की कलीसिया पूर्व में आरंभ हुई, ये वहाँ से निकल गई, उस समुद्र को पार करके जर्मनी के अंदर छलांग लगाई। यही तीन खिंचाव को बनाता है। यहाँ देखो, एशिया से वहाँ फिलिस्तीन में यह समुद्र पार जर्मनी में छलांग लगाई। वह लूथर था, और इसने इंग्लिश चैनल को पार करके लूथर से इंग्लैंड में छलांग लगाई, वेस्ली के पास, और वेस्ली से उसने संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम दिशा में छलांग लगाई। और यह, यदि आप आगे जाते हैं, तो यह फिर से पूर्व में वापस आ रहा है। यह संध्या का समय हो चुका है। देखो किस तरह कलीसिया के युग लड़े हैं लूथर, पौलुस, जो पहले पीछे आरंभ के युग में, उसके बाद आयरलैंड की ओर आगे आता है एरेनिस के लिए और इत्यादि, और वहाँ आगे फ्रांस में, वहाँ से जर्मनी के अंदर, वहाँ इंग्लैंड में, निरंतर पश्चिम की ओर बढ़ते जा रहा है। और अब हम और आगे नहीं जा सकते हैं, यह आखिरी युग है। और इस आखिरी युग के बारे में बाइबल क्या कहती है? देखो, भौगोलिक कालक्रम विज्ञान के रूप से देखें, और लगभग किसी भी तरह से आप इसे लेना चाहें, वचन के अनुसार पहले लें। वचन निश्चित रूप से पहले, ऐतिहासिक रूप से प्रमाण है, किसी भी तरह से आप इसे लेना चाहें। हम अंत में हैं, ये आखिरी कलीसिया युग है। और ध्यान दें, जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया, यह तेज और तेज होता गया, और वैसे ही वास्तविक है, कलीसिया की छोटी संख्या धर्मीकरण से बढ़ चुकी है, पवित्रीकरण, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, और अब सिरे के पत्थर के लिए आ रही है, खुद को आकार देते हुए। इसके बाद और कोई संगठन नहीं, अब और नहीं होंगे, देखो, नहीं हो सकते हैं। देखो, हम पश्चिम पर हैं, आपको केवल सभी प्रकार से दिखाने के लिए और अन्य सभी चीजों के जरिए से, और उन तीन छलांगों को देखो, तीन खिंचाव, हम आज रात उसके अंदर जाएंगे। देखो, देखो हम कैसे अंत समय पर हैं। यह सिर्फ उस SON सूरज ने SON पुत्र के जैसे यात्रा की है, SON पुत्र जैसे सूर्य, SON कलीसिया उसी स्थान पर आई है, सात कलीसिया युग और इत्यादि से जीवन संस्कृति सीधा पश्चिम की ओर चला गया है, और कलीसिया ठीक पश्चिम की ओर चली गई है। और अब यदि हम उससे कहीं आगे जाते हैं जहां हम अभी हैं, तो हम फिर से पूर्व की ओर लौटते हैं। आप पश्चिम दिशा को छोड़ देते हैं, आप फिर से सीधे वापस चीन, जापान में आ जाते हैं। 7000 मील की दूरी पर आप फिर से पूर्व की ओर वापस जाते हैं। सो पूर्व और पश्चिम मिल चुके हैं, ये ऐसा ही है, हम अंत में हैं, कुछ भी नहीं बचा है। और आज भी वही घटित हुआ है जो वहाँ पहले घटित हुआ था, वही चीज पश्चिम में मिलती है जो पूर्व में मिली थी। लोग एक दूसरे उजाले की चमक में रहते हैं, जो पूरी तरह से आगे की ओर दिखाने की कोशिश कर रहा था। उजाला आने वाला था और इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने उजाले की बजाय चमक को लिया था। ओह, और अन्य जातियों के देश में महान उजाला था, जबुलून, नेप्तलीम, गलीली में, जो अन्य जातियों का देश है। यह सातवें कलीसिया का युग है, याद रखें। और हर समय वो सूरज पूर्व में चमकना आरंभ होता है, वही सूरज जो पश्चिम में चमकता है, और वही आत्मा जो युगों से चली आ रही है, उसी तरह आज भी वही पुत्र है। केवल ये क्या है, बस जैसे ये पक्वता में आना है उस ऋतु के लिए, जो सूरज अब है, वही सूरज होगा जो इस पतझड़ में, शरद ऋतु में दाने को पकाता है। देखो, लेकिन क्या है ये सूरज के साथ साथ, और ये क्या होगा? और आज इस अंतिम युग में जो उनके पास था, उसके साथ साथ यह भी होगा। और फिर भी वे वापस वहीं रहना चाहते हैं, उस छोटे से रूप में, एक पुराने चढ़े हुए के अंदर चले जाते हैं, पुराने नाम मात्र उस तहखाने में और संस्था में चले जाते हैं, और अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, कहते हैं मैं बस इसे देखने से इंकार करता हूँ, ये सब बकवास है। और जब वही बाइबल जिसे वे विश्वास करने का दावा करते हैं, जो उसी पवित्र आत्मा के द्वारा पहचानी हुई है, अंतिम दिनों में उजाले को ला रही है, क्या आपने ध्यान दिया? और मलाकी चार में वहाँ बहुत ही नजदीक से देखें किस तरह से इसे उसने इन बातों को रखा, बालकों को पिता के विश्वास की ओर और बालकों के पिता की ओर। देखो, वही आत्मा जहाँ ये वहाँ पहले उठ खड़ा हुआ, जहाँ ये फिर से यहाँ पर उठ खड़ा होता है, वही चीज देखो, बस इसके विपरीत बिल्कुल फिर से वापस तैयार हो रहा है। कारण क्यों? पूरब और पश्चिम मिल चुके हैं बिल्कुल ठीक हमारे मुंह के सामने, और फिर भी वे इसे नहीं देखते हैं। क्यों? कोई आश्चर्य नहीं कि यीशु ने कहा बस उन्हें तब ऐसे ही रहने दो, वे अंधे हैं, अंधे की अगुवाई करते हैं, वे सभी खड्डे में गिर जाएंगे। अन्य युगों के उजियालों ने केवल इस उजियाले को प्रतिबिंबित किया। देखो सूर्य जो आज बस प्रतिबिंबित होता है, सूर्य का प्रतिबिंबित होना जो इस जुलाई या अगस्त में होगा यदि परमेश्वर, वो कटनी के लिए होगा। और वे पुत्र लूथर का, मार्टिन लूथर और वेस्ली और सेंके, पिन्नी, नॉक्स, कैल्विन, मूडी के पुत्र और वे सारे दूसरे, वे महान पुरुष जो वहाँ पहले थे उनके पास वे उजियाले थे। और बैप्टिस्ट कलिसिया के जॉन स्मिथ और एलेक्जेंडर कैम्बेल, कैम्पबेलाइट कलिसिया और वे मसीह के कहलाने वाले चेले, क्रिश्चियन चर्च और जो भी था और जो भी उनके नाम उनके पास मिले थे, ये सारे लोग जो वहाँ पहले थे उनके युग में, वे केवल यह प्रतिबिंबित कर रहे थे कि इस अंत में यहाँ क्या होगा। और फिर यहाँ वे बालक उनके बुनियाद डालने वालों के तुरंत बाद वे क्या करते हैं? वे डंठल पर बने नहीं रहे, वे इससे आगे बढ़ गए और अपने आप को एक यहाँ छोटी सी भूसी बना लिया, जो आप जीवन के वास्तविक स्त्रोत्र से दूर हो जाते हैं। आपके पास कोई जीवन नहीं है। आप उस एक चीज को भूसी से निकालकर और यहाँ इसे जमीन में गाड़ देते हैं, यह वही पड़े रहकर और सड़ जाएगा। और वैसे ही आप उन बीते हुए दिनों से सड़े हुए मन्ना को खाने की कोशिश कर रहे हैं। फसल पक चुकी है, यीशु ने एक टेबल को बिछाया है जहां परमेश्वर के संत उस दिन के समय का भोजन खाते हैं। उस सुसमाचार उजाले के द्वारा जो प्रमाणित और साबित करता है कि वो आज यहां पर है, आमीन, वे संत रोटी को खाते हैं। जरा सोचिए, बीते कल का पुराना भूसा देखिए, इसे वापस वहाँ नहीं लगाएं, यह सड़ा हुआ है, यह नहीं हो सकता, यह इसके साथ बना नहीं रह सकता, नहीं श्रीमान, यह कुछ भी अच्छा नहीं करेगा, यह नहीं बढ़ पाएगा, यह जीवन से दूर है और वचन ही जीवन है, ये सही है। भूसी गिर जाती है, छोटा पुराना छिलका गिर जाता है और इस तरह की चीजें, ये बस खुद को संस्थागत करते हैं और गिर जाते हैं, यह जीवन के साथ आगे जाने से इनकार करते हैं, लेकिन उजाला इसे प्रमाणित करता है। ओ प्रभु, जी हाँ श्रीमान, कल का, ओ प्रभु, हमें इसे कैसे देखना चाहिए? देखो, वो कल की सड़ी हुई चीजें उन्हें आज नहीं खाएं, समझे, इसमें कीड़े लग गए हैं। आप इन छोटे फुफुंदी लगे कीड़े को जानते हैं जिसे मैं यही कहकर बुलाता हूँ? मैं नहीं जानता, मैं उन जीवाणु जीवन के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मुझे पता है कि हम हमेशा उन्हें फुफुंदी लगे कीड़े कहा करते हैं। थोड़ा सड़ जाने पर यह किसी भी चीज में आ जाता है, समझे, मैं तब इसे नहीं चाहता। यदि आप इससे संतुष्ट हैं तो आगे बढ़ें, लेकिन मैं नहीं हूँ। लेकिन याद रखें, आप कहते हैं फिर बीते कल में ये अच्छा क्यों था? यदि आप केवल ये जानते कि बहुत छोटा सा छिलका जो आरंभ में गेहूं पर था, यदि वो दाने में बना रहता है तो यह दाने को और अधिक बढ़ाता है। यही वो चीज है जो गेहूं के फूल को बनाती है जो कल था। लेकिन यदि यह खुद को दाने से अलग करता है और यह परिपक्व नहीं होता है, तब यह चला जाता है, देखा। लेकिन यदि यह प्रक्रिया से होकर गुजरता है, यह जीवन की प्रक्रिया है, जैसे जैसे यह मरने लगता है तो यह बस किसी और चीज में मिश्रित होता जाता है और दाने को बनाता है। यदि ऐसा नहीं है तो यह कहाँ से आता है? आमीन, आपने इसे समझा? इंग्लैंड की रानी की तरह एक बार वो एक बड़े कागज की कंपनी पर गई और उसने कहा कि वह पेपर के कारखाने को देखना चाहेगी। इसलिए उन्होंने उसे पेपर के कारखाने को दिखाया। बहुत वर्षों इससे पहले वे इसे लुगदी और चीजों से बनाते, तो उन्होंने देखा वे इसे कागज बनाते हैं, तो वे ठीक थोड़ी देर के बाद वो एक कमरे में आती है कि यह कुछ नहीं था लेकिन गंदे पुराने कपड़ों के चिथड़े का एक ढेर था। और उसने कहा, ये कहाँ से आया, ये क्या है? ओह, उसने कहा, उस कारखाने के प्रधान ने कहा, यह वही है जिससे हम पेपर तैयार करेंगे, इन गंदे कपड़ों के चिथड़े से। उसने कहा, ये पेपर को बनाते हैं? हाँ, तो वो शायद इसे विश्वास नहीं कर सकी। सो उसके जाने के बाद उस व्यक्ति ने उन्हीं गंदे कपड़ों के चिथड़े के ढेर को लिया और उन्हें किसी एक प्रक्रिया के जरिए से जाने दिया, और आप जानते हैं, उनका एक साफ शुद्ध पेपर बनकर निकला जो एक प्रक्रिया से होकर गुजरा था और वास्तव में इसे बनाया और उसमें रानी की रूपरेखा को डाल दिया और उसे रानी के पास भेज दिया, जिसमें वह खुद को प्रतिबिंब कर रही है कि उसे गंदे कपड़ों के चिथड़े कहा जाता है। अब यही वो है कल की मरी हुई चीजें, लूथर का संदेश, वेस्ली का संदेश, पेंटिकॉस का संदेश। यदि ये केवल परमेश्वर की पवित्र आत्मा और एक वचन के प्रमाणित होने की प्रक्रिया से होकर गुजर सकता है, यह यीशु मसीह के प्रतिबिंब को सामने लाएगा। जो राजा है, आमीन। लेकिन यदि आप इसे ऐसा ही छोड़ देते हैं तो ये गंदे कपड़ों के टुकड़े हैं। देखा, इसे और किसी में ढाला जाना है। लूथर को वेस्ली में ढाला जाना है और वेस्ली को पेंटिकॉस्ट में ढाला जाना है और पेंटिकॉस्ट को मसीह में ढाला जाना है। यह एक प्रक्रिया से होकर गुजरता है। वैसे ही सुसमाचार एक प्रक्रिया से होकर गुजरा है, यह प्रक्रिया से निकल रहा है। लूथर का युग धर्मीकरण, हम ये विश्वास करते हैं। वेस्ली का पवित्रीकरण, हम ये विश्वास करते हैं। पेंटिकॉस्टल का दानों का लौटाया जाना पवित्र आत्मा के लिए, हम निश्चित रूप से यह विश्वास करते हैं। लेकिन इन सबको एक साथ ढालना, आप किसके साथ बाहर आते हैं? यीशु सही है जो कल आज और युगानुयुग एक सा है। ओह, यह यीशु के साथ बाहर आएगा। जब एक व्यक्ति ढलाई के कारखाने में एक घंटे को बनाता है तो वह घंटा एक विशेष स्वर को उसमें से निकालता है। जब वह उसके साचे को तैयार करता है और उसके लिए लोहे को ढेलता है और वह इतनी मात्रा में पीतल, इतनी मात्रा में स्टील, इतनी मात्रा में तांबा डालता है, क्यों? वह जानता है कि इसे सही स्वर देने के लिए वास्तव में इसे इतनी मात्रा में डालना है। और यही यीशु ने अपने दुल्हन के द्वारा किया है। उसे इतनी मात्रा में लूथर, इतनी मात्रा में मेथोडिस्ट, इतनी मात्रा में प्रेस्बिटेरियन, इतनी मात्रा में पेंटिकॉस्ट उसमें डालना था। लेकिन वह किस चीज के साथ बाहर आता है? उसके अपने प्रतिबिंब के साथ। यह क्या है? बिल्कुल पिरामिड के संदेश की तरह। आप देखते हैं यह ठीक ऊपर की ओर संचय होता है। यह सिरे के पत्थर के साथ कम संख्या में आता है। धरती पर यीशु मसीह की सेवकाई वैसी ही सेवकाई होना चाहिए जो उसके पास थी, या वो इसके लिए नहीं आ सकता है। बिल्कुल जैसे सिर से पैरों तक, वो सिर पैर सिर नहीं होते हैं, लेकिन सिर पैर को आज्ञा देता है या पैर को चलाता है, ये इसे बताता है कि कहाँ जाना है। आपने इसे समझा सुंदर रूप से? यही इस घड़ी का उजाला है। वेस्ली एक महान उजाला था, जैसे उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कहा, वह अपने घड़ी के लिए एक महान उजाला था। निश्चित रूप से वह था। नहीं, जी हाँ श्रीमान, स्वच्छ कपड़े के चिथड़े या बीते कल के गंदे कपड़े के चिथड़े, यदि आप इसी तरह से बने रहते हैं, यह बस हर समय गंदे कपड़ों के चिथड़े बन जाएंगे। इसने कपड़े के रूप में अपने उद्देश्य के कार्य को किया, लेकिन अब यह पेपर बन गया है। धर्मीकरण ने अपने समय के कार्य को किया। धर्मीकरण में नीचे लूथर के तहत, फिर ये वेस्ली के जरिए से इसे पवित्रीकरण बनना था। और पवित्रीकरण ने अपने समय के कार्य को किया जब तक ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं बन गया। और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा ने अपने समय के कार्य को किया जब तक पवित्र आत्मा, जो वहाँ केवल एक ही परमेश्वर है, कलीसिया के साथ मिश्रित नहीं होता है। और कलीसिया मसीह के अंदर, और ये यीशु मसीह को धरती पर प्रतिबिंब करता है जो उसने वहाँ बाइबल में प्रतिज्ञा की थी। हो सकता है इस पर विश्वास न हो, मैं आपके लिए इसे नहीं कर सकता हूँ, मैं केवल वचन के लिए जिम्मेदार हूँ। देखा, ये सही है। तो आप इसे देखते हैं, क्या आप ये देखते हैं? यदि आप देखते हैं तो यह उस मनुष्य के जैसे होगा एक समय उस दौरान जो वेल्स में गया था, वेल्स की बेदारी के समय के दौरान। पुरुषों का एक झुंड संयुक्त राज्य अमेरिका में वहाँ चला गया, जो वे वहाँ चले जाते हैं और उन्होंने कहा कि ये जानना चाहते हैं कि इस वेल्स की बेदारी को किस इमारत में रखा गया था। आप में से बहुत से लोगों को वेल्स की बेदारी याद होगी, एक महान बेदारी जो वेल्स में वेल्स के लोगों के बीच हुई थी। तो ये पुरुष, ये महान बड़े बड़े सेवक और इत्यादि, वे संयुक्त राज्य अमेरिका से चले गए। वे धर्मशास्त्र के विद्वान थे, वे वहाँ पर जाना चाहते थे और देखना चाहते थे कि उन्होंने क्या महान काम किया है, आप जानते हैं। और वे सड़क पर चलकर जा रहे थे और उन्होंने कहा, वे एक छोटे से बूढ़े पुलिस कर्मी से मिले जो कोने पर खड़ा था, वो अपने डंडे को चारों ओर घुमा रहा था, आप जानते होंगे, और सिटी से एक स्तुति के गीत को बजा रहा था इस तरह से। उन्होंने कहा, अरे वाह, वह तो सिटी से एक स्तुति के गीत को बजा रहा है, हम वहाँ जा सकते हैं और उसे देख सकते हैं, देखते हैं कि वह क्या करने जा रहा है, क्यों ना उससे एक सवाल पूछें। सो वे उसके पास गए और कहा, श्रीमान, वेल्स की बेदारी कहाँ पर है? उसने अपनी टोपी को नीचे झुकाया, उसने कहा, श्रीमानो, वेल्स की बेदारी यहाँ पर है, उसके हृदय में। ओह, ऐसा ही है, वो वेल्स की बेदारी था। ओ परमेश्वर, यदि हम केवल ये समझ सकते कि हम यीशु मसीह के प्रतिबिंब हैं, उसका वचन प्रकट बना है, आप उसके वचन का प्रतिबिंब हैं, समझे? वेल्स की बेदारी कहाँ पर रखी गई है, यह किस इमारत में है? उसने कहा, श्रीमान, यह मेरे हृदय में है, वो वेल्स की बेदारी था, ये सही है। और आज कलीसिया को यीशु मसीह कार्य में होना चाहिए धरती पर, क्योंकि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे और मेरा जीवन तुम में होगा, जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे, समझे? कलीसिया के पास यह होने के लिए उस स्थान पर भी होना है, और उसने प्रतिज्ञा की है कि वह इसे करेगा, और यह करेगा, इसे उस स्थान से आना है। तो आप देखते हैं, यही है जो बात जगह लेती है। हमें उस तरह से होना है। वो उजियाला है, वैसे ही नूहा उसके दिन में उजियाला था। वह उजियाला था, नूहा वो उजियाला था। वह किसका उजियाला था? ताकि परमेश्वर के वचन को बनाए। मैं पृथ्वी पर से मनुष्य को नष्ट कर दूंगा जिसे मैंने रचा है, एक जहाज को बना, और जो भी सारे इसमें आने की इच्छा रखते हैं बच जाएंगे। नूहा ने वहाँ जाकर कहा, एक ही रास्ता है और वो है जहाज। उन्होंने कहा, बूढ़ा पागल कट्टरपंथी, वो वचन था जो प्रकट बना था। नूहा उस घड़ी का उजियाला था, निश्चय ही था उसके दिन, उसके युग का उसने उजियाले को फैलाया। मूसा अपने समय का उजियाला था। मैं तुमसे निश्चय ही मुलाकात करूंगा, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं नीचे उतर कर आऊंगा और मैं अपने लोगों को एक मजबूत हाथों से बाहर निकालूंगा और मैं मिस्र में अपनी सामर्थ को दिखाऊंगा। और जब मूसा वहाँ ऊपर उस जलती हुई झाड़ी से वहाँ पर मिला और उसने पाया कि वो मैं हूँ उस झाड़ी में था, मूसा वहाँ नीचे गया और वह उजियाला था। आमीन। कोई आश्चर्य नहीं कि वह कुछ धूल को ले सकता है और उसे उड़ा सकता है और कह सकता है, धरती पर पिस्सू आने दो। उसके पास परमेश्वर का वचन था। क्या हुआ? धूल उड़ने लगती है और पिस्सू अस्तित्व में आने लगते हैं। हालेलुया। क्यों? वह परमेश्वर के वचन के उजियाले का एक प्रकटीकरण था। मैं मिस्र में महामारी लाऊंगा। वो एक नबी था, उसने जो कहा वो पूरा हुआ। वह उस दिन का उजियाला था, वह परमेश्वर का उजियाला था। फिर उनके पास वह सब कुछ हो सकता था जो वह होने के लिए चाहता था, और बाकी के वे सभी उन सभी याजक के पास वही था जो वे चाहते थे, लेकिन मूसा उजियाला था। क्यों? वह परमेश्वर के वचन को दिखा रहा था जो प्रकट हुआ था। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, मैं उन्हें एक मजबूत हाथ के नीचे बाहर निकालूंगा और मैं अपनी खुद की महिमा के लिए गौरव को लूंगा। यही है जो वो कर रहा था। यही कारण है कि मूसा ने साबित किया कि वह सृष्टि कर सकता है, इसलिए नहीं कि वह सृष्टि को चाहता था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे करने के लिए बताया था। और उसके साथ सभा में जाओ, कहो, कल प्रभु परमेश्वर ने मुझसे अभी बात की। एक मुट्ठी भर धूल को लेना और इसे इस तरह आकाश की ओर फेंकना और इसे कहो, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन यह वहाँ पर होगा। आमीन। ओह, मैं आशा करता हूँ कि आप सोए नहीं होंगे। ओह, प्रकटीकरण। उसने कहा, मुझे भेजा गया है। परमेश्वर ने हमारे पूर्वज से कहा, निश्चय ही वह ठीक यहाँ हमसे भेंट करेगा और हमें बाहर निकालेगा। मैं आपको साबित करने के लिए आया हूँ, वो घड़ी नजदीक है जो आपके पास है, उससे मुक्त हो जाओ, आओ चलें। जी हाँ, उनमें से कुछ ने कहा, ठीक है, मैं विश्वास करता हूँ। दातान ने कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई जल्दबाजी है, हमें इस बारे में बिल्कुल उत्साहित नहीं होना चाहिए। और चार या पांच बार ये विफल होता दिखाई दिया, लेकिन फिर भी उसी तरह से ये आगे बढ़ता रहा। उन्होंने सोचा, उन्होंने बाहर आकर और कहा, हम इस मूसा को पत्थरवा करेंगे, उसे हमसे दूर करो, हम उसे हमारे यहाँ झुंड में नहीं चाहते हैं। मूसा किसी भी तरह से बस आगे बढ़ता गया, क्योंकि वो जीवन था, वो उस घड़ी का उजाला था। उसके पास क्या था? ये क्या था? परमेश्वर मूसा के जरिए से अपने प्रतिज्ञा वचन का प्रकटीकरण कर रहा था, और मूसा उजियाला था, एलिया उजियाला था। वहाँ जाओ और उस पहाड़ी पर बैठो, मैंने तुम्हें खिलाने के लिए कौओं को आज्ञा दी है। आमीन। जी हाँ श्रीमान, वह यहोवा यह कहता वाले वचन के साथ वापस आया, यहाँ तक एक बूंद भी आकाश से नहीं गिरेगी जब तक मैं से ना बोलूं। आमीन। सूरज चमक सकता है, तुम सारे बादलों को बुला सकते हो और जो कुछ भी तुम करना चाहते हो, लेकिन एक बूंद भी आकाश से नहीं गिरेगी जब तक मैं से ना बोलूं। वह क्या था? उजियाला। हालेलुया। वह उजियाला था, वो उजियाला, वह परमेश्वर का वचन था जो प्रकट बना था। उन्होंने सोचा कि वह पागल था जो वहाँ बैठा हुआ था। उसके पास उसे खिलाने वाले द्वारपाल थे और उसने उन्हें भूख मारने के लिए छोड़ दिया। वे अपने रीति रिवाजों में जीना चाहते थे। आगे बढ़े ना ही मूसा या ना अहलिया, वो ठीक उस उजियाले में रह रहा था। वहाँ ऊपर छोटे नदी नाले के पास बैठा हुआ था और बस उसके पास एक अच्छा समय था, भोजन कर रहा था और कोई तो उसकी देखभाल करने के लिए वहाँ पर था और इत्यादि। उन्होंने सोचा वो पागल है, लेकिन वो उजियाला था। वे कहते हैं, हे, उस पवित्र शोर मचाने वाले का क्या हुआ जो यहाँ हमारे आसपास रहता था? तो आप जानते हैं क्या, कोई तो एक दिन शिकार कर रहा था और कहा, उसने देखा कि वो उसे रास्ते में वहाँ बैठा हुआ है, बहुत ऊपर उस पहाड़ पर। मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ कि बूढ़ा लकड़हारा इस समय तक लगभग सूख चुका होगा। ओह नहीं, वह उजियाला था, वह उजियाला था, वह उसके दिन में परमेश्वर का उजियाला था। यूहन्ना जब वह धरती पर आया और परमेश्वर से अपनी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए जंगल में गया, ना कि सेमिनरी, उसे मसीहा का परिचय कराना था। सो जब वो आगे आया तो यीशु ने कहा वह एक उज्जवल और चमकता हुआ उजाला था। हालेलुया, क्यों? वह प्रकट हुआ वचन था। यशाया ने ऐसे कहा, ऐसा ही है, ये सही है। वह जंगल में से निकलती हुई आवाज है, पुकारते हुए कहता है, प्रभु के लिए रास्ता तैयार करो और उसके लिए फाटक को सीधा करो, रास्ते को सीधा करो। वो एक पुकारेगा, एक की आवाज जंगल में पुकारती है, यहाँ वो आगे आया। वह क्या था? जंगल में से किसी के पुकारने की आवाज। वह क्या था? वचन का प्रकटीकरण, उजियाला, वही परमेश्वर जिसने उत्पत्ति में बोला, जिसने इसे बोला और यहाँ उजियाला आता है। जैसा कि उसने कहा सूरज के लिए उजियाला होने दो, वो सूरज अस्तित्व में आता है। उसने कहा वहाँ जंगल में पुकारने की आवाज होगी, यहाँ ये आगे आता है। यह उस घड़ी का उजियाला था। उसने यह भी कहा अंतिम दिनों में, आमीन, एक घड़ी का उजियाला है, वह बाबुल के जंगल में पुकारती है। उसमें से बाहर आओ मेरे लोगों, उससे तुम उसके पापी के भागी न बनो, उसकी अशुद्ध वस्तु को स्पर्श न करो, इससे दूर रहो, उस क्रोध से भागो जो आने पर है। यूहन्ना ने भी यही बात कही, कुल्हाड़ी पेड़ की जड़ तक रखी है। कोई भी शिक्षा नहीं हुई थी, यहाँ तक कि एक प्रचारक की तरह बात नहीं की। उसने सर्प और लाठी और पेड़ और कुल्हाड़ी और इत्यादि के बारे में बात की। जंगल में वो जिस बात का आदि था, वो उस तरह से ऊपर नहीं आया। कुछ महान बड़े बढ़िया चीजें जो आज उनके पास है, जैसे कि उन दोनों में उनके पास हुआ करती थी, वह अपनी ही बोली के साथ बाहर आया। वह खड़े होकर और नहीं कहा आहा, और उसने ये सारे अलबेलेपन की तरह प्रणाम को नहीं किया। वह ठीक जंगल से बाहर निकलता है अशिक्षित और कठोर होकर। कहा तुम यह सोचना आरंभ मत करना कि मैं इससे संबंधित हूँ और मैं उससे संबंधित हूँ। परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान को खड़ा कर सकता है। आप ऐसा न सोचे क्योंकि आप मेथोडिस्ट बैप्टिस्ट प्रेस्बिटेरियन है कि परमेश्वर पर आपकी कोई पकड़ है। परमेश्वर नाजायज लोगों को और वेश्याओं को सड़क पर से उठा सकता है, उसमें से परमेश्वर के पुत्रों को बना सकता है। कोई तो इसे सुनेगा और कोई तो इसे विश्वास करने जा रहा है। उसने कहा कुल्हाड़ी पेड़ की जड़ में रखी है और हर पेड़ जो विश्वास नहीं करता है उसे कुल्हाड़ी से काट कर नीचे गिरा दिया जाता है और आग में डाल दिया जाता है। तो यही उसका संदेश था, वो उस दिन का उजाला था। यीशु ने कहा वो एक उज्जवल और चमकता हुआ उजाला था और तुमने थोड़ी देर के लिए उसमें चलना चाहा। और यूहन्ना उस नबी ने क्या कहा, वो ठीक अभी तुम्हारे बीच खड़ा है, मैं उसके जूते के बंद को खोलने के योग्य नहीं हूँ, और जैसे ही वह दृश्य पर आता है मैं हट जाऊंगा। ओ प्रभु, क्योंकि वो उजाला था। वहाँ कोई दो या तीन उजाले नहीं है, कोई चार या पांच अलग अलग संगठन नहीं है, एक उजाला था। वहाँ मेथोडिस्ट बैप्टिस्ट लूथरन प्रेस्बिटेरियन नहीं है, मसीह उजाला है और उजाला जीवन है और प्रकट वचन घड़ी का उजाला है। उजाला होने दो और वहाँ उजाला था। जी हाँ श्रीमान, वहाँ उजाला होने दो और वहाँ उजाला है। उसने बोला वहाँ इस दिन में उजाला होगा और उजाला है, वो आ रहा है, मैं इसे विश्वास करता हूँ। इस युग के प्रतिज्ञाओं को देखो, ओ प्रभु, हर एक उजाला जो हमेशा चमका। इन कलीसिया कालों में हम देखते हैं कि कैसे यह देखने के लिए एक दयनीय दृष्टि रही है, अस्वीकार करना। प्रकाशित वाक्य 3 मैंने यहाँ लिख कर रखा है, प्रकाशित वाक्य 3, और मैं जानता हूँ कि तब मैं किस संबंध में बोल रहा था। इस घड़ी के प्रतिज्ञा की ओर देखें, हम जिसमें रह रहे हैं एक अस्वीकार किया हुआ उजाला। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसे वहाँ पहले ठुकरा दिया। क्यों? वे चमक में रह रहे थे। वे आज क्या कर रहे हैं? उसी चीज को कर रहे हैं। ठीक है, क्या आप मसीही हैं? मैं लूथरन हूँ, मैं एक बैप्टिस्ट हूँ, मैं प्रेस्बिटेरियन हूँ, ये इससे कोई भी मतलब नहीं रखता है। बस आप कह सकते हैं कि आप सुअरी सुअर थे या जो कुछ भी आप खुद को कहना चाहते हैं। देखा, इसके बारे में यही मतलब रखता है। अब ये आपका अपमान करने के लिए नहीं है, लेकिन यदि आप इसे इसके मूल सिद्धांत के भाग को ले रहे हैं तो ये सही है। मैंने एक सवाल को पूछा, एक मसीही है, यही मसीह तुम में है, और फिर यदि मसीह तुम में है तो वचन तुम में है, और फिर यदि वो वचन तुम में है, जब उजाला चमक रहा है तो आप इसे बाहर कैसे जा सकते हैं? देखो, यही वो सवाल है। अब यही जो अब उसमें है, वो उजियाला, संध्या का उजियाला चमक रहा है, दुल्हन का वृक्ष खिल रहा है। ओह, याद रखना, उन्होंने उस पुराने पेड़ को काट छाड़ दिया और जो अरबे नामक टिड्डियों ने छोड़ा, येलेक ने खा लिया, जो येलेक ने छोड़ा, हासिल ने खा लिया, जो मेथोडिस्ट ने छोड़ा, बैप्टिस्ट ने खाया, जो बैप्टिस्ट ने छोड़ा, पेंटिकॉस्टल ने खाया। उसने कहा यह वृक्ष था, जोएल ने कहा पूरा नीचे डंठल तक काट दिया गया था, लेकिन वो ये जानना चाहता था क्या यह फिर से जी उठेगा। ओह जी हाँ, उसने इस वृक्ष को संभाले रखा, उसने वृक्ष को संभाले रखा। जी हाँ श्रीमान, क्योंकि वो उसकी दुल्हन थी। और उसने कहा मैं वापस लौटाऊंगा। यहोवा यो कहता है, ये क्या है, मैं इसे आगे लाऊंगा, वो जो लूथर ने खाया और वेस्ली ने खाया और उन सबों ने, और मैं इसे वापस लौटाऊंगा, क्योंकि ये सब अभी भी पेड़ की जड़ में है, समझे, यह वहाँ उस और जमीन में पड़ा हुआ है। ठीक उसी तरह से जैसे पौधे के जीवन का सार नीचे चला गया था, जैसा कि मैंने बहन के बारे में कहा था, ये वहाँ पड़ा हुआ है। और किसी दिन परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी और वे चुने हुए लूथरन, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, जिसका किसी संगठन से कोई लेना देना नहीं था, लूथर ने कभी कुछ भी संगठित नहीं किया, मूडी ने कभी भी कुछ भी संगठित नहीं किया, ये तो वो उसके बाद एरो गैरो का झुंड है जो संगठन को किया, भूसी को ले लिया। जॉन स्मिथ ने कुछ भी संगठित नहीं किया, नहीं उनमें से कोई भी संगठित हुआ था, ये तो उस घड़ी का उजाला था। लूथर, वेस्ली या उनमें से कोई भी नहीं, ये तो उसके बाद का झुंड था जो आकर जिसने संगठन को बनाया। पवित्र आत्मा ने कभी पेंटिकॉस्ट में कुछ भी संगठित नहीं किया। पेंटिकॉस्ट एक अनुभव है, एक संप्रदाय नहीं है, इसने कभी कुछ भी संगठित नहीं किया। ओह नहीं, लेकिन जो मनुष्य पेंटिकॉस्ट होने का दावा करता है उसने इसे संगठित किया। ये वो वहाँ भूसी है जो मर रही है, बजाय इसके इसे पेपर में छापें और यीशु मसीह की पूरी छवि बनाकर सामने लाएं, नहीं, उन्होंने खुद को बाहर निकाल दिया है, इसलिए उन्हें इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस उन्हें ऐसा ही रहने दो। लेकिन हम अब देखते हैं यह उजाला, यह वृक्ष मसीही कलीसिया के द्वारा फिर से अस्वीकार किए गए हैं। क्यों? उसी कारण से जैसे उन्होंने इसे पहले किया, दूसरे दिनों की उजालों की पुरानी झूठी चमक, और वो कल आज और युगानुयुग एक सा है, इब्रानियों 13:8 यह कहता है, वो आज भी वैसा ही है जैसे वो तब था, क्योंकि वो वही करता है जो उसने किया था, वही वचन, वो मसीह। सुनना, अब मैं चाहता हूँ कि बस आप इसे अपने लिए लें और इसे व्यक्तिगत होने दें। मैं नहीं जानता मैं थोड़ा सा क्या अब उस टेप के लिए चालू करूं या बंद करूं। देखो, मैं बस इसे वैसे ही रहने दूंगा, समझे। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। देखो, इसे ध्यान दें, देखें, वो कल आज और युगानुयुग एक सा है। ध्यान दें उसके कार्य जो उसने किए, स्वयं प्रकट हुए। अब ध्यान से सुनना, जब वह यूहन्ना 14:12 में वहाँ खड़ा था, उसने कहा, जो काम मैं करता हूँ वह तुम भी करोगे, वरन इससे भी बढ़कर करोगे, क्योंकि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ। अब उसने इसे कहा, आकाश और धरती टल जाएंगे, लेकिन यह वचन कभी नहीं टलेगा। अब यदि हम युग के अंतिम छोर पर हैं, तो वे बड़े काम कहाँ करने वाले हैं? देखा, हम यहाँ पर हैं, हमारे पास नहीं। सुनना, यदि रोमन कैलेंडर सही है, तो हमारे पास 36 वर्ष बचे हैं। हर 2000 वर्ष के बाद संसार उसके अंत में पहुंचता है। पहले 2000 वर्ष जल से नष्ट हुआ, अगला 2000 वर्ष मसीह आता है। यह 1964 आ रहा है, 36 साल बचे हैं। अब मिस्र के खगोल विज्ञान के कैलेंडर का कहना है कि हम 17 वर्ष बाहर हैं, यह उससे 17 वर्ष और आगे है, जिससे हमारे पास केवल 19 वर्ष बचते हैं। यीशु ने कहा, चुने हुए के कारण बातों को घटाया जाएगा, नहीं तो कोई भी प्राणी नहीं बचेगा। हम कहाँ पर हैं? जो काम मैं करता हूँ वो तुम भी करोगे, उसी तरह के, लेकिन तुम उससे बढ़कर करोगे। अब देखो, ध्यान से सुनना, मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपके हृदय और आपके मनों को समझने के लिए खोले, ताकि आप इसे यहाँ बहुत अधिक कहे बिना समझ जाएं। ध्यान दें, उसने एक दिन कहा, आइए देखें जो कुछ उसने महान कार्य किए हैं, आओ जरा एक मिनट रुककर एक दो बातों को देखें, आइए सोचते हैं। एक समय उसने कहा, आप उन्हें कुछ खाने के लिए दो। उन्होंने कहा, हमारे पास कुछ भी नहीं है। कहा, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास लाओ जो तुम्हारे पास है। और उन्होंने कहा, हमारे पास 5 जौ की रोटियां और 2 मछलियां हैं। उसने कहा, उन्हें मेरे पास लाओ। और उसने मूल 5 जौ की रोटियां ली और रोटियों को तोड़ना आरंभ किया, और उस मूल से उसने रोटियां बनाई। उसने 5000 को खिलाया, क्या यह सही है? तब उसने कहा, और उसके पास एक मछली थी, मुझे वो एक मछली दो। ये आरंभ से ही एक मछली थी। और उसने उस मछली में से एक और मछली और एक और मछली को लिया और 5000 को खिलाया, क्या ये सही है? लेकिन अंतिम दिनों में उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने केवल बोला और कहा, कहो तो ये वहाँ पर होगा, और वहाँ यह था। वहाँ पहले कोई चीज नहीं थी, उसके पास कोई गिलहरी नहीं थी, वहाँ कोई भी नहीं था। उसने इतना ही कहा, वहाँ होने दो, और वहाँ पर था, समझे। ओह, उसका वचन अचूक है और इसे पूरा होना है। मैं आपको ऐसी बातें बता सकता था जो आपको हिला देगी, समझे। यह वहाँ पर है, जब वो कहता है यह वहाँ पर है, उसे इसे कहने दो, देखिए बिल्कुल वैसे ही वहाँ पर होंगी। देखो पूरब पश्चिम यहाँ वापस आए हैं और पूरब से मिले हैं। ये मूसा था, यहाँ तक कि उसने रेत को उठाया और कहा वहाँ पिस्सू होने दो और इसी तरह से इत्यादि धरती पर पिस्सू थे। लेकिन इस अंतिम दिन में वह कुछ भी नहीं लेता है, देखो केवल शब्द को बोलता है। ऐसा होने दो और ये होता है, जो कहा गया है यह उसी तरह से होगा। मैं आज रात उन्हें कुछ बातों की गवाही देना चाहता हूँ। देखें, देखो जो घटित हुआ है कि आप देख सकते हैं कि वो अब भी परमेश्वर है, उसके वचन कभी नहीं। ये काम जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे, वरन इससे भी बड़े काम तुम करोगे। मैंने मछली को बनाने के लिए एक मछली को लिया, तुम्हारे पास एक मछली होने के लिए एक भी मछली नहीं है, समझे। वह अभी भी परमेश्वर है, अभी भी वही पुत्र है, परमेश्वर का वही पुत्र जिसने एक मछली से मछली को बनाया, ये आज भी वही परमेश्वर का पुत्र है। ये काम जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे, वरन इससे बड़े काम तुम करोगे, ये और भी बढ़ेगा, इससे भी बढ़कर तुम करोगे। और लोग इसे देखने से इनकार करते हैं। बढ़कर काम, एक झूठा उजाला। आप जानते हैं, मैं बस कुछ तो सोच रहा था, मैं इंग्लैंड के बारे में बहुत कुछ बता रहा था, लेकिन मैं एक झूठे उजाले के बारे में सोच रहा था। यहाँ ज्यादा समय नहीं हुआ, आप सभी को वो सबसे बड़ी डकैती याद होगी जो कि इंग्लैंड में कभी हुई थी। इसे किया गया था, ये $70 लाख की लूटपाट हुई थी। मैं नहीं सोचता कि इसके तुलना करने के लिए संसार में कभी कोई भी डकैती हुई है। एक बड़ी लूटपाट हाल ही में हुई, $70 लाख। यहाँ तक कि स्कॉटलैंड यार्ड को ये समझ में नहीं आ रहा है। आप जानते हैं कि उन्होंने इसे कैसे किया, एक झूठे उजाले से। उन्होंने रेल मार्ग पर एक उजाले को डाला चेतावनी के लिए, इतना तक उस लाल बत्ती को नीचे कर दिया और उन्हें रोक दिया, और वहाँ डकैती की घटना हुई बिल्कुल उसी स्थान पर। एक झूठे उजाले ने सबसे बड़ी डकैती को अंजाम दिया जिसे राष्ट्रों ने अब तक जाना है। इसने राष्ट्र को लूटा, सबसे बड़ी लूटपाट, सबसे बड़ी डकैती यह एक झूठे उजाले के द्वारा की गई थी। और परमेश्वर के कलीसिया की सबसे बड़ी डकैती जो कभी हुई थी, जो झूठे उजाले एक चमक उनके संप्रदाय हैं, इसने उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ से लूट लिया। इसने कलीसिया से इसे ले लिया, उसी जीवन रेखा से। इसने उन्हें वचन से लूट लिया, जब उन्होंने वचन के बजाय एक संस्था को स्वीकार कर लिया। इसने उन्हें लूट लिया, ओह वे वचन के होने का दावा करते हैं। वचन उस युग के लिए अपने आप में जीता है, वह खुद को परिचित कराता है। वे भी उनके पास वचन होने का दावा करते थे पहले वहाँ यीशु के दिनों में, लेकिन इसने कहा उन्होंने एक बड़े उजाले को देखा और उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने इसे देखा लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया। ओह झूठा उजाला, हाँ यह कलीसिया की अब तक की सबसे बड़ी कीमत की डकैती है। भाइयों, ठंडे संप्रदाय के पद एक प्रमाणित वचन को, एक दाने को नहीं पकाते हैं। बाइबल ने कहा, यीशु ने कहा, परमेश्वर का वचन एक बीज है जिसे बोने वाला बोता है, देखा। और ठंडी संस्था उस वचन को नहीं पकाती है, नहीं नहीं, ठंडे बर्फीले तूफानों के दिन गेहूं को नहीं पकाते हैं, सच में नहीं। यह तो सूर्य के उजाले की गर्मी को लेता है, क्योंकि ये परमेश्वर का कहा हुआ वचन होता है ताकि इसके साथ ऐसा करे। और आज यह वचन को लेगा जो परमेश्वर का कहा हुआ है, ताकि परमेश्वर के संतों को दिखाए कि यीशु मसीह जीवित है, बिल्कुल जैसा वो कल था वैसा ही आज है। संस्था और संप्रदाय इसे कभी नहीं करेंगे, वे ठंडे और बेरुखे होते हैं, और दाना ठीक जमीन में सड़ जाएगा, वे इसके नीचे से ऊपर नहीं आ सकते हैं। आज यही कारण है, आज हमारे पास वही है जो हम करते हैं, जैसे हमारे बहुमूल्य भाई बिली ग्राम, महान बेदारी को करने वाला। मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर उस मनुष्य का उपयोग कर रहा है, लेकिन देखो वो क्या करता है, उसमें से बैप्टिस्ट और प्रेस्बिटेरियन को वो बाहर निकालता है। आप क्या करते हैं, कलीसिया से जुड़ने वालों का एक झुंड मिलता है। देखो कि जहाँ दक्षिणी बैप्टिस्ट को वहाँ पर ताज पहनाया जा रहा है, क्योंकि उनके पास सबसे अधिक संप्रदाय थे, या उनके संप्रदाय किसी भी दूसरे प्रोटेस्टेंट से अधिक बढ़ गए हैं। कैथोलिक ने उन सभी को ले लिया है, लगभग पिछले वर्ष की बात है। क्या आप इसे अखबार में देखते हैं? इसने निश्चय ही किया है, चिंता मत करो, वह उन सभी को ले लेगा, क्योंकि ये बैप्टिस्ट और सभी को ठीक एक साथ ले लेता है, और वे सभी एक हैं और इसे नहीं जानते। कलीसिया की परिषद, कलीसियाओं की परिषद उन सभी को बस उसी चीज में डालती है, संप्रदाय डालती है। क्यों, आप क्यों यहाँ पर या वहाँ पर बने रहना चाहोगे? जब तक आप इसे अस्वीकार कर रहे होते हैं, तब इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या आप उसी संप्रदाय के नाम पत्र का उपयोग नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप उसी स्थान पर हो, पहला पशु और दूसरा एक वो छाप, सो आप वहीं पर हैं, इसलिए बस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वो है जहां वो रहा है, उसने अपनी स्वीकृति की मोहर को पूरा कर दिया, और यहां आप इसे ले लेते हैं। और वहाँ पर उस सब का नेतृत्व किया सीधे व्हाइट हाउस की ओर और वाशिंगटन डीसी और कलीसिया की परिषद की ओर, और वहाँ आप जाते हैं। पादरीगण उन्हें ठीक पीछे लेकर गए, ठीक उसी तरह जैसे बाइबल ने कहा था कि वे करेंगे। मैं सोच रहा था घड़ी बहुत तेजी से नहीं चल रही है, अब जरा सोचे कि अब हम कहाँ पर हैं। उस दिन के लिए प्रतिज्ञाओं को देखो, फिर से ठुकरा दिया। इस अंतिम दिन में कलीसिया ने किस तरह किया है, संप्रदाय की चमक, झूठी चमक में रहना, यही कारण है कि यह नहीं पकता है। यही कारण है कि यह वचन, आप अद्भुत कार्यों को नहीं देखते हैं। ज्यादा समय नहीं हुआ, एक याजक ने मेरा साक्षात्कार इंटरव्यू लिया और उसने कहा, श्रीमान ब्रैनम, उसने कहा, आप कैसे बपतिस्मा करते हैं, जो किसी एक लड़की के लिए पूछा था। और वो लड़की इस कलीसिया से बाहर निकलकर और वो पीछे हट गई थी, और उसने एक कैथोलिक लड़के से विवाह किया, और वो लड़का कैथोलिक कलीसिया में जाता था और वह उसे कलीसिया में ले जाने वाला था। मैंने कहा, मैंने उसे मसीह बपतिस्मा में बपतिस्मा दिया है। उसने कहा, बिशप जानना चाहता है। मैंने कहा, अच्छी बात है, ये ऐसा है। कहा, क्या आप इसके लिए शपथ देते हैं? मैंने कहा, मैं कोई शपथ नहीं खाता। और उसने कहा, हाँ। कहा, यदि वह इसके लिए मेरा वचन नहीं ले सकता, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं शपथ नहीं खाता। बाइबल ने कहा, स्वर्ग की शपथ मत खाना, यह परमेश्वर का सिंहासन है, पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। आपकी हाँ हाँ होने दो और ना की ना होने दो। मैंने कहा, उसे इसके लिए मेरे शब्द को लेना होगा। कहा, तो ठीक है, आपने कहा मसीह बपतिस्मा, आपका डुबाने से क्या मतलब होता है? मैंने कहा, यही एकमात्र तरीका है जो मसीह बपतिस्मा दिया जाता है। मैंने कहा, मैंने उसे ओहियो नदी में बपतिस्मा दिया, उसे पानी के अंदर लिया यीशु मसीह के नाम में और उसे ऊपर लाया। मैंने उसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया, जो एकमात्र वही मसीही बपतिस्मा है। कहा, हाँ श्रीमान। उसने इसे नीचे रखा और उसने कहा, अनोखा है। कहा, आप जानते हैं कैथोलिक कलीसिया हमेशा ही उस तरह से बपतिस्मा लेते हैं। मैंने कहा, कब? और उसने कहा, वो आगे बोलता गया और थोड़ी देर के लिए चर्चा चली और उसने कहा, ठीक है, हम मूल कैथोलिक हैं, यह जानते हुए कि वहाँ किताबें रखी हैं, आप जानते हैं, और इस पर इतिहास है। मैंने कहा, यह सच है, लेकिन मैंने कहा, आप आज इसे क्यों नहीं करते? उसने कहा, हमारे पास पापों को क्षमा करने की सामर्थ है। कहा, यीशु उसने अपने चेलों को यह नहीं बताया कि जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं? मैंने कहा, जी हाँ श्रीमान। उसने कहा, तो क्या यह कलीसिया को अधिकार नहीं देता है? पतरस कलीसिया का प्रमुख था। मैंने कहा, यदि कलीसिया पापों को क्षमा करेगा जिस तरह से पतरस ने किया। मैंने कहा, अब जब वे पूछते हैं हम बचने के लिए क्या करें, उसने कहा, तुम में से हर एक पश्चाताप करो और अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। मैंने कहा, आप ऐसा करो और मैं आपके साथ जाऊंगा। ओह, उसने कहा, आप एक बाइबल के समर्थन में बोलने की कोशिश कर रहे हो। मैंने कहा, यही तो वचन है। उसने कहा, परमेश्वर उसकी कलीसिया में है। मैंने कहा, परमेश्वर उसके वचन में है। हर एक व्यक्ति दूसरे मनुष्य का वचन झूठा उसका सच्चा है, समझे? इसलिए कोई और तरीके से वो इसे नहीं देख सकता है, लेकिन वहाँ वे सीधे अंधकार में चलते जाते हैं और प्रोटेस्टेंट हजारों की संख्या में इसमें गिरते जा रहे हैं। यहाँ है वे ठीक अपने संस्था और चीजों को अपनाने से सीधे इसके अंदर चलते जा रहे हैं। वचन ठीक बाहर आ रहा है, इसे साबित करते हुए यीशु मसीह स्वयं को प्रकट करते हुए कहा, कल आज और युगानुयुग एक सा है। उस संस्था की चमक में वे सीधे सीधे तरीके से अंधकार के अंदर चले जाते हैं, बिल्कुल जैसा उन्होंने नूह के समय में किया, जैसे उन्होंने हर समय किया था, वे आज भी वैसा ही करते हैं, सीधे अंधकार में। क्यों? वे उजाले को अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि संस्था ने उन्हें अंधा कर दिया है। ओह, क्या ही अब हम एक अंधकार की घड़ी में हैं। जी हाँ, वे मसीह के सत्य अनंत उजाले को अस्वीकार करते हैं, और यही है जो इसे करता है। ठंडे संप्रदाय कभी भी परमेश्वर के वचन में जीवन नहीं ला सकते, क्योंकि ये उनके संप्रदाय में जीवन को लाता है। हमारे पास ठीक अभी और अधिक आत्म घोषित मसीह हो गए हैं। यहाँ देखो, यदि मसीही, मैंने इस याजक से पूछा, यदि मैं आपके साथ जाऊँगा, जो कैथोलिक कलीसिया आरम्भ में पेंटिकॉस्ट पर थी, न ही निसिया रोम में। कलीसिया रोम में कभी आरंभ नहीं हुई, यह पेंटिकॉस्ट में आरंभ होती है। देखा, यरूशलेम में वो स्थान है जहाँ कलीसिया आरंभ होती है। लेकिन मैंने कहा, यहाँ मैं मानूंगा कि ये लोग, वे गुलाम और इत्यादि, उनके पास पवित्र आत्मा था, उनके स्वामियों ने उनकी सामर्थ्य और चीजों को देखा, वे जो कर रहे थे, मुर्दों को जिलाना, अन्य भाषा में बोलना, शैतानों को निकालना, होने वाली चीजों को पहले से बताना, और उनके बीच में नबी थे और इत्यादि, अपने चारों ओर भेड़ की खाल ओढ़े हुए बाहर आते, नैसर्गिक चीजें खाते, उस निसिया परिषद के लिए आते हैं और इत्यादि, और किस तरह से वो महान लोग थे और वे वहाँ से बाहर आते हैं और वहाँ उस निसिया परिषद के लिए आते हैं, उस वचन के लिए खड़े होते हैं। लेकिन उन लहूलुहान 15 दिनों में उन्होंने पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को एक संस्था की नहीं स्वीकार किया, बजाय बाइबल के सिद्धांत के जो यीशु मसीह के नाम में है। इसके माध्यम से सारे प्रोटेस्टेंट कलीसिया आते हैं जो ठीक इसमें जन्म लेते हैं, वही चीज, वे सारी अन्य चीजें, पवित्र आत्मा की झूठी अवधारणा उन्होंने लिया, प्रभु भोज को लेते हैं, दाखरस को पीते हैं, वह वो पवित्र भोज है जिसका अर्थ है पवित्र आत्मा, याजक आपको इसे देता है। अब बाइबल ऐसा नहीं कहता जब पेंटिकॉस्ट का दिन पूरी तरह से आया या सड़क पर एक याजक आया, उसका कॉलर ऊपर की ओर मुड़ा हुआ था, कहा अपनी जुबान बाहर निकाल कर चाटो और पवित्र भोज को ले लो। नहीं, इसने ऐसा नहीं कहा तुम सब लोग यहाँ चलकर आओ और मेरी और संगति का दायां हाथ बढ़ाओ, तुम जो बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट और बैप्टिस्ट हो मैं तुम्हारा नाम डालूंगा, कहीं से भी एक पत्र को लेकर आओ। उसने कहा वे सभी एक ही स्थान पर थे, एक चित थे और अचानक ही आकाश से एक तेज हवा के जैसे सनसनाहट की सी आवाज आई और इसने उस सारे कमरे को भर दिया जहाँ वे बैठे हुए थे। वे सारे पवित्र आत्मा से भर गए थे और अन्य भाषा के साथ बोलना आरंभ किया क्योंकि आत्मा ने उन्हें उच्चारण दिया, और वहाँ वे रास्तों पर निकल गए पिए हुए लोगों के जैसे लड़खड़ाते हुए, मरियम और बाकी सभी लोग पवित्र आत्मा के प्रभाव के नीचे। क्यों? लोगों ने कहा, वे उन पर हंसे और कहा ये लोग नई दाख मधु से भरे हुए हैं, वे क्या थे, एक संस्था के द्वारा अंधे। वह छोटा सा दो दरचार प्रचारक वहाँ खड़ा हुआ जिसका नाम पतरस था और उसने कहा तुम यहूदिया के लोग और तुम उस स्थान पर रहते हो, तुम यरूशलेम के लोग जो यहूदिया के रहने वाले हो, यह बात तुम्हें ज्ञात हो जाए और मेरे शब्दों को सुन लेना, ये पिए हुए नहीं है लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि वचन ने जो होने के लिए बताया है। यह वो उजियाला है, यह प्रकट हुआ वचन है, आमीन। आज भी ऐसा ही होता है और वैसा ही करते हैं जैसा उन्होंने तब किया था, वहाँ से चले जाते हैं और सिर को हिलाते हैं, कहा उन्हें ऐसा ही रहने दो, अंधा अंधे की अगुवाई करता है, वे सभी खड्डे में गिरेंगे। ओह, यह मसीह अनंत जीवन को लेता है ताकि जीवन के वचन को लाए, प्रमाणित करने के लिए देहधारी हुआ। ओह मेरे परमेश्वर, वचन को लेता है, पवित्र आत्मा को लेता है ताकि परमेश्वर के वचन को कार्य में लाए। जब यीशु ने कहा तुम सारे संसार में जाकर और हरेक सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करो, अब देखिए मरकुस 16 उसकी अंतिम आज्ञा, सारे संसार में, ये अभी तक वहाँ कभी पहुँचा नहीं है। देखे, सारे संसार और हरेक सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करो, वो जो विश्वास करता है सारे संसार में, वो जो बपतिस्मा ले वो बच जाएगा, जो विश्वास नहीं करता वो दोषी होगा, और ये चिन्ह उनके पीछे जाएंगे जो विश्वास करता है। वे प्रचारक के साथ हाथ मिलाएंगे? नहीं। वे कलीसिया के अच्छे सदस्य होंगे? नहीं। मेरे नाम में वे शैतानों को निकालेंगे, वे नई नई भाषा के साथ बोलेंगे, वे सांपों को उठा लेंगे या वे घातक चीजें भी पी जाएं, इससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। यदि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वे चंगे हो जाएंगे। ओह प्रभु, कितनी दूर, हर एक सृष्टि में, कितना, सारे संसार में, जब तक वह फिर से नहीं आता। ये चिन्ह, वो जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा, यहाँ तक इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ। ओह, हम भला इससे दूर कैसे जा सकते हैं, जितना मैं कह सकता हूँ ये उससे कहीं अधिक है। जितना वे थे हम अब उससे ज्यादा अंधकार में हैं। अब बस मेरे पास कुछ और यहाँ वचन है तो मैं अंत में लेना चाहता हूँ जितना जल्दी हो। जितना वे थे हम उससे ज्यादा अंधकार में हैं। मैं जानता हूँ कि मैंने आपको यहाँ रोके रखा है लगभग 1.5 घंटे से, लेकिन देखिए ये टेप वहाँ चल रहा है, देखा, समझे, वे हमसे कहीं अधिक अंधकार में हैं। मैंने इस कथन को किया क्यों? कलीसिया इस चमक में इतने भरमाए जा रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है कि ये सच्चाई है। अब क्या यीशु ने नहीं कहा, आइए मत्ती 24 को देखें। देखो मत्ती 24, यीशु ने कहा कि अंतिम दिनों में दो आत्माएं इतनी नजदीक होगी, इतना तक कि ये संभव हो सके तो चुने गए मनुष्य को भरमा देंगी। वहाँ वो चुना हुआ झुंड होगा जो कलीसिया बनाने के लिए अंतिम दिनों में बाहर आएगा, और ये संगठन जिसे वे उनका सत्य कहकर बुलाते हैं, वे इतने नजदीक होंगे जैसे वे वास्तविक चीज हो कि यह हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दें, यहाँ तक कि पेंटिकॉस्टल्स। अब आप जानते हैं कि आप पेंटिकॉस्टल को लेकर और उसे कुछ मेथोडिस्ट या बैप्टिस्ट के सिद्धांत के साथ नहीं भरमाएंगे, आप उसे बताने नहीं जा रहे हैं, वो बेहतर जानते हैं। आप या तो किसी बैप्टिस्ट को लूथर सिद्धांत के साथ नहीं भरमाएंगे, समझे, और न ही आप इस संदेश को, अब इस वचन में भरमाने वाले संदेश को लेंगे पेंटिकॉस्टल सिद्धांत के द्वारा, एक झूठे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को, और इस तरह की सारी बातों को, और वापस उन संस्था में जाएं जो आपके उस संगठन में स्थापित करके रखा है? वास्तव में नहीं, आप उन्हें कभी नहीं भरमा सकते, क्योंकि चुने हुए भरमाए नहीं जाएंगे। ये क्या है? ये क्या है भरमाया जाना? ये चमक वे क्या कर रहे हैं? वे कलीसिया को परिषद के द्वारा वध करने के लिए नेतृत्व कर रहे हैं उनके चमक के द्वारा। यह अंतिम वध होगा जब वो और रोम एक साथ जुड़ जाते हैं, जब ये पशु की उस छाप को तैयार करते हैं, तो वही वध अंतिम वध होता है। और ये चमक जो अब आपके पास है, देखो यह क्या कर रही है, लोगों को नेतृत्व कर रही है। यह एक बकरी है, एक बकरी हमेशा भेड़ को वध की ओर नेतृत्व करती है। आपने ये वध करने के बाड़े में देखा होगा, वह बकरी वहीं पर भागेगी और भेड़ों का नेतृत्व करेगी, फिर वह खुद बाहर कूद जाएगी और भेड़ों को अंदर कर देगी। यही है जो वो करती है, वो हमेशा ही ऐसा करती है। यह बकरियां थी जो यीशु उस मेमने को वध करने के लिए ले गई, वो रोमन बकरियां। ये सही है, ये आज के संप्रदाय के बकरे हैं जो निर्दोष भेड़ों को वध करने के लिए नेतृत्व करते हैं, अपने आप को वहाँ उनके नाम को उन पुस्तकों में डालते हैं और वे समाप्त हो जाते हैं। यह पशु की शाप है, प्रभु के नाम में मैं बोलता हूँ, लंबे समय तक इसे संगठित किया। यही सच है, यह बिल्कुल ऐसा ही है। पशु क्या है? पशु क्या है? यह रोमन पदक्रम है, वो पहला संगठन। इसकी छाप क्या है? वही बात, ठीक वैसी ही, बिल्कुल वैसी ही बात जैसे ये थी, वध चमक की ओर। लेकिन वर्तमान अंधकार के सामने हमने अभी भी परमेश्वर के उजाले को उसमें से चमकते हुए देखा है। उसके लिए हम कितने धन्यवादित होना है। ध्यान से सुनना, हमने उजाले को देखा है, उसका वचन जो उसने इस दिन के लिए प्रतिज्ञा की थी साबित और प्रमाणित हुआ है। यही सच्चाई है, इस घड़ी का उजाला है। ओ प्रभु, मैं खुश हूँ, कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी नहीं। यहाँ ज्यादा समय नहीं हुआ, एक सेवक ये कह रहा था कि वो वहाँ फ्लोरिडा में था और उसके पास उसकी एक कार थी। मैं सोचता हूँ कि यह एक शेवरलेट कंपनी की कार थी और वो चीज उसके बस के बाहर थी। वह इसे ठीक नहीं कर सका और वो गैरेज में चला गया और एक छोटा सा मैकेनिक उसके नीचे जाता और उसके ऊपर जाता और यहाँ वहाँ हल्के से मारता। वो इसे ठीक नहीं कर सका और वह इसे कोशिश करता और ये काम नहीं करता और वह कुछ और करने की कोशिश करता, ये काम नहीं करता। उसने एक जनरेटर पर रखा, इस पर रखा, एक प्लग में डाला, जोड़ में डाला, उस चीज को चालू नहीं कर सका। वह बस इसे चालू नहीं कर सका। अंत में एक अच्छे कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति ने कदम रखा। उसने कहा, क्या मैं आपको कुछ राय दे सकता हूँ? छोटे मैकेनिक के पास कहने के लिए इतनी समझ थी, जी हाँ श्रीमान। उसने कहा, आप इसे लें और जोड़े इसे और उसे, और उसने कहा, एक बार इसे एक साथ रखें और इसे कोशिश करें। और उसने इस जोड़ को उसके साथ लिया और इसे एक साथ रखा और वहाँ वो चालू हो गई। छोटा मैकेनिक घूमा और कहा, कहिए आप कौन हैं? वो इंजीनियर था, जनरल मोटर्स का मुख्य इंजीनियर था। उसने उस चीज को बनाया था, उसी ने ही इसकी रूपरेखा तैयार की थी। और आज जब हम मेथोडिस्ट बैप्टिस्ट प्रेस्बिटेरियन के बारे में बात कर रहे हैं, मुख्य मैकेनिक यहाँ पर है। उसके वचन को रूपरेखा देने वाला वो मनुष्य जिसने आकाश और धरती को बनाया और उसके कलीसिया को रूपरेखा दी, क्या वो इस बारे में अधिक जानकारी नहीं रखता है? रैप्चर के लिए किस चीज को लेना है, या क्या मेथोडिस्ट या बैप्टिस्ट कलीसिया को इस बारे में अधिक जानकारी है कि वह किस चीज को लेना है? वह रूपरेखा देने वाला है, वह जानता है कि किस चीज को लेना है। वो उसके पुनरुत्थान की सामर्थ में पूरी तरह से तैयार है। हालेलुया, वह आज हमारे बीच चल फिर रहा है पुनरुत्थान की सामर्थ में। वो जानता है कि कलीसिया को रैप्चर के क्रम में रखने के लिए किस चीज को लेना है। इसकी रूपरेखा उसी ने की है और यह बाइबल में के उन भागों को एक साथ रखता है। आमीन। बस इसके जरिए से करंट को बहने दे, अब उसे कार्य करते देखें। आज के उसके प्रतिज्ञा वचन में विश्वास करें, इसे आपके जरिए से बहने दें। आप देखेंगे यह किस तरह से कार्य करता है। क्यों? उसने उस चीज की रूपरेखा की, उसने वचन के द्वारा उसके कलीसिया को रूपरेखा दी। यही है जो वो एक साथ रखता है, न ही मेथोडिस्ट या बैप्टिस्ट या प्रेस्बिटेरियन या पेंटिकॉस्टल संगठन के द्वारा, लेकिन उसके वचन के द्वारा। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। जी हाँ श्रीमान, उस चमक से बाहर निकलो, उस अंधकार के बीच में से। यह अंधेरे का समय जिसमें हम अभी रह रहे हैं, अभी लगभग 5 मिनट और बचे हैं। अंधेरे के बीच में छोटी दुल्हन को बाहर लाने वाला कौन है, इसके बारे में कौन जानता है? वो मुख्य रूपरेखा देने वाला। ओह जी हाँ, हम सारी चमक की उलझन से हैं। यहाँ मेथोडिस्ट एक तरह से चमकता है, बैप्टिस्ट दूसरे तरह से, और प्रेस्बिटेरियन दूसरे तरह से, और पेंटिकॉस्टल एक दूसरे तरह से। चारों ओर यह सारी चमक है। वे दौड़ कर जाते हैं, अपना नाम यहाँ डालते हैं, यहाँ इस चमक में, वहाँ कुछ तो पता लगाने के लिए आते हैं, और यहाँ पर आते हैं, और वहाँ कुछ तो यहाँ पर आते। जैसा कि मैंने उस याजक से कहा, यदि आप सभी मूल कलीसिया हैं और आप उन मूल मनुष्यों की शिक्षा के पीछे चले गए जो एक साथ निसिया में स्थापित हुई थी, तो ऐसा क्यों है कि आपके पास वो सामर्थ नहीं है जो आरंभ में पहले उन्हें मिली थी? देखा, आप उन कामों को क्यों नहीं करते जो उन्होंने किए, जिसे यीशु ने कहा ओह, हम अब ज्यादा लोग हैं, हम एक अलग युग में रहते हैं। मैंने कहा, लेकिन वचन तो नहीं बदलता है। यीशु ने कहा, ये चिन्ह सभी युग के लोगों के पीछे जाएंगे। आकाश और धरती टल जाएंगे, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। ऐसा ही है। उसने कहा, अच्छा, तुम एक बाइबल के बारे में बात कर रहे हो। मैंने कहा, हाँ, वचन जो मसीह है, ये सही है। और सो वहाँ आप हैं। देखा, और इस चमक में मेथोडिस्ट उनका दिखा रहे हैं, बैप्टिस्ट उनका दिखा रहे हैं, प्रेस्बिटेरियन उनका। हर समय हर एक जन बढ़कर बड़ा होता और बड़ा होता जा रहा है। बेचारी छोटी दुल्हन, वो कहाँ पर है? वह थोड़ी देर के लिए या पेंटिकॉस्टल वनेस जाती है, वो अपने नाम को वहाँ पर डालती है और कहती है, अच्छा, देखने के लिए आती है, देखती है कि वे क्या करते हैं। वे यहाँ पर आते हैं और तुम्हें हमसे जुड़ना होगा। यदि तुम हमारे कलीसिया में नहीं जुड़ते हो, तो तुम दुल्हन में भी नहीं हो, तुम यहाँ तक कुछ भी नहीं हो। वहाँ पर उन असेंबलीज के पास जाती है और देखती है कि उनके पास क्या है। आप फिर से वहीं पर हैं। वह बैप्टिस्ट के पास जाती है देखने के लिए उनके पास क्या है। प्रेस्बिटेरियन को बेचारी छोटी चीज के लिए क्या होने वाला है, समझे? लेकिन वो आगे आ रही है, तुम चिंता मत करना, वो वहाँ पर होगी। एक व्यक्ति कह रहा था, यहाँ कुछ वर्ष पहले वो वहाँ न्यू मेक्सिको में था, मैंने कार्लसबेट कैवर्नस के नजदीक एक सभा की थी, आपने वहाँ के बारे में सुना होगा, वो बड़ा, और उन्होंने एक व्यक्ति और उसकी पत्नी को लिया और बच्चों के एक झुंड को। वे इस लिफ्ट पर चले गए, बहुत नीचे खड्डे के तह तक चले गए, और जब वे वहाँ उतरे तो उन्होंने सारी बत्तियाँ बंद कर दी, और जब उन्होंने सारी बत्तियाँ बंद कर दी तो वहाँ मध्य रात्रि का अंधकार था। वे ऐसा करने के लिए वे साथी मेरे साथ यहाँ इन बगीचों में थे, और एक समय वहाँ कोलोराडो में पत्नी और मैं पहले वहाँ थे, और उन्होंने बत्तियों को बंद कर दिया। ओह, आप इस तरह से अपना हाथ रखते हैं, आप कुछ भी नहीं देख सकते। और वहाँ पर एक छोटी लड़की खड़ी थी और वो चिल्लाने लगी, ओह, चिल्ला रही थी, वो बहुत से डर गई थी। ये बहुत ही अंधकार था, बेचारी छोटी सी लड़की हर जगह पकड़ रही थी और अपने पापा मामा के लिए हर जगह चीखने और चिल्लाने की कोशिश कर रही थी। वो बस खड़ी नहीं हो पाई, ये बहुत ही अंधकार था, उसने ऐसा अंधकार कभी नहीं देखा था। और ऐसा ही अब लगभग इसी तरह से है, ये सही है, ये इतना अंधेरा है कि आप नहीं जानते कि कहाँ जाना है। आप मेथोडिस्ट के पास जाते हैं, बैप्टिस्ट के पास जाते हैं, प्रेस्बिटेरियन के पास जाते हैं, ये सब एक ही बात है। देखो, उस पुराने मरे हुए सड़े हुए मन्ना को खाते हैं, इसमें फफूंदी लगे कीड़े हैं। देखो, वही चीज, कोई संस्था, आओ और इसमें शामिल हो जाओ, और कुछ और ऐसा ही, पुरानी संस्था और इत्यादि। आप इसमें मसीह को नहीं देखते हैं। देखा, ओह, आप खुद की धार्मिकता वाले लोग को देखते हैं, मैं ऐसा कहूँगा। अब बहुत से वहाँ उन संप्रदाय में अच्छे लोग हैं, मैं उस सिद्धांत को कह रहा हूँ, वहाँ के लोगों को नहीं। लेकिन आप देखें कि यही है वे जो खा रहे हैं, उन्हें इसके बारे में बताएं, और यहाँ ताजा भोजन है। और यह छोटी लड़की वहाँ खड़ी थी, वह चिल्ला रही थी, उसकी पूरी तेज आवाज से लगभग रोने का दौड़ा पड़ने पर था, लगभग ये छोटी दुल्हन की तरह है। लेकिन आप जानते हैं क्या, उसका छोटा भाई चिल्ला उठा, छोटी बहन मत डर, क्योंकि वो ठीक इंजीनियर के पास खड़ा था। कहा, यहाँ एक मनुष्य है जो उजालों को चमका सकता है। डरो मत छोटी बहन, यहाँ एक मनुष्य है जो उजाले को चमका सकता है, वो इस वचन को जीवित कर सकता है। हम नहीं जानते कि वह कैसे आ रहा है, हम नहीं जानते कैसे कब वो आ रहा है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन वो यहाँ पर है और वो उजालों को चमका सकता है। हम इससे कैसे बाहर निकलेंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन वो यहाँ पर है और वही वो एक है जो उजालों को चमका सकता है। जी हाँ श्रीमान, वही वो एक है, वो उजाला है, वो बस अपने आप को ज्ञात करवाता है कि वो कैसे उजाले को चमकाता है। बिल्कुल सही, यह मसीह को लेता है ताकि उसके उजालों को चमकाए, फिर सारा अंधकार तितर बितर होने लगता है। वो अलग करता है, वो अपनी छोटी दुल्हन को बाहर निकाल रहा है। मैं अन्य जाति में से लोगों को बाहर निकालूंगा मेरे नाम की खातिर, जिनके पास मेरा नाम होगा। उसका नाम क्या है? ठीक है, ना ही मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, लूथरन, ये यीशु मसीह है, ये सही है। वो उजियाला है, सच्चाई है, वो उजियाला, और इसमें कोई अंधकार नहीं है। और वो अंधेरे को तितर बितर करता है जब वो आता है, क्योंकि वो वचन है और वचन उजियाला है। ये सही बात है, क्योंकि उसने बोला और कहा उजियाला होने दो, वो वचन था जो उजियाला बन गया। जब वो इसे बोलता है, ये हर बार उस युग का उजियाला है। अब वो यहाँ पर है, एक चमक में नहीं, लेकिन लोग एक चमक में रह रहे हैं, लेकिन वो प्रमाणित वचन है। वो पूरी तरह से अंधकार के समय में उजियाला है। जी हाँ श्रीमान, ये सारी झूठी चमक और इत्यादि मिट जाएंगे। जी हाँ श्रीमान, वो यहाँ पर है, डरो मत, उजियालों को चमकाओ। उसका प्रतिज्ञा किया हुआ वचन, यह जीता है, वह बनाता है। वो जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे। फिर यह वचन है, जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। जिस पिता ने उसे भेजा था वह उसी में आया। जो यीशु आपको भेजता है वह आप में आता है, और जो काम उसने तब किए वह उसी काम को करता है। क्योंकि क्यों? वचन देहधारी हुआ मनुष्य के देह में, उस दिन के उजाले के रूप में खुद को प्रकट करता है। हम वही हैं, वहाँ ही ये बस उजाला राह दिखा रहा है उजाले में। ज्ञानी पुरुष जो संस्था और संप्रदाय से अंधे नहीं हुए हैं, उस उजाले में चलें। ओ प्रभु, यहाँ एक मनुष्य है जो उजालों को चमका सकता है, तो ठीक है। वो क्या करता है इस दिन के लिए? उसके वचन को प्रमाणित करने के द्वारा। यीशु परमेश्वर का पुत्र, जिसने इस दिन के लिए वचन की प्रतिज्ञा की थी, वो ठीक यहाँ हमारे साथ है। डर मत जाना, इस पर कोई ध्यान न दें कि वे क्या कर रहे हैं। आप ध्यान देते हैं तो आप अंधकार में चलते हैं। समझदार बने, वे जो समझदार होते हैं। दानियल ने कहा, इन अंतिम दिनों में वे उनके परमेश्वर के लिए अद्भुत कार्य करेंगे। देखा, समझे, वे उजाले में चलेंगे जैसा कि वो उजाले में है। चिंता मत करो, ये अंधकार हो सकता है ऐसा दिखा जैसे वे हमें हरेक को दबाव डाल रहे हैं। ये सब आप उनकी घोषणा को बाहर होते हुए देखते हैं। ये सब छोटी कलीसियाएं और इत्यादि को आप इसमें आना होगा, आपको अंदर आना होगा, या तो वे आपको बंद करवा देंगे। वे ऐसा करने जा रहे हैं। अब हम चाहते हैं उस बात के लिए आज रात वास्तव में जोर लगाएं, जब मैं इस समय में आता हूँ। देखें, अब वे हमें बंद करने जा रहे हैं। आपको उनमें से एक बनना है या तो नहीं। आपको या तो आपको उसमें से एक होना है, या आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ भी खरीद या बेच नहीं सकते। ऐसा ही है, आपके पास हिम्मत नहीं होगी कि बीमारों के लिए प्रार्थना करें। यदि आप किसी बीमार या किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आत्मिक चीज को करने के लिए उसमें सेवकाई करते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपको एक केंद्रीय कानून के तहत मार डाला जाएगा। यह बिल्कुल सही बात है। देखा, आप ये जानते हैं, यह सही है, यह उनके कागजात में है। जी हाँ श्रीमान, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको उस संस्था से संबंधित रहना होगा। भाइयों, मैं आपको कुछ बताता हूँ, अच्छा होगा आप अपने हृदय में ठीक अभी मसीह को दृढ़ कर लें, क्योंकि वहाँ एक समय आ रहा है जहाँ आपको वास्तव में इसकी आवश्यकता होगी। आप तब बाहर होते हैं, याद रखें, जब उस मोहर को लगाया जाता है तो वहाँ वो अच्छाई के लिए होती है, समझे। सो आप इसे नहीं करना, आप ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करना, आप सीधे मसीह के अंदर ठीक अभी चले जाएं। वो वचन, जी हाँ श्रीमान, वचन को प्रमाणित करता है और दिखाता है कि यह इस घड़ी का उजाला है। इसी तरह से हम जानते हैं कि वह उजाला है, क्योंकि वो उजाला है देह में अपने आप को प्रकट करते हुए। हम कैसे जानते हैं? वह परमेश्वर का देहधारी हुआ वचन था। देखिए, परमेश्वर का वचन खुद को दिखा रहा था अपने आप को प्रकट करते हुए। जब मसीहा आता है तो वह क्या करेगा? उस महिला ने कहा, जब मसीहा आता है तो वह इन चीजों को करेगा। तुम अवश्य ही नबी हो, जो कि वचन है, हमें इन होने वाली बातों को पहले से बताएगा। उसने कहा, मैं वो हूँ। देखा, इतना ही काफी था। उजाला उस प्रतिज्ञा किए वचन पर चमका, वहाँ पर उजाला है। ठीक जिस नगर में वह गई, कहा, आओ एक मनुष्य को देखें जिसने मुझे उन चीजों को बताया है जो मैंने किया है। क्या यह वही मसीहा तो नहीं? ऐसा ही था। देखा, कोई मतलब नहीं रखता दूसरों ने क्या कहा, वह जानती थी कि वह मसीहा था। याद रखें, हर युग में अंधकार के समय में परमेश्वर के पास हमेशा ही उसका वचन था, ताकि अंधकार को उजाले से विभाजित करे। उसने इसे लूथर के दिनों में किया था, जब कैथोलिक कलीसिया के पास सब कुछ था। उसने लूथर को एक चमकने वाले उजाले के नहीं भेजा, और लूथर ने सत्य को अंधकार से विभाजित किया। और जब लूथरन मुड़ गए, उसने एक जॉन वेस्ली को लिया और उसने उजाले को अंधकार से विभाजित किया। और पेंटिकॉस्ट के दिनों में जब वेस्लियन को और मेथोडिस्ट वे सब साथ आ गए, और बैप्टिस्ट और प्रेस्बिटेरियन, उसने पेंटिकॉस्टल संदेश को भेजा ताकि उजाले को अंधकार से अलग करे। पेंटिकॉस्ट फिर से ठीक अंधकार में वापस चले गए, इस तरह उनके संगठन में उनके संस्था और इत्यादि को लिया। अब समय आ गया है इस वचन के लिए कि प्रमाणित हो जाए। वह उजाले को भेजता है, वचन प्रकट हुआ जैसे उसने आरंभ में किया, वचन को भेजता है और यह खुद को साबित करता है, वहाँ उजाला है और वह हमेशा अलग हो जाता है। अब भी वैसा ही है जैसे आरंभ में अनंत छोटे उजाले। बच्चों को देखते हुए जैसा कि मैं कहता हूँ, अब मैंने 5 मिनट और बिता दिए हैं, लेकिन मुझे यह एक बात कहनी है। यहाँ एक मनुष्य उपस्थित है, डरो मत चाहे वे कुछ भी कहें। मैंने इसे देखा है कि यह उस स्थान पर आया है जहाँ मुझे नहीं पता था कि आगे कहाँ जाना है, लेकिन वो हमेशा उपस्थित रहता है। कभी विफल न होने वाली उपस्थिति वो हमेशा वहाँ पर है। वह उजाले को चमका सकता है। जी हाँ श्रीमान, वह बस रुका हुआ है, देखो कि आप क्या करने जा रहे हैं। वह जब चाहे बटन को दबा सकता है। जी हाँ श्रीमान, यहाँ एक मनुष्य है जो उजाले को चमका सकता है। वे लोग जो मृत्यु की छाया की तराई में से होकर चलते हैं, उनमें से कुछ कैंसर के नीचे हैं, उनमें से कुछ संप्रदाय की मृत्यु के नीचे हैं, कुछ संस्थाओं के मृत्यु के नीचे हैं, उनमें से कुछ रीति रिवाज के मृत्यु के नीचे हैं, और सभी प्रकार की मृत्यु है, और उन्होंने एक महान उजाले को देखा है। वह मनुष्य जिसने तब उजालों को चमकाया, वही वो एक है जिसने आरंभ में कहा था उजाला होने दो। वही परमेश्वर कल आज और युगानुयुग एक सा है। वह आज भी उपस्थित है, ठीक अभी यहाँ पर है। डरना मत, वह उजालों को चमका सकता है। जब सतावट आती है तो डरना नहीं, वहाँ एक उजाला है। उसने कहा कि वह अपने लोगों को उठा ले जाएगा, वह महासंकट से होकर नहीं जाएगी, वह ऐसा कभी नहीं करेगी। उसने कहा कि वह नहीं करेगी, वह उठा ली जाएगी। वे इसे कैसे करने जा रहे भाई ब्रैनम? भयानक अंधेरा दिखाई पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता ये कितना अंधकार होता जाता है। आप अपने हाथ को आपके सामने नहीं देख सकते। बस याद रखें, यहाँ एक मनुष्य है जो उजाले को चमका सकता है, वो उस कलीसिया का रैप्चर करेगा। आप कहते हैं ठीक है, मैं सही हूँ, हाँ शद्रक मेशक अभिदनगो ठीक आग की भट्टी तक, लेकिन वहाँ एक मनुष्य है जो हवा को घुमा सकता है। जी हाँ श्रीमान, वह सनसनाती हुई सामर्थी आंधी जो पेंटिकॉस्ट के दिन नीचे उतर आई, उसने इसे फिर से घुमाया और सारे हवा के जोखों को उनसे दूर किया, सारी आग से। वहाँ एक मनुष्य था, वो चौथा मनुष्य कहलाता है। आज यहाँ पर एक है, वही केवल एक है। हालेलुया, उसके पास, उसके हाथ में उजाले का बटन है। वे जो लोग मृत्यु की छाया की तराई में बैठे हुए हैं, वो महान उजाला चमक उठा है। इसे अस्वीकार न करें, इसे ग्रहण करें प्रभु के नाम में। जब हम अब कुछ पल के लिए अपने सिर को झुकाते हैं, हम उजाले में चलेंगे। क्या ही सुंदर उजाला है, जहाँ दया की ओस की बूंदें चमकती आती हैं, दिन और रात हमारे चारों ओर चमकती है। यीशु जो जगत का उजाला है, हम उजाले में चलेंगे। ये क्या ही सुंदर उजाला है, ये जहाँ दया की ओस की बूंदें चमकती आती हैं, दिन और रात हमारे चारों ओर चमकती है। यीशु जो जगत का उजाला है, उजाले के संतो आओ, घोषणा करो, यीशु जो जगत का उजाला है, तब स्वर्ग की घंटियां बजेंगी। यीशु जो उजाला, वो क्या है? प्रमाणित वचन आज यीशु है, वो वचन है। हम उजाले में चलेंगे, ये क्या ही सुंदर उजाला है, ये जहाँ दया की ओस की बूंदें चमकती आती है। दिन और रात हमारे चारों ओर चमकती है। यीशु उजाला, आपके झुके हुए सिरों के साथ मैं सोचता हूँ कि इस उजाले में कितने लोग चलना चाहेंगे, इस पवित्र आत्मा के नेतृत्व में जो आज का प्रमाणित वचन है। देखा, परमेश्वर ने जिस वचन की आज प्रतिज्ञा की है, देखो ये प्रकट हुआ है। क्या ऐसा नहीं था जो वो आरंभ में था? वो वचन था। पुत्र का जन्म हुआ था, वो वचन था, वो मसीहा था, वो प्रमाणित वचन था। तो फिर वचन परमेश्वर ने आरंभ से अंत को बोला। अब इस दिन के लिए एक वचन है और वो यहाँ पर है, उस वचन को प्रमाणित करते हुए इस गड़बड़ी, अंधकार और चमक के बीच में। यह पूरी तरह से इसके जैसा दिखाई देता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। यह साबित नहीं होता है कि ये ऐसा है। वो संस्था, यीशु ने कहा, यदि मैं परमेश्वर की उंगली से शैतानों को निकालता हूँ, तुम उन्हें किसके द्वारा बाहर निकालते हो? उन्होंने उन्हें बाहर नहीं निकाला, देखा? लेकिन नहीं, यदि मैं परमेश्वर की उंगली से शैतानों को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य आपके लिए नजदीक आ गया है। ओह, आओ हम इसके बारे में सोचें, जैसा कि हम अपने हाथ को ऊपर उठाते हैं धीरे धीरे अब, और सोचें बहुत ही शांति से। हम उस उजाले में चलेंगे। ये क्या ही सुंदर उजाला है, और ये आती है जहाँ दया की ओस की बूंदे। अपने अंगीकार को करें, अब परमेश्वर पर विश्वास करें। दिन और रात हमारे चारों ओर चमकती है। यीशु जो जगत का उजाला है, हम उजाले में चलेंगे। ये क्या ही सुंदर उजाला है, ये जहां दया की ओस की बूंदे चमकती आती है। दिन और रात हमारे चारों ओर चमकती है। यीशु जो जगत का उजाला है, जब वे बजाना जारी रखते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, हर युग एक सा रहा है। नूह के दिनों में जिन्होंने उजाले को अस्वीकार कर दिया, उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के न्याय में चले गए। फिर उनका क्या हुआ जलती हुई झाड़ी के उजाले के दिनों में, जो मूसा में थी, मृत्यु के समुद्र में चलने लगे? दातान का क्या हुआ जिसने आरंभ किया और बाद में उजाले को अस्वीकार कर दिया? वो पृथ्वी की दरार में चला गया, जिसने उसे निगल लिया। सारे युगों में क्या हुआ उन लोगों में जो उजाले में चलने में असफल रहे? उस दिन का जो उजाला है, ये हर समय यीशु ही है। यह उन मनुष्यों के दिनों में यीशु था, ये आज यीशु ही है, क्योंकि वह वचन है और वचन उजाले को बनाता है। यह इस दिन का उजाला है। अब इसे सोचें पूरी तरह से, शांतिपूर्वक, जबकि हम ईमानदारी के साथ पूछें, क्या आप उजाले में चल रहे हैं? जबकि हम इसे फिर से गुनगुनाते हैं। सुंदर उजाला है, ये जहाँ से दया की ओस की बूंदे चमकती आती है। दिन और रात हमारे चारों ओर चमकती है। ओ यीशु जो जगत का उजाला है, आइए अब हम अपने पैरों पर खड़े हों। मैं स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करता हूँ कि ये संदेश लोगों के हृदय की गहराई में चला जाए। वे जो लोग उपस्थित हैं और जो लोग इसे टेप के द्वारा सुनेंगे, और होने पाए वो उजाला आगे वचन पर आए, उस बीज पर, और हर एक पहले से ठहराए हुए बीज को आगे लाए, जिसे यहाँ इन अलग अलग चमक और संगठनों में लगाया गया है। वे निकुदिमस की तरह देख सके, यदि उन्हें रात तक आना हो, उस उजाले में आए। इसे प्रदान करे पिता, होने पाए। वहाँ ये बड़ा सवाल आगे आता है, जो इस चट्टान का है, जो पहाड़ बिना हाथ के काटा गया है, ये इस अन्य जातियों के राज्यों को कुचल देगा, इन सभी राज्यों को, आत्मिक राज्य और प्राकृतिक राज्यों को, और वो चट्टान पूरी पृथ्वी को ढाक देगी। यह एक शुद्ध करने का कार्य होगा। वे जो चट्टान से कुचलकर पाउडर बनकर जमीन में चले जाएंगे, जो लोग उस चट्टान पर गिरते हैं, उनके पास एक ठोस बुनियाद होगी। हे मसीह, मुझे अपने दास के रूप में इस चट्टान पर मर जाने दो, तेरे वचन की इस चट्टान पर। प्रभु परमेश्वर, मैं दाऊद के जैसे खड़ा रहूं, और उन पुराने समय के योद्धाओं के जैसे जो दाऊद के लिए खड़े थे, पुराने समय के। मुझे आज इस वचन के लिए खड़े होने दें। जब मैं देखता हूँ इसे संप्रदायों के द्वारा आज ठुकराया गया है, ये यहाँ कहीं तो पड़ा हुआ है, कहीं तो छोटे से निर्णय बदलने की सभाओं में। हे परमेश्वर, मैं प्रदान करे हमारे पास शक्ति और हिम्मत हो और पवित्र आत्मा खड़े होने के लिए, क्योंकि घड़ियां अंधकार और अंधकार होती जा रही हैं। लेकिन हम हमेशा याद रखें कि आप उजाले को चमकाने के लिए उपस्थित हैं। किसी भी घड़ी जब आप चाहें आप उज्याले को चमका सकते हैं। पिता, सो हम प्रार्थना करते हैं जैसा कि आपने कहा, तुम जगत का उज्याला हो। प्रदान करें प्रभु कि हमारे उज्याले जो आपकी सेवा के लिए है, जो बहुत अधिक दूसरों के लिए चमके, कि वे सुसमाचार के उज्याले को देखें, जैसा हम इसे जीते हैं प्रभु दिन प्रतिदिन, उन्हें यीशु मसीह के जीवन को प्रतिबिंबित करते हुए जब वो पृथ्वी पर था, पूर्व नम्रता और मधुरता भरा हुआ, मगर वचन के साथ जो ठीक उसके जरिए से जिया गया है, इसे प्रदान करे प्रभु, क्योंकि हम उसकी ओर देख रहे हैं, उस एक की ओर जो महान हाथ में बटन को लिए हुए है। आप संसार को अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, आप सारी चीजों को अपने हाथ में पकड़े हुए हैं और अपने वचन से संसार को बनाए रखते हैं। हे पिता, हम वचन को ग्रहण करें, क्या कृपा प्रदान करेंगे प्रभु, उसे गवाही होने दे और यहाँ हर एक हृदय की इच्छा पूरी हो। पिता, जैसा कि हम इन स्तुति के गीतों को गाते हैं, जैसा कि दाऊद ने स्तुति के गीतों को गाया, वे भविष्यवाणी बन गई, वे भविष्यवाणी थी और आपने उन्हें भविष्यवाणी होने की पहचान दी। जैसा कि हम इसे गाते हैं प्रभु, इसे हमारे हृदय में भी होने दो। जैसा हम गाते हैं, हम इस उजाले में चलेंगे, ऐसा होने दो प्रभु। यह एक सुंदर उजाला है, यह वचन है, यह मसीह हमारे बीच में जीता है। ना ही वो क्या था, वो क्या है, और हम जानते हैं कि उसने केवल वही प्रतिबिंबित किया जो वह है। और हम प्रार्थना करते हैं पिता कि लोग इसे समझेंगे और इस सुंदर उजाले में चलेंगे। हम यीशु के नाम में मांगते हैं। जब हम बस कुछ क्षण के लिए खड़े रहते हैं, मैं चाहता हूं कि हम सभी गाएं। अब यहां पर प्रेस्बिटेरियन, मेथोडिस्ट, कैथोलिक हैं, यहां पर कुछ मिले जुले श्रोतागण हैं जब यह संप्रदाय से आते हैं। अब याद रखें, इस बात को जान लें कि मैं इन चमक में लोगों के विरोध में कुछ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैंने इसे साबित किया है बाइबल से कि वे चमक हैं। यदि ऐसा नहीं होता था तो मसीह वो कर रहा होगा जैसा उसने उसके साथ करने की प्रतिज्ञा की थी, समझे, लेकिन उन्होंने उसे इनकार कर दिया। देखा, और जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपको क्या मिलता है, एक कलीसिया से जुड़ना, एक संस्था का बयान, और इससे क्या बाहर आता है, सड़क के अंत में आओ, आपको ये पता चल जाएगा यह एक झूठी मृग तृष्णा थी। मसीह वचन है, वह उजाला है। अब जिए जब आप जी सकते हैं। आप किस चीज के लिए जीते हो, आप किस चीज के लिए जी रहे हैं, सो आप मर सकते हैं। आप में से हर एक जन, आप किसके लिए काम कर रहे हैं, खाने के लिए, आप किसके लिए खा रहे हैं, जीने के लिए, आप किसके लिए जी रहे हैं, मरने के लिए। इसलिए जीने के लिए क्यों नहीं जीते, जीने के लिए क्यों नहीं जीते, तब केवल एक के जरिए से जीवित रह सकते हैं, वचन को स्वीकार करके, क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा। हम जिसे अपने माथे के पसीने को बहाकर यहाँ बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से। अब परमेश्वर के मुख का वचन ठीक हमारे सामने प्रमाणित हुआ है पवित्र आत्मा के द्वारा, इसके द्वारा जीते हैं। क्या आप नहीं जीते हैं? अब मैं चाहता हूँ जब हम इसे फिर से गाते हैं तो हर एक बस अपने स्थान पर खड़े रहें, आगे बढ़कर किसी के तो हाथ को पकड़ें और कहें, भाई आओ हम उस उजाले में चलें। जब हम गाते हैं उजाले में चलते हैं, क्या आप गाएंगे? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें जैसा कि आप अपने हाथों को एक साथ पकड़ते हैं जब हम इसे एक साथ गाते हैं, जहाँ तक हो सके अपनी आंखें बंद करके। हम उजाले में चलेंगे, क्या ही सुंदर उजाला है ये, जहाँ दया की ओस की बूंदे चमकती आती है, दिन और रात हमारे चारों ओर चमकती है। ये कौन है? यीशु, जो जगत का उजाला है। अब आइए अपने हाथों को उठाएं। हम उजाले में चलेंगे, ये क्या ही सुंदर उजाला है ये, जहां दया की ओस की बूंदे चमकती आती है, दिन और रात हमारे चारों ओर चमकती है। ओ यीशु, जो जगत का उजाला है। उजाले के सारे संतों आओ, घोषणा करो, वो क्या है? यीशु, जो जो जगत का उजाला है, तब स्वर्ग की घंटियां बजेगी। यीशु जो जगत का उजाला है, सारे आओ अब इसे गाएं। हम उजाले में चलेंगे और ये क्या ही सुंदर उजाला है। ये जहां दया की ओस की बूंदें चमकती आती हैं, दिन और रात हमारे चारों ओर चमकती है। यीशु जो जगत का उजाला है, हमारे सिर अब झुके हुए हो। याद है जब इज़राइल अपनी यात्रा में था, हर दिन नए मन्ने को खाता था, वे अग्नि के स्तंभ के उजाले में चले। अग्नि का वह स्तंभ यीशु मसीह था, बाइबल कहती है कि ऐसा था। और आज वह हमारे साथ है, हमारे पास ये है, हम जानते हैं कि वह हमारे साथ है। वही अग्नि का वह स्तंभ उन्हीं कामों को कर रहा है जो उसने तब किए थे जब वो यहाँ इस धरती पर था, ताकि अपने वचन को पूरा करे। जब हम यहाँ से जाते हैं तो याद रखें उस गीत को भी अपने हृदय में रखें, जैसे हम अपने घरों में जाते हैं, जैसे हमारे हृदय गीत को गुनगुनाएं। इससे पहले कि आप अपने रात का भोजन करें, अपने सिर को झुकाएं और उजाले को आगे भेजने के लिए धन्यवाद दें, जिससे धरती पर भोजन को लाया गया है आपके भौतिक शरीर के लिए। उसके बाद परमेश्वर को धन्यवाद दें आत्मिक उजाले को भेजने के लिए, उसके वचन के लिए, जिससे वह प्राण के लिए भोजन को दे सके। क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन प्रत्येक वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। बस इस स्तुति के गीत को अपने आप में गाते रहें, अपने घरों में अपने लोगों के बीच में गाते रहें, और हमें यहाँ 6:30 बजे आज रात को मिलें प्रार्थना कार्ड और इत्यादि के लिए। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने सिर को झुकाएं। मैं भाई नेवल से कहूंगा कि क्या वो अब यहाँ पर आएंगे जो पास्टर हैं, और हमें प्रार्थना के कुछ शब्द से हमारे लिए समाप्त करेंगे।